Thank you very much.
धन्यवाद भाई विलियम्स। सुप्रभात मित्रों, आज सुबह यहाँ पर होना एक सौभाग्य की बात है। इस प्रकार का एक परिचय करना मुझे तो अब भी बहुत ही छोटा महसूस होता है, और मैं यहाँ आज सुबह फिनिक्स में आने के सुअवसर के लिए बहुत ही आभारी हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली बार फिनिक्स आया था, तब मैं कुछ 17 वर्ष का था, और यह उस समय से लेकर यकीनन बढ़ चुका है। इस सुबह जब हम फिनिक्स के अंदर आए, हम शायद ही बता सकते हैं कि हमने टूसॉन को कब छोड़ा। यह लगभग एक साथ जुड़ गए हैं, तो बहुत से स्थान बस गए हैं। वे स्थान जहां हम अक्सर जाया करते थे, और यहां तक छोटे गधे रेत पर चला करते थे, और अब वहां पर होटल और बड़ी दुकानें और इत्यादि खुल गई हैं, और निश्चय ही ये बातें मुझे बूढ़ा बना रही हैं। और फिर मैं यहां पर मेरे अच्छे भाई भाई वेल्टेज के पास बैठा हुआ था, और मैंने कहा, तो भाई हम बात कर रहे थे, और मैंने कहा, तो निश्चय ही मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे महसूस हो रहा है मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा, मेरी उम्र में पहुँचने तक रुको, या ऐसे ही कुछ कहा। मैं जानकर अचंभित रह गया कि वो मुझसे 12 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, भाई वेल्डेज, मैं जानना चाहता हूँ आप कब से सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। उसने कहा, 50 वर्ष से, तब मैं बहुत ही छोटा बच्चा था जब वो प्रचार करते थे। तो मैंने कहा, भाई विल्लेज, मैं चाहता हूँ कि आज की सुबह आप सभा ले लें। मैंने कहा, मैं एक जवान पुरुष हूँ। मैंने कहा, मुझे यहाँ इस प्रकार की बातें बनाकर बोलने से नफरत है। मैंने कहा, मेरे प्राचीनों, तो बस हंस पड़े, तुम क्या सोचते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इसलिए मैं भाई विल्लेज के लिए बहुत ही आभारी हूँ। वो मुझे यहाँ पर एक विश्राम घर के होने के बारे में बता रहे थे, जो सचमुच बहुत ही अच्छा है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। मुझे निमंत्रण दिया कि आकर किसी दिन उनसे मुलाकात करूँ। और यह यहाँ नई नदी के किनारे पर है। मैं नहीं जानता आप में से कोई जानता है या नहीं यह कहाँ पर है। मुझे पक्का है यदि इसके पीछे भाई वेल्डेज हैं तो अच्छी बात है। तो फिर हर बार मैं जब कन्वेंशन में आता हूँ, तो मैं हमेशा ही किसी से तो मिलता हूँ जिसने स्वभाव में चंगाई पाई है, और ऐसा ही कुछ। और जब आज सुबह मैं यहाँ पर टेबल पर खड़ा हुआ था, एक बहुमूल्य अब्र नाम की महिला यहाँ बहन बैठी हुई थी, जो यहाँ मिशिगन से आती है। उसका बेटा यहाँ पर मसी स्टेशन पर उद्घोषक है, और वह बहुत पहले फ्लिंट मिशिगन के स्वभाव के बारे में बता रही थी। उसके पास प्रार्थना पत्र था, और प्रार्थना करवाने के लिए कोशिश कर रही थी, और वह इसे नहीं कर पाई, और वह बहुत ही गंभीर रूप से बीमार थी। और आज सुबह ठीक यहाँ पर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने स्त्री को चंगाई दे दी है, जो ठीक यहाँ इस स्थान पर किनारे पर खड़ी हुई है। मैंने कहा, अब क्या ही एक समय रहा है, ये लगभग 12-14 वर्ष पहले रहा था, और अब फिनिक्स कहलाने वाले शहर में, फिनिक्स में कुछ तो है जिसे उजड़े हुए शहर में से निर्माण किया गया है। मैंने कहा, तो आज सुबह ऐसे ही बात तुम्हारे साथ घटित हुई है। मैं विश्वास करता हूँ आज सुबह परमेश्वर ने तुम्हें एक उजड़ी हुई सेहत से एक अच्छी सेहत का निर्माण किया है। मैं पिछली संध्या को सुन रहा था, मुझे बहुत सारे फोन आ रहे थे। अब मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं टूसॉन में रहता हूँ, और मुझे बहुत सारे फोन आए थे। मैं उन सब के पास नहीं जा सका, इसलिए मैं उनके लिए केवल फोन पर प्रार्थना कर रहा था, और वे फिर उन्होंने केवल अपने नंबर को मेरे लिए छोड़ा था। और वहाँ एक 87 वर्ष की उम्र की एक बूढ़ी मसीह महिला थी। वो कुछ समय के लिए अपने दिमागी संतुलन से बाहर रही थी। वो रास्ते पर चीख रही थी और पुलिस को बुला रही थी कि किसी ने उसके बालक को ले लिया है। 87 वर्ष की उम्र की महिला, देखें, उसके दिमाग ने उसे छोड़ दिया था। और वो एक प्यारी बूढ़ी महिला थी। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं जाना था, और बिली ने मुझे फोन किया और कहा, प्रार्थना के लिए तुरंत आ जाओ, और कहा वो महिला की स्थिति गंभीर है, और वे सोच रहे हैं कि वो महिला मर जाएगी। कहा, महिला बस वो अपने आपे से बाहर थी। मैं इसी तरह फोन को पकड़े रहा, और मैंने कमरे के अंदर जाकर और प्रार्थना की। कुछ ही समय में वो महिला सोई थी। वो ठीक सामान्य रूप से उठकर खड़ी हो गई, पूरे गोश्त का भोजन किया उन आइसक्रीमों के साथ, और इसके बाद केक भी खाया। हाँ, आपने देखा, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। वो बहुत ही वास्तविक है, वो कर सकता है। आपको वहाँ पर होने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसे मांगो। मैं सोचता हूँ यह हमारे भाई अगुवाई करने वाले यहाँ आज सुबह कोई तो शायद यह भाई वेल्टेज ने प्रार्थना में कहा, हमारे पास नहीं होता है क्योंकि हम मांगते नहीं हैं, हम मांगते नहीं हैं क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। मैं यहाँ इन जवान लोगों के गीत गाने की सराहना करता हूँ। भाई वेल्टेज ने, हम बूढ़े लोग उस जवान व्यक्ति के सच्चाई की ओर ध्यान दे रहे थे, वो उस गवाही को दे रहा था कि वो यीशु को जानता है। अब हम जानते हैं कि बहुत सी बार हम पाते हैं ये चार लोगों का छोटा सा झुंड जो गा रहा था, यह एक दूसरे सेवक के शब्द हैं। भाई विल्डिंग ने कहा किसी समय वे एक दर्जन की संख्या में आकर गाते थे, क्योंकि आज वे ऐसे दिखाई देते हैं। यह उस पवित्रता और सच्चाई के स्थान में का एक प्रदर्शन बन गया है जिसे एक बार पेंटिकॉस्ट ने प्राप्त किया था, और इन लड़कों की सच्चाई की मैं सराहना करता हूँ। लड़कों, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं टेलीविजन पर अधिक नहीं होता हूँ, जैसे आप जानते हैं मैं वास्तव में इसके खिलाफ रहा हूँ, और मैं असल में टूसान में एक स्थान को किराए पर लेने जा रहा हूँ। जब तक हम स्थान को तय नहीं कर लेते हैं जहाँ पर प्रभु ने चाहा, तो हमें अपने लिए वहाँ घर को स्थापित करने वाले हैं। और वो महिला जिससे किराए पर हम घर लेने जा रहे हैं, वो एक अच्छी मसीह महिला मित्र है, लेकिन उसके घर में एक टेलीविजन था। जो मेरे जवान बच्चे हैं, और आप जानते हैं वो कैसे हैं, तो वे इसके लिए जल्दी में हैं। तो कुछ समय पहले जब मैं ऐसे ही भाई स्ट्रोमी के साथ एक दौरे से आया, मैं नहीं जानता कि भाई स्ट्रोमी आज सुबह यहाँ पर है कि नहीं है। वे टूसॉन के याजक सभा के अध्यक्ष हैं। मेरी छोटी बेटी यहाँ पर पीछे बैठी हुई है, उसने मुझे देखने के लिए बुलाया और कहा वे किसी गाने वाले झुंड को देखने के लिए टेलीविजन को चला रहे हैं या जो कुछ भी ये था। तो मैं इसका कुछ ज्यादा ही निंदक रहा हूँ, और मैं इसके लिए खेदित हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यही है जो मैंने किया है। यदि मैं किसी की बात का विरोध करता हूँ और उसे खुद करने के लिए बातों को बनाता हूँ, तो मैं एक ढोंगी हूँ। और मैं आप लोगों के सामने ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं वैसा ही होना चाहता हूँ जो मैं हूँ। और फिर आप जानते हैं हम कैसे खड़े हैं। मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा ही निंदा की है, लेकिन इसके लिए निंदा करना मेरे हृदय में था, क्योंकि यह मुझे कुछ तो एक प्रकार का हॉलीवुड के जैसा दिखाई देता है, जो बहुत कुछ बातों को लिए हुए है। इसमें वो पवित्रता होनी चाहिए, ये उस प्रकार का दिखाई नहीं देता है। और वे उन स्तुति के गीतों को रॉक एंड रोल और गोल्ड स्लीपर्स के समय के लिए गा रहे थे। और क्या ये इस तरह से हो चुका है? ये सुसमाचार एक तमाशा बन गया है? क्यों? मैं यदि ऐसा ही है तो मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कुछ तो वास्तविक और सच्चाई को चाहता हूँ, और हम इसे उसी तरह से रखना चाहते हैं। अब भाइयों, मैं सोचता हूँ इन दोनों माइकों को ठीक यहाँ पर से हटाएं। तो अब आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? अब अगले शनिवार को प्रभु ने चाहा तो मेरी पहली बार पादरियों की सभा में बोलने का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, जो फ्रैग स्टॉप एरिजोना में है। वो भाई जो यहाँ पर है, मैं उसका नाम भूल गया, वो पादरियों के सभा का अध्यक्ष है, चेस्टरेल। भाई चेस्टरेल, मुझे आज ही सुबह उनसे मिलने का मौका मिला जब मैं यहाँ पर उस सभ्य सुसमाचारक भारतीय से हाथ मिला रहा था। वो एक भारतीय भाई है, और उसने कहा कि अगले शनिवार को मुझे वहाँ पर बोलना है। आप सबको हार्दिक रूप से इस सभा के लिए आमंत्रण है। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। और फिर उसी सोमवार की रात को टूसॉन में एक भोज दावत है। परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर उस भोज दावत में बोलने का गौरव दिया, जो दिसंबर की 21 तारीख को टूसॉन में होगी। आप सबको हार्दिक रूप से इस भोज दावत की रात में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण है। और फिर जैसे भाई विलियम्स ने घोषणा की, मुझे यहाँ वापस फिर से आना है, ताकि कन्वेंशन आरंभ होने से पहले मुझे कुछ एक प्रकार का प्रस्तावना कर सकूं। और इसलिए भाई विलियम्स, क्या मैं वहाँ पर रहने वाला हूँ? वहाँ पर क्या कह रहे हो? ये बेहतर है, ठीक है। मैं निश्चय रूप से आशा करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग समय निकालकर उस सभा में एक दिन के लिए या हर रोज रात और दिन को उपस्थित होंगे, जो कि 17 तारीख को 7 बजे रविवार दोपहर को आरंभ होगी, 1:30 दोपहर को रविवार के दिन। मैं यह भी कहना चाहता हूँ, प्रभु की इच्छा हुई तो मैं इन सभाओं में बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, और यह सब करने के लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। और यहाँ आज सुबह जो फिनिक्स इलाके के सेवक भाई हैं, मेरा इस हाल में आने का जो कारण है, मैं हर समय यहाँ पर आता हूँ तो अक्सर मैं यहाँ वहाँ दौरे के लिए जाता हूँ, और इधर उधर कलीसियाओं में जाता हूँ, हर कलीसिया में जाता हूँ। तब मैं इस प्रकार की एक परेशानी को देखता हूँ, क्योंकि कुछ कलीसियाओं में एक तरह से बहुत ही जो छोटी है, और हम निश्चय ही किसी भी भाई को बाहर खड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी कलीसिया बहुत छोटी होती है, और फिर उससे मुश्किल होती है, लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। इसलिए यदि मैंने सोचा हम ठीक एक ही स्थान में मिलेंगे तो इसे खुद संभालूंगा और हम यहाँ पर मिलेंगे और हमारे पास सभा होगी जो केवल एक छोटी सुसमाचारक की सभा है और बीमारों के लिए प्रार्थना और बातें होंगी। इससे पहले हो सकता है यदि मैं एक दूसरे वाले माइक पर आ जाऊं तो क्या यहां पर ये बेहतर है? यह टेप के लिए है तो ठीक है, हो सकता है यह थोड़ा और भी बेहतर होता यदि मैंने इस प्रकार से किया होता था तो। और मैं यहां मेरे उन कलीसियाओं के भाइयों से चाहता हूं जो यहां पर फिनिश के पास्टर हैं, इसे जान ले कि इसी कारण से हमने किया है, इसलिए कि हम सब एक ठहराए हुए स्थान में एकत्र हो सकते हैं। और आप सब भाइयों के पास नहीं पहुंच सकते हैं, उनमें से बहुत से हैं। आप आज सुबह जो खड़े हुए देखते हैं उनमें से शायद ही आधे भी नहीं हैं। इसलिए थोड़े दिनों में सबके पास आप कन्वेंशन के पूर्व नहीं पहुंच सकते हैं जो यहाँ हमारे पास होने जा रहे हैं। और मुझे पक्का है हमारे पास कन्वेंशन में एक महान समय होने जा रहा है। आप इन महान प्रचारकों से सुनेंगे। ये भाई कैश, भाई हम्बर्ग है, हम्बर्ग, ओह कितने लोगों ने उन्हें कभी सुना है। तो निश्चय रूप से वो एक तूफान है। मुझे क्षमा करना, मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, वो एक भाई है। लेकिन ओह मैं एक समय उनके साथ था। आप जानते हैं मैं नहीं समझता हूँ आप मुझे हमेशा कैसे सुन लेते हैं। जब आप इस तरह के एक व्यक्ति को सुनते हैं वो प्रचार करते हैं और अपने सांस को भी नहीं लेते हैं, मैं नहीं जानता वो इसे कैसे करते हैं, लेकिन वो निश्चय रूप से बहुत ही थक जाते हैं। मैं मेरे न्यूयॉर्क कन्वेंशन में उनके साथ हाल ही में गया था और वो मुझे सभा के बाद भोज के लिए लेकर जाना चाहते थे और मैं एक स्थान के अंदर गया और मैं बाहर आने पर ही था जब भाई उन्होंने पूरा प्रचार ऊपर नीचे नीचे जमीन पर यहाँ वहाँ हर किसी स्थान की ओर जाते हुए किया। वो पूर्ण रूप से अपने आप में एक खासियत है और मैं विश्वास करता हूँ आप कैलिफोर्निया से भाई का भी आनंद लेंगे। उनका क्या नाम है? मैं उनका नाम भूल गया हूँ। वह उन प्रचारकों में से एक है, मैं उनका नाम भूल गया, लेकिन वो एक प्रभावशाली प्रचारक है और आप उनका आनंद लेंगे वहाँ पर। शायद इसी तरह से बहुत सारे बड़े प्रचारक होंगे। आप जानते हैं भाई रॉबर्ट्स और इस दिन के लिए वे महान व्यक्ति हैं। इसलिए मैं इस वचन के बारे में सोचकर आभारी हूँ जो इस समय के लिए मेरे मन में आया। और एक समय दाऊद तंबू में बैठा हुआ प्रभु के संदूक को आते हुए देख रहा था और उसने कहा वो उस दिन के नाथन नबी के साथ बैठा हुआ था और इसलिए उसने कहा क्या यह ठीक है कि मैं यहाँ पर घर में रहूँ, देवदार के एक घर में रहूँ और मेरे प्रभु के वाचा का संदूक तम्बू के अंदर हो। और नबी ने उससे कहा दाऊद जो तुम्हारे हृदय में है वही सब करो कारण परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो इतना ही कहने के लिए जानता था लेकिन उस रात प्रभु ने नबी से मुलाकात की और कहा जाओ मेरे दास दाऊद से कहो कि मैंने उसे उस भेड़शाला से उठाया है उन कुछ पीछे चलने वाली भेड़ों से, आप जानते हैं उन मान पुरुषों के समान उसे उसका नाम को ऊपर उठाया था। ना ही बहुत बड़ा नाम, ना ही बहुत महान नाम, लेकिन उस समय के इस धरती के मान पुरुषों के साथ उसकी गिनती की थी। और मैंने सोचा वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद के लिए था और मैंने सोचा मैं इसे मेरे लिए गिन सकता हूँ जब मैं इस दिन के लिए जिसमें हम रह रहे हैं सौभाग्य को देखता हूँ। संसार के इतिहास के दिन खत्म हो रहे हैं और उस प्रकार की व्यक्तियों के बीच शामिल होना जैसे हम उन सभा में उपस्थित हुए हैं और प्रभु आपको वास्तव में बहुतायत से आशीष दे। अब मेरे अच्छे मित्र भाई वेल्डिच ने कहा भाई ब्रैनम मुझे जाना होगा, मैं सोचता हूँ 9:45 बजे या 10:15 बजे, कहा मैं वहाँ पीछे की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको प्रचार करते समय रुकावट नहीं डालना चाहता। वो पहले की सभाओं में रहे हैं, मैं एक प्रकार से थोड़ा धीमा बोलता हूँ और सोचता हूँ आप जानते हैं जब मैं प्रचार करता हूँ और मैं यहाँ पर मेरे वचनों को लिखता हूँ और हो सकता है कुछ तो लिखा हुआ होता है लेकिन फिर मुझे पीछे जाकर सोचना होता है प्रभु ने मुझे क्या बोलने के लिए कहा है। आप जानते हैं मुझे उसके लिए रुकना होता है और मैं एक प्रकार से थोड़ा सा धीमा बोलता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ मैं आज सुबह आपको ज्यादा समय तक नहीं रोके रखूंगा। मैंने भाई विलियम्स से पूछा, मैंने कहा भाई विलियम्स मेरे पास कितना समय है? मैंने कहा अब मेरे पास यहाँ पर एक वचन है जिस पर मैं बोल सकता हूँ जो केवल लगभग 30 मिनट या ऐसे कुछ समय ले लूंगा, तब हर एक को बर्खास्त करके घर भेज देंगे। और मैंने कहा लेकिन मैं एक छोटे से पार्ट को लेना चाहता हूँ यदि यह मुमकिन है तो। और आगे मैं सोचता हूँ जो आज आपके लिए कुछ तो होगा, कुछ तो जिसे आप अपने साथ घर पर लेकर जा सकते हैं ताकि इस पर सोचें। और निश्चय ही मैं आज सुबह 3:30 बजे या 40 मिनट पर नहीं उठा हूँ कि यहाँ आने के लिए तैयार हो जाऊँ। ऐसे देखने के लिए मैं ये देखने की चिंता भी नहीं करता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर कुछ वचनों पर अध्ययन किया है, मैंने इसे लिख कर रखा है, क्योंकि कुछ तो है जिस पर मैं सच्चाई से प्रार्थना की है और सोचा कि हो सकता है इसके द्वारा शायद किसी को मदद हो जाए। हमारे पास प्रदर्शन करने के लिए और नाट्य दृश्य के लिए समय नहीं है, हमें तो मतलब की बात पर आना है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु बहुत ही जल्द आ रहा है। और अब वे इसे टेप कर रहे हैं, संभव है कोई तो शायद और भी टेप करता होगा। और मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि कभी मुझे बहुत बार गलत समझा गया है, और बहुत सी बार मुझे वापस फोन आते हैं और कहते हैं, भाई ब्रनम, क्या ये तो वो प्रकाश था जो इससे तुम्हारे कहने का मतलब है। और कभी कभी हम कुछ और ही समझते हैं, लेकिन आपको जानना होगा, आप शब्द भंडार से जांचें कि मेरा इसका क्या मतलब था। और मैं कभी कभी बातों को कहता हूँ जो एक कुछ विपरीत होती है, जिससे हो सकता है कोई तो एक विश्वास करे। मैं इसे अभी स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई तो एक जो विश्वास करता हो। लेकिन मेरे पास एक संदेश होता है जो प्रभु से होता है, और मैं इसके बारे में इसी तरह से महसूस करता हूँ। दूसरे लोग शायद महसूस करते होंगे कि यह शैतान से है, दूसरे लोग शायद महसूस करते होंगे यह बेहुदा बात है, लेकिन मेरे लिए यह जीवन है। और मेरे कहने का मतलब अलग ही होगा जब मैं बातों को बोलता हूँ जो अलग ही होती है, या हो सकता है थोड़ा आपको चोट पहुँचाए या लोगों को काटने वाली हो, लेकिन मेरे इसे कहने का मतलब प्रकाश में नहीं है। यदि मैं करता हूँ फिर मैं एक ढोंगी हूँ। मैं इसे परमेश्वर के लिए उन्नति के प्रकाश में कहता हूँ, मैं इसे लोगों के प्रकाश में होने के लिए कहता हूँ, ताकि लोग परमेश्वर को बेहतर से जान लें। और मैं इसे इसके लिए कहता हूँ क्योंकि मैंने इसे अपने लिए कुछ तो जान लिया है, या कुछ तो है जो मुझे परमेश्वर से ज्ञात होता है। और अब यदि मेरे बोलने से इन किसी कन्वेंशन में कुछ तो होता है जिससे लोगों को दुख पहुँचता है, या वे कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि यह इस तरह से है, तो ठीक है, मैंने अक्सर रूखे बयान को दिया है, और मेरी पत्नी वहाँ बैठी हुई मुझे सुन रही है, वो जानती है वहाँ पर मेरे बारे में अधिक औपचारिकता नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब चिकन को खाते हैं और आपको हड्डी लगने लगती है। अब चिकन प्रेमी कभी चिकन को फेंक नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें हड्डी लगती है, वो तो केवल हड्डी को फेंक देते हैं और वो आगे बढ़कर चिकन को खाते हैं। उसी तरह से चेरी पाई खाते हुए होता है, यदि एक बीज मुंह में आ जाता है, मैं कभी चेरी पाई को फेंकने देता हूँ, मैं तो केवल बीज को फेंकता हूँ। तो और जो मैं यहाँ पर कहता हूँ, शायद आपको लगता हो जैसे मेरे स्वभाव में आपके लिए एक बीज के जैसा दिखाई देता हो, आप उसे एक तरफ रखें और कहें मुझे इसे लाने की अनुमति दें। आप इसके बारे में इतना अधिक नहीं जानते होंगे जितना आपको जानना चाहिए, तब इसलिए आप केवल आगे बढ़ें और उसे ही खाएं जिसे आप जानते हैं कि यह सही है। और मैं भरोसा करता हूँ कि प्रभु उसके वचन को आशीष देगा। मैं वचन में एक स्थिर विश्वासी हूँ, और केवल वचन ही में, और यही वो संदेश है जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है। हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मैंने आज सुबह ध्यान दिया, मेरे भाई लोग, मिशनरी के लोग, सुसमाचारक और वे पास्टर लोग यहाँ पर खड़े थे। हो सकता है कि 100 या उससे भी ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े थे। उनमें से हर एक जो यहाँ पर खड़े थे वे बोल रहे थे, वे मुझसे ज्यादा योग्यता प्राप्त थे, मुझे इतना तो पक्का है। लेकिन देखना, हम में से हर एक जन वो एक दूसरे के स्थान को नहीं ले सकता है, वो एक दूसरे के संदेश को नहीं ले सकते हैं। देखना, हमारे विभिन्न तरीके होते हैं। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। जब वो कौन आदि में कौन परमेश्वर को बोल सकता है कि चीजों को कैसे बनाना है, जबकि वहाँ पर तो वो केवल अकेला ही था। देखा, यदि हमारे पास अनंत जीवन है, वहाँ पर अनंत जीवन का केवल एक ही रूप है, और वो है परमेश्वर। इसलिए यदि हमारे पास अनंत जीवन है, तब हम ठीक परमेश्वर के साथ थे, एक परमेश्वर का भाग थे, हम उसके गुण थे, हम अब उसके गुण हैं। और क्योंकि आदि में वचन था, और एक वचन एक विचार का व्यक्त होना है, तो हम उसके विचार थे, फिर वचन में व्यक्त किए गए, और जो हम हैं वही बन गए। यही वो कारण है, हमारे नाम हो सकता है वो नाम नहीं जो हमारे अभी हैं, लेकिन हमारे नामों को जगत के नींव डालने से पहले मेमने की जीवन की किताब में रख दिया था, समझे। और यदि तब वहाँ पर नहीं थे तो यह वहाँ पर भी नहीं होंगे, समझे। और यीशु उन सबको छुड़ाने को आया जो जिनके नाम उस किताब में थे। देखा, वो जानता था। वो कुमार जैसे रोमियो 8 हमें बताता है, कौन कुमार को बता सकता है? क्या मिट्टी कह सकती है मुझे इस तरह बना, उस तरह बना? देखा नहीं, परमेश्वर को उसके सारे गुणों को प्रकट करना है और इसलिए उसे एक बर्तन को अनादर के लिए और एक को आदर के लिए बनाना है, ताकि निश्चय ही उस एक को ऊपर रखे। अब लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ है, आप देखना, कोई उसे नहीं कह सकता है कि क्या करना है। और वो हमें विभिन्न बनाता है, यहाँ तक वो वहाँ बाइबल में हमें बताया गया है, वे तारे एक दूसरे से विभिन्न हैं, एक तारा दूसरे से विभिन्न है। आप जानते हैं वहाँ स्वर्ग में विभिन्नता है, दूतों में, सरदूतों के अस्तित्व में, वहाँ पर वे जो दूत हैं, वहाँ पर जो करूब हैं, वहाँ पर जो सराप है, और वहाँ पर उनकी विभिन्नता है, और हम सब विभिन्न हैं। और परमेश्वर के पास बड़े पहाड़ हैं, उसके पास समतल है, मैदान है, घास है, रेगिस्तान है, जल है। देखो वो विभिन्न है, वो एक विविधता का परमेश्वर है। और यहाँ आज सुबह उसके लोगों की ओर देखो, हम में से कुछ सफेद हैं, कुछ काले हैं, कुछ भूरे हैं, कुछ पीले, कुछ लाल। देखो ये उसके लोग हैं, वो एक विविधता का परमेश्वर है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि उसके पास उसके सेवकों के बीच भी वही बात है। अब आइए प्रार्थना के लिए अपने सरों को कुछ समय के लिए झुकाएं। और हो सकता है हमारे वचन पढ़ने से पहले मैं ऐसे कहूं, मैं जानता हूं यदि मैं थोड़ा ज्यादा समय लेता हूं और आप उठकर और बाहर चले जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा, मैं पूरी तरह से समझ जाऊंगा। अब आइए हम प्रार्थना करेंगे। और जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने सिरों को उस मिट्टी की ओर झुकाएं जहां से परमेश्वर ने हमें उठाया है। यहां कोई एक ऐसा है जो प्रार्थना में याद करवाना चाहेगा, केवल अपने हाथों को उठाएं और वो उस हाथों के नीचे ठीक आपके हृदय में क्या है वो जानता है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम सत्य निष्ठा से आपकी ओर बढ़ रहे हैं, हमारे सिरों को उस मिट्टी की ओर करते हुए जहां से आपने हमें उठाया है। और फिर हम सोच रहे हैं कि आपने एक रात अब्राहम से कहा, क्या वो समुद्र के किनारे की रेत को गिनती कर सकता है? और फिर आपने उससे कहा, तारों की ओर देखो और वह उनकी गिनती कर सकता है। निश्चय ही ये असंभव बात है। और आपने उससे बताया कि उसके बीज अनगिनत होंगे और जैसे समुद्र के किनारे की रेत और आकाश में प्रकाश करते हुए जो तारे हैं। अब हमारा मन, हमारे विचार, हमारे मनों के विचार, विशेष करके जब हम अपने सिरों को मिट्टी की ओर झुकाए हुए हैं जहां से हम आए हैं, फिर हमारे हृदय आकाश की ओर देखते हैं जहां पर हम जा रहे हैं। मिट्टी से तारों की ओर अब्राहम के बीज होने से हैं, मसीह में मर गए हैं, हम अब्राहम के बीज हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके साथ हम राज्य करेंगे। और हम आज सुबह यहाँ पर आए हैं स्वाभाविक जीवन के उपलब्ध भोजन से संगति करने के लिए, जिसे हमने खाया है उस जरूरत को पूरा करने के लिए। और अब हम इच्छा रखते हैं कि आप हमें स्वर्गीय मन्ना देंगे, वो भोजन जीवन में शक्ति देगा जो हम में है, जैसे कि वो लहू अब उस जीवन को लिए हुए है जो इसे बल देने के लिए है और अधिक कोशिका को बनाने के लिए है, ताकि हमें उस दिन के लिए मजबूत बनाए होने पाए। हम मसीह को ग्रहण करें, जिससे आज सुबह वो वचन के जरिए से हमारे आत्मा के अंदर आ सके और जिस घड़ी में हम जी रहे हैं हमें बल को दे दे, क्योंकि दिन बीत गया है और संध्या की छाया गिरने लगी है। वो संध्या का उजाला यहाँ पर है और हम जल्द ही उस आह्वान को सुनेंगे, ऊपर आ जाओ, और हम उस घड़ी के लिए तैयार होना चाहते हैं। इसलिए पिता हमारी सहायता कीजिए। और वहाँ पर कोई भी मनुष्य किताब को खोलने या इसके मोहरों को खोलने के योग्य नहीं है, केवल वो मेमना जो जगत की नींव डालने से घात किया गया आकर उस किताब को ले लिया और मोहरों को खोल दिया। ओ परमेश्वर के मेमने, आज सुबह आ हमारे लिए किताब को खोल और इसमें देखें आपके साथ प्रभु, और हम देखें कि इस घड़ी में तैयार होने के लिए हमें क्या करना जरूरी है। हर एक कलीसिया को और आने वाली सभाओं को आशीष दे, उनमें से हर एक को और हमारी छोटी सभा को आगे आने पर उनके साथ जुड़ जाएं। और जब यहाँ से जाएं, होने पाए हम में से हर एक जन कह सके, जैसे वे जो आमोस के रास्ते पर आए थे, क्या हमारे हृदय नहीं जल उठे जब हमसे उसने रास्ते में बातें की? इससे प्रदान करें पिता, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब आपके लिए जो पलटना चाहेंगे, हमेशा ही आप सेवक के पीछे पढ़ना पसंद करते हैं जब वो पढ़ने वाला होता है, यह देखने के लिए कि वो कहाँ से बोल रहा है। यदि आपके पास आपकी बाइबल में है तो संत मत्ती का चौथा अध्याय खोलना चाहेंगे। और अब मैं मेरे मूल पाठ को लेना चाहूंगा। इससे पहले मैं बोलूं, अधिक या कम इसे ऐसे सिखाना चाहूंगा और इसे बोलूंगा जब हम आगे जाते हैं। और इसे मैंने शीर्षक दिया है किसी कारण से, मैं नहीं जानता क्यों मैं इसे यह शीर्षक दे रहा हूं, कटनी का समय। और हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं जिसके आधार पर यह विचार रखा हुआ है, ताकि यहां से मूल पाठ के विषय को बताएं। हम संत मत्ती के चौथे अध्याय से कुछ भाग को पढ़ने जा रहे हैं। ये यीशु की परीक्षाओं में से कुछ पद हैं। उसके पवित्र आत्मा से भरने के बाद उसकी जंगल के अंदर अगुवाई हुई थी। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहा रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने सर्वदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मैं वापस चौथे पद से थोड़ा सा बस आधार को लेना चाहता हूँ। लेकिन उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब विषय के लिए मैं इसे लेना चाहूंगा, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब इसे अपने विचारों में पकड़े रहना जब हम इस पर बोल रहे हैं। यीशु ने योहन्ना 6:48 में एक बार कहा था, मैं विश्वास करता हूँ यही सही है, जैसे आज सुबह मैंने इसे लिख कर रखा है, मैं जीवन की रोटी हूँ। यह उस उत्सव के पर्व पर था जब यहूदी लोग जंगल में गिरे हुए मन्ना के उनके समृत्सव में भोजन को खा रहे थे और वे झरने से जल को पी रहे थे, और जो जंगल से उस चट्टान को दर्शाता है, और उनके पास एक बहुत ही अच्छा समय था। और यीशु उनके बीच में चिल्ला उठा और उनसे कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, तुम्हारे पिताओं ने जंगल में उस 40 वर्षों के दौरान मन्ना को खाया और वे हर एक जन मर गए, लेकिन मैं स्वर्ग से परमेश्वर की उतरी हुई वो रोटी हूँ, यदि एक मनुष्य से खाता है वो नहीं मरेगा। और चट्टान के लिए उसने कहा, मैं वो चट्टान हूँ जो उस जंगल में थी, मैं वो चट्टान हूँ जिससे तुम्हारे पिताओं ने पिया था। कैसे? उन्होंने कहा, तुम एक मनुष्य हो जो 50 से भी अधिक उससे अधिक नहीं दिखाई देते हो और कहते हो तुमने अब्राहम को देखा है। अब हम जानते हैं कि तू एक शैतान है और पागल है। और यीशु ने कहा, अब्राहम से पहले मैं हूँ, देखना मैं हूँ वो अग्नि का स्तंभ जो जलती हुई झाड़ियों में था, जिसने मूसा से बातें की थी। और यदि तुम इसके संज्ञाओं पर और सर्वनामों पर पक्का करते हो तो मैं था, मैं होऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं हूँ वर्तमान काल जो हर समय के लिए है। हम इसे सोच रहे हैं, ये जो वो कह रहा है अब अपने आप में कि मैं वो जीवन की रोटी हूँ। अब ये व्यक्ति कैसे जीवन की रोटी हो सकता है, यही हम सोचते हैं। उसने कहा, मेरी देह रोटी है, और अब यह मनुष्य कैसे रोटी हो सकता है? यह एक तरह से असामान्य बात है, लेकिन इसके बारे में उलझ मत जाना। उसके बारे में उसके दिन के लोग उलझन में पड़ गए थे, वे नहीं जान पाए कि कैसे यह खुद मनुष्य असल में रोटी हो सकता है। संत योहन्ना 1 में भी यह हमारे लिए इस प्रकार से दिया गया है, आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। इसलिए वो वचन रोटी बन गया। वो वचन और रोटी यहाँ पर उसी तरह से होंगे, कारण यीशु वचन है और वो रोटी है। अब वो कैसे रोटी और वचन बन सकता है? सब वो ये संसारिक मन के लिए पेचीदा कर देगा। लेकिन आज सुबह हम आशा कर रहे हैं कि हमारे बीच कोई संसारिक मन नहीं है, जो वहाँ हमारे बीच आत्मिक मन है, जिससे हम समझ सकते हैं कि पिता यह हमारे लिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखते हुए ये शब्द उलझन में डाल रहा है, लेकिन उसी समय पर वे वचन के अनुसार सत्य थे। देखा, अब यह मनुष्य कैसे रोटी हो सकता है? यही है जो उन्होंने कहा था, यही है जो मैं सोचता हूँ। जोसेफ, आप में से बहुत से इतिहासकार, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, अब मैं एक किताब को लिख रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य के पहले चार अध्यायों पर मेरी टिप्पणी है। आशा करता हूँ यह बहुत जल्द आपके पास होगी। यह एक बहुत बड़ी किताब होगी, फिर मेरे पास हर एक युग की पुस्तिका होगी। और मैं कलीसिया के इतिहास को पढ़ रहा था, यह एक प्रकार से मेरे मन में था। मैं सोचता हूँ यह जोसेफस था, जो पहले के लेखकों में से एक था, जो कुछ भी हो, जिसने ये कहा, यह नाजरत का यीशु जो बीमारों को चंगाई देने के लिए विषय पर चला गया, कहा उसके चेलों ने उसे खोद कर निकाला और वे उसकी देह को खाते थे। देखो, वे प्रभु बोझ को ले रहे थे और उन्होंने सोचा कि उन्होंने उसकी देह को खोद कर निकाला है और उसकी देह को खा रहे थे। जो हम प्रभु बोझ खाते हैं या हम प्रभु बोझ लेते हैं, उसकी देह को चिन्ह के रूप में, क्योंकि वो वचन है। अब देखना, यह एक पेचीदा है और उसी समय पर वहाँ पर सारे वचन है। यीशु ने कहा सारे वचनों को पूरा होना ही है। देखा, अब हम हमेशा ही अपने विचारों को बंद कर देना चाहते हैं जो कुछ भी उस वचन के विपरीत है। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी भी समय किसी भी बात के लिए उस वचन को वैसे ही रहने दें। इसमें से एक भी वचन नहीं, उस वचन के साथ ठीक ठीक बने रहो। अब परमेश्वर किसी दिन लोगों के लिए न्याय को करना है, और यदि वो लोगों का न्याय एक कलीसिया के द्वारा करेगा, वो कौन सी कलीसिया होगी? वे कहते हैं कैथोलिक कलीसिया। तो ठीक है, कौन सी कैथोलिक कलीसिया? समझे, क्योंकि वे एक दूसरे से विभिन्न हैं। जो हमारे साथ हैं, उससे भी बढ़कर वे बदतर हैं। देखना, वे विभिन्न हैं, वे सब उनमें से विभिन्न प्रकार के हैं। वे रोमन और वे ऑर्थोडॉक्स और ज्यूफोनाइट और उनमें से बहुत से विभिन्न हैं, और वे निश्चय एक दूसरे के पथ पर हैं। तो उनमें से कैथोलिक कलीसिया कौन सी है? यदि वो इसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया के द्वारा करता है, कौन सी प्रोटेस्टेंट कलीसिया? हर एक दूसरे से अलग है, लेकिन वो संसार का न्याय करने जा रहा है और उसके पास कुछ मापदंड को होना है जिसके द्वारा संसार का न्याय करे। या अब वो हमें जाने देता है तो अन्यायी होगा, और इस जीवन को जीने देता है जो बिना एक मापदंड का है जिसके द्वारा न्याय होना है। कौन सही होगा? आप कैसे कर सकते हैं कि क्या सही बात है? वहाँ पर एक मापदंड को होना है, और उसने उसके बाइबल में कहा कि वो संसार का न्याय यीशु मसीह के द्वारा करेगा। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु वो वचन है। इब्रानियों 13:8 में कहा, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो इसलिए वो कलीसिया का मसीह के प्रति उनके व्यवहार को देखकर न्याय करेगा। मसीह जो वचन है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। ना कि मनुष्य के मुख से, ना ही धर्म विद्यालय के मुख से, ना ही कलीसिया के मुख से निकले, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन। मनुष्य को उसी के द्वारा ही जीना है, और केवल उसी के द्वारा, ना ही मनुष्य का अनुवाद, लेकिन परमेश्वर का खुद का वचन। तो ठीक है, आप कहते हैं यहाँ पर एक गलती है। यदि ऐसा है तो परमेश्वर इसके लिए जिम्मेदार है, उसने इसे मेरे लिए लाया। देखो, यही है जिसे मुझे लेना ही है, ठीक यहाँ जो उसने कहा है। अब यदि यह एक तरह की पेचीदा बात है, और इस बारे में कि एक मनुष्य रोटी और वचन बना हुआ है, आइए अब ढूंढेंगे और इसके लिए देखेंगे। आइए हम ढूंढें, क्योंकि सारे वचन सच्चे हैं और इन्हें कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। हर एक वचन पूरा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितना अजीब दिखाई देता है, इसे यह हमेशा ही पूरा होगा। क्या हो यदि हमारे भाई विलियम्स और यहाँ के कुछ भाई, हमारे पूर्व पूर्व परदादा, यहाँ सुबह दोनों दृश्य पर आकर खड़े हो जाएं और कहें उन्हें टेलीविजन दिखाओ, और हो सकता है किसी ने पहले उनके उस दिन में भविष्यवाणी की हो और कहा हो, वहाँ पर एक ऐसा समय होगा कि आप लोग सारे संसार में आवाज को सुन सकते हैं। वे कहेंगे वो तो एक मामूली सा बूढ़ा आदमी है, वो अपने दिमाग को खो बैठा है। और वहाँ एक समय होगा वे रंग ठीक हवा के जरिए से बहेंगे, जो ठीक अभी यहाँ पर हैं, और वे एक छोटे से बटन को चालू करेंगे और संसार में तुम लोगों को घूमते फिरते हुए उन बातों को पर्दे पर देखोगे। तो ठीक है, वे कहेंगे मामूली बूढ़ा आदमी देखा, लेकिन यह अभी हमारे पास है, ठीक अभी यहाँ सुबह इस कमरे में है, और मैं चाहता हूँ आपके लिए उसकी जागरूकता को लेकर आऊँ। इससे पहले हम आगे की ओर बढ़ें कि परमेश्वर इस कमरे में है, इस वचन का लेखक यहाँ पर है। इसलिए इससे कोई महत्व नहीं रखता कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, या कौन से डिग्री लेकर आप जी रहे हैं, या आप किस प्रकार के घर में रह रहे हैं, या आप किस तरह की कार को चलाते हैं, या आपने कौन से शिक्षण को पाया है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है और वो मेरे हृदय को देखता है। हम हमारे हृदय से जाते जाते हैं, शब्दों से नहीं, हमारा हृदय हमें जांचता है। हृदय से हम मुंह में बोलते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो यह ढोंगीपन है। अब इस कमरे में अब मनुष्य का अस्तित्व आ रहा है, मनुष्य अस्तित्व के रूप में है, यहाँ से होकर गुजर रहा है, सारे संसार में आवाजें गा रही हैं, यह ठीक अभी इस कमरे में है, लेकिन आप देखना, लेकिन आप अपनी चेतना में सीमित हैं, एक दृष्टि के निश्चित प्रतिशत तक के आप सीमित हैं, लेकिन जब आप क्रिस्टल या ट्यूब या जो भी उस टेलीविजन में होता है और उसे आप चालू करते हैं और उस सेट के साथ वायु में उठती हुई लहरों की विकृति को ले सकती है और उस विकृति के चैनल के अंदर जमा कर देती है और उन लोगों को ले लेता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका या कहीं पर भी, भारत में या जहाँ कहीं पर भी ये हो, आप यहाँ एक पर्दे पर खड़े हो सकते हैं और जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं उसके रंग को भी देख सकते हैं, उस वृक्षों के रंगों को और हरेक गतिविधियों को जो वे करते हैं, लेकिन टेलीविजन का बटन दबाओ, देखें ये ऐसा नहीं है, तो तब इसे कहीं तो भी होना है, आपकी आंखों से ओझल है, वही चीज अभी यहाँ से होकर गुजर रही है, यह यहाँ से होकर गुजरी है जब अब्राहम ने परमेश्वर को कहते हुए सुना था ऊपर तारों की ओर देखो, यह यहाँ पर था जब एलिया उस कर्मेल पर्वत पर बैठा हुआ था, यह यहीं पर था जब आदम यहाँ पर था, लेकिन उन्होंने तो केवल इसे अभी खोज निकाला है। और उसी तरह से परमेश्वर और वे दूत यहाँ पर हैं, और एक दिन ये उतना ही वास्तविक होगा जैसे टेलीविजन या जो कुछ भी यह है, क्योंकि वो आत्मा हमें उस अविनाशी जीवन के अंदर लेकर आएगा, तब हम समझ जाएंगे, तो फिर हम उसके वचन में से बोल रहे हैं। अब जो हम कोशिश करने जा रहे हैं, परमेश्वर वो महान रचनाकार, आइए हम प्रकृति के रूप पर बोलने की कोशिश करें, उसे प्रकृति में पहले ऊपर उठाएंगे ताकि वचन के लिए इसे वापस लेकर आएं। अब प्रकृति केवल वचन के साथ काम करती है क्योंकि परमेश्वर प्रकृति का रचनाकार है। जब आप प्रकृति को इसी तरह से काम करते हुए देखते हैं, पाते हैं कि इसी तरह से है, यही मेरी पहली बाइबल है, यह पता लगाना था परमेश्वर को प्रकृति में पाया है, और गेहूं प्रकृति का उत्पादन है, रोटी इसमें से रोटी बनती है जो प्राकृतिक देह खाती है, प्रकृति बहुत से रहस्यों को पकड़े हुए है, हम और यही मेरा पहली बार बाइबल को पाना था, प्रकृति को देखना था, मैंने देखा वहाँ पर कुछ तो होना था, और अब मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बहुत कुछ प्रकृति के द्वारा बोलता हूँ। मैं अज्ञानता को समर्थन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास इसे होने के लिए एक शिक्षण को नहीं होना है, परमेश्वर को जानने के लिए एक शिक्षण को नहीं होना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह का अग्रदूत था, जब वो जंगल में से बाहर आया, हमें सिखाया गया है कि वो जंगल में 9 वर्ष की उम्र में चला गया था और वहीं पर वहाँ रहा था क्योंकि उसका महत्वपूर्ण काम था, उसका पिता एक याजक था और उस याजक पद के नियत कतार में या संप्रदाय में था। ओह, उसके पिता ने कहा, अब यूहन्ना तुम जानते हो कि तुम्हें मसीह का परिचय करवाना है, तुम जानते हो कि वो फलाना फलाना भाई बिल्कुल सही रूप में मसीह को बताएगा, इसलिए यूहन्ना को उसे दूर रहना था, उसे अपने आप के लिए जंगल में जाना था क्योंकि इसे तो परमेश्वर का चुना हुआ होना ही है और किसी तरह से कोई मनुष्य का चुना नहीं मसीह कौन होगा। तो वो वहाँ पर 9 वर्ष की उम्र में जंगल में चला गया था, और आप ध्यान देना, जब वो 30 वर्ष की उम्र में बाहर आता है, उसके उपदेश एक बाइबल अध्ययन करने वालों के जैसे नहीं थे, उसने फूलते हुए शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ये सब सारे शब्द प्रकृति पर थे। उसने उस दिन के उन कलीसिया के मनुष्यों से कहा, तुम सर्प के वंश हो, यही है جو اس نے جنگل میں دیکھا تھا، سرپ کو دیکھا تھا۔ اس نے سرپ سے نفرت کی تھی، وہ زہریلے تھے، اس کے زہریلے پنوں میں ان کے پاس مار دینے والا زہر تھا، اور اس نے اس دن کی کلیسیا کے لیے اچارن کیا، تم زہریلے سرپوں کا جھنڈ ہو، کس نے تمہیں آنے والے کروس سے بھاگنے کی چیتاونی دی ہے؟ یہ مت کہنا ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم تو یشو اسٹ ہیں، اور ہم یہ ہیں، وہ ہیں، میتھڈسٹ ہیں، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین، اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو بھی ہو، یہ کہنا آرمبھ مت کرنا، تمہارے پاس یہ ہے، کارن میں تم سے کہتا ہوں، پرمیشر ان پتھروں سے ابراہیم کی سنتان کو کھڑا کر سکتا ہے، سمجھے؟ اور یہ بھی کہا، وہ کلاڑی، اسی کو اس نے جنگل میں استعمال کیا تھا، یہ پیڑ کی جڑ پر رکھی ہوگی، اور ہر ایک پیڑ جو پھلوں کو نہیں لائے گا، وہ کاٹ ڈالا جائے گا، اور آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ دیکھو، وہ ان پیڑوں کو نہیں کاٹے گا جو پھل کو لا رہے تھے، کیونکہ جیون کے پیڑ کے پھلوں کے دوارا ہی جیے گا، لیکن جو پیڑ جس نے پھل کو نہیں لایا ہے۔ اوہ، آپ کیول وچن کو لے سکتے ہیں جو بہت ہی پریرنا سے بھرا ہوا ہے، اتنا تک کہ ہر ایک بات یشو مسیح کے ارد گرد صحیح بیٹھتی ہے۔ آپ دیکھنا، ہر ایک پیڑ جو اچھے پھل کو نہیں لاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے اور آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھنا، اس نے اس کے سندیش کو پرکتی کے ایام میں استعمال کیا تھا، اور ہم اسے سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ ورتمان میں ہم نے پایا ہے کہ اس نے کہا، میں روٹی ہوں، اور منشیہ ہر ایک وچن سے جیے گا، اور میں وہ وچن ہوں، سمجھے؟ اس لیے ہم پرکتی میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت سی بار دھیان دیا ہے کہ مجھے اسے کرنا ہے، اور پرکتی اسی استر پر چل رہی ہے۔ آپ سمے نکال کر آپ ان سارے پکشیوں کو دیکھنا، وہ اکتر ہوتے ہیں اور کھیت کھلیان میں نکل کر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کھانا کھاتے ہیں، اور ان سارے گائے بیلوں کو دیکھیں جب وہ کھیت کھلیانوں میں بکھرے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے کانٹے کو ڈالیں، مچھلی چارے کو ہی لے گی، اور جیسے وہ گائے بیل، وہ چڑیا اوپر پیڑوں میں جمع ہوتی ہیں، اور وہ گائے بیل اس کونے میں ہوتے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے اپنے کانٹے کو اچھی طرح سے ڈال لیں، وہ اسے چارے کو نہیں لیں گے، کیونکہ پرکتی ہر سمے اسی استر پر چلتی رہتی ہے، اور ویسے ہی پرمیشر کا وچن نرنترتا میں چلتا ہے۔ پرمیشر ہمیشہ ہی ہر ایک چیز کو وہ اسی استر پر کرتا ہے۔ اس نے آرمبھ میں طے کیا، جب منشیہ نے اس کے ساتھ سنگتی کو کھو دیا، کہ وہ اسے ایک بے گناہ کے بہے ہوئے لہو کے دوارا بچائے گا، اور اس نے کبھی اپنا طریقہ نہیں بدلا۔ ہم نے اس کے اندر انہیں شکشا دینے کی کوشش کی، انہیں اس کے اندر سنستھاگت کر دیا، اور اس کے اندر انہیں نویدن کیا، اس کے اندر انہیں مارا، اور اس کے اندر انہیں چلایا، یہ پھر بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ وہ کیول بہا ہوا لہو ہی ہوتا ہے جہاں پرمیشر ایک وشواسی سے بھیٹ کرتا ہے۔ نہیں، ہم ایک وشو کلیسیاؤں کے سنگھٹن کو نہیں بنا سکتے ہیں اور ہر ایک سے بھیٹ کریں، یہ کبھی بھی کام نہیں کرتا ہے، اس نے کبھی کام نہیں کیا ہے، یہ کبھی کام نہیں کرے گا۔ اسی طریقے کی پرنالی سے میں خلاف ہوں۔ پرمیشر کے پاس ایک پرنالی ہے۔ آج کل آپ نے اسے کہتے ہوئے سنا ہوگا، ساری کلیسیاں ایک ساتھ آ گئی ہیں، یہ ایک وشو کلیسیاؤں کا سنگھٹن ہونے جا رہا ہے، اور یشو نے اس کے لیے پرارتھنا کی تھی کہ وہ سب ایک ہو سکے۔ تو اب آپ دیکھنا، یہی آتما کو بنا جانتے ہوئے یہ شاریرک من ہے۔ یشو نے کہا، جس سے وہ ایک ہو سکے، پتا جیسے آپ اور میں ایک ہیں، نہ ہی کوئی منشیہ کسی چیز پر ادھیکار کرے، یا کبھی کام نہیں کرے گا۔ ایک سنستھا دوسرے پر ادھیکار کرنا چاہتی ہے، اور ایک منشیہ دوسرے پر ادھیکار کرنا چاہتا ہے، لیکن جس سے تم پرمیشر کے ساتھ ایک ہو سکو، جیسے مسیح اور پرمیشر ایک تھے، یہی وہ پرارتھنا ہے جو کہ وچن تھا۔ اور یشو نے پرارتھنا کی، ہم اسے درشاتے ہوئے وچن بن سکیں، یہی اس کی پرارتھنا کا اتر ہونا ہے۔ دیکھو کیسے شیطان اسے شاریرک وچار میں سندے کو لیتا ہے، لیکن یہ یشو کی پرارتھنا بالکل ہی نہیں تھی کہ ہم اس کے ساتھ اکٹھا ہو سکیں، اور سب کے پاس کوئی ایک سمپردائے یا اتیادی ہو، ہر ایک وہ اسے کرتے ہیں، وہ پرمیشر سے اور دور اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے ہم پرمیشر کے ساتھ ایک ہوں، اور پرمیشر وچن ہے، ہر ایک ویکتیگت اپنے ہردے میں اسے ہونا ہی ہے کہ پرمیشر کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ پرمیشر یہ جانتے ہوئے اسے یہ ساری باتیں اسی طرح سے سمپن ہوئی ہے، اب ایسے ہی ہم کسی دن پرمیشر کو پانا ہے۔ اس پرکتی میں دیکھ کر وہ ہر کہیں گھومتے ہوئے ریتو پرمیشر کو ثابت کر رہے ہیں، یہی ہے جہاں میں نے اسے پہلے پایا تھا، کیسے وہ وہاں پر ایک وسنت موسم میں جیون اوپر آتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ جیون کو جیتا ہے، ایک بیج کو اتپن کرتا ہے، وہ مرتا ہے اور زمین کے اندر چلا جاتا ہے، واپس پنوتھان میں اوپر آتا ہے، بس گول گول گھومتا رہتا ہے۔ ہم اس پر گھنٹوں گھنٹوں بول سکتے ہیں، لیکن اب کیسے اس انروپ سے وبھن ہوتا ہے۔ ہمارے مشنری بھائی جو بھارت میں ہیں، میں نے وہاں پر اور سارے سنسار میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ پنہ جنم میں وشواس کرتے ہیں۔ وہ یہاں پر آپ ایک منشیہ کی نائی جب مر جاتے ہیں، اور آپ ایک چڑیا کی نائی ایک جانور کے روپ میں واپس آتے ہیں۔ دیکھنا، یہ پرکتی کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے۔ پرکتی بتاتی ہے کہ جو بیج जमीन में चला गया है, वही बीज वापस ऊपर आता है। समझे, वही यीशु अंदर चला गया, वही यीशु वापस आता है। हालेलुया। और ये शरीर जब इस जमीन के अंदर चला जाता है, ये फूल या कोई और भी चीज वापस नहीं ऊपर आएगी, ये एक पुरुष या स्त्री वहाँ से वापस आएगा। हम देखते हैं ये प्रकृति में है, ये कैसे हो सकता है? इसे ठंडे शीतकालिक में से होकर जाना होता है और सड़ना है और इत्यादि, लेकिन जीवन संरक्षित है यदि कोई जीवन इसमें है तो। लेकिन यदि वहाँ पर यदि वो बीज अंकुरित नहीं हुआ है तो वो फिर से वापस कभी नहीं आएगा, ये ऊपर नहीं आ सकता है, इसमें ऊपर आने के लिए कुछ भी नहीं है। और यदि हम ऐसे ही नाम मात्र के मसीह बनते हैं, वहाँ संसार में दो कलीसियाएं हैं, स्वाभाविक कलीसिया, आत्मिक कलीसिया, वे सारे मसीह कहलाए जाते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक कलीसिया ऊपर नहीं आ सकती है, वो अभी विश्व संगठना कलीसिया की संगठना में अपने आप में ऊपर उठ रही है। लेकिन मसीह लोग मसीह से मिलने के लिए ऊपर आते हैं, क्योंकि यह एक दुल्हन है, ताकि जाकर उससे मिले। वहाँ उनके बीच में फर्क है। प्रकृति इन रहस्यों को हमारे लिए थामे हुए है, और जैसे हम उनकी ओर दृष्टि करते हैं और देख सकते हैं, हम देखते हैं मसीहत, मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान की सच्चाई को बोलती है। फिर यदि वहाँ पर एक गेहूं की रोटी है, तो जिसे हम जानते हैं, जिसके द्वारा हम जीते हैं, और हम जानते हैं केवल एक ही तरीका है जिससे हम हमेशा हमारे शरीर के अंदर उस मरी वस्तु को लेने के द्वारा जी सकते हैं। आप किसी और तरीके से नहीं जी सकते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ, मुझे एक शाकाहारी व्यक्ति मिला। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मुझे आप पर बहुत ही भरोसा था, जब तक मैंने आपको कहते हुए नहीं सुना कि आप नाश्ते में अंडे और मांस को खाएं। देखा और कहा, भला एक धार्मिक मनुष्य इस तरह की चीज को खा सकता है? आप देखना, मैंने कहा, तो इसमें क्या गलत है? सारी चीजें अशुद्ध हैं, लेकिन यह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा पवित्र की गई है। बाइबल ने कहा, यदि तू यीशु मसीह का अच्छा सेवक होगा तो तू इन बातों को भाई को याद दिलाएगा। देखो, सारी चीजें पवित्र की गई है, कुछ भी अस्वीकार नहीं होगी। यदि इसे करना है तो धन्यवाद के साथ करना है। पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय। अब हम देखते हैं कि यह सच है, और मैंने कहा, कम से कम मैंने कहा, तो ठीक है, तुम्हें किसी मरे हुए को भी नहीं खाना है। ओह नहीं श्रीमान, मैंने कहा, यदि आप किसी भी तरह से जीते हैं, आपको मरी वस्तुओं के द्वारा ही जीना है। यदि आप रोटी खाते हैं तो गेहूं मरता है, यदि आप हरी चीजों को खाते हैं तो इसे मरना ही है। जो भी आपने किया है, दूध भी पीते हैं, आप जीवाणु को पीते हैं, आप करते हैं, आप केवल मरी हुई वस्तु के द्वारा ही जी सकते हैं। और फिर यदि किसी को तो मरना था, इसलिए कि हम शारीरिक रूप से जी सकते हैं, तो कितना और अधिक किया जाना है जिससे कि हम अनंत कालिक जी सके। मृत्यु से ले लेती है ताकि ऐसा करे। रोटी देखते हुए कि यीशु ने कहा, मैं वो रोटी हूँ, और वहाँ एक गेहूं की रोटी है, और वो उस प्रकार की रोटी नहीं था, इसलिए वहाँ दो प्रकार के जीवन को होना है। जो रोटी के द्वारा जीवित रखता है, वो हमें उसके लिए अगुवाई करेगा। वहाँ नहीं, वो नहीं है, वो गेहूं नहीं था और वो वचन नहीं था, वो शरीर था। इसलिए दो प्रकार के जीवन को होना ही है। हम जानते हैं कि गेहूं मरता है, जिससे हम शारीरिक रूप से जीते हैं। जैसे मैंने कहा, यीशु वो वचन की रोटी मरा, जिससे कि हम अनंत कालिक के लिए जी सके। अब ध्यान दे, इसे अपने मन में रखें। अब यीशु के वचन को सच्चा साबित करने के लिए हम इसमें प्रकृति में देखते हैं यह कैसे जाता है। अब हम फिर से जानने के लिए वचनों की ओर जाएंगे, उस वचन में का आधार लेंगे, जब तक हमें मुख्य विषय नहीं मिल जाता है। परमेश्वर ने बगीचे में अपने पहले परिवार को उसके द्वारा जीने के लिए परमेश्वर का वचन दिया, इसका हर एक वचन दिया। वो पहला परिवार जिसे यहाँ धरती पर रखा गया था, जब तक वे परमेश्वर के वचन के साथ बने रहे, उन्हें अनंत जीवन दिया गया था। यह उसकी योजना थी, मैं परमेश्वर हूँ। वो कहता है, मैं नहीं बदलता हूँ। अब भी उसकी यही योजना है। उसकी यह योजना कभी भी संस्था के लिए नहीं है, या संप्रदायों के लिए नहीं है, या मनुष्य के बनाए नियमों के लिए जिससे मनुष्य जिएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक उस वचन से जिएगा। अब उत्पत्ति में वापस जाने के लिए, जो आदि है, उत्पत्ति का मतलब आदि होता है, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उसके पहले परिवार को अनंत जीवन दिया, जब तक वे इस वचन में बने हुए थे और इस वचन के द्वारा जिए थे। लेकिन जब उन्होंने इसे तोड़ दिया, केवल प्रतिज्ञाओं के जंजीर की एक कड़ी को तोड़ दिया, उन पर मृत्यु आ गई, जो एक प्रतिज्ञा भी है। यह एक जंजीर है, इसके साथ आप नरक के ऊपर लटक रहे होते हैं, और यही वो चीज है जो आपको समर्थन की होती है। जब विश्वासी एक नामधारी विश्वासी बन जाता है और एक शब्द में जीता है जो इस वचन के विपरीत है, वो अपनी संगति को परमेश्वर के साथ तोड़ देता है सिर्फ एक कड़ी टूटने से। और याद रखना, इस वचन में आपका विश्वास करना यह एक जंजीर के जैसा है। एक जंजीर अपने कमजोर कड़ी पर सबसे मजबूत होती है। यह सही है, यह वहाँ पर सबसे मजबूत होती है क्योंकि यही सबको पकड़ी हुई होगी। यदि वचन में ऐसा कुछ तो है जो आपको उलझन में डाल रहा है, जिसे आपने कुछ अलग ही सुना है, लेकिन उन्होंने कहा ये ओह यह तो प्रेरितों के लिए था और ये बातें उन बीते हुए दिनों के लिए थी, जबकि वचन कहता है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। इसे एक कमजोरी मत बनने दो, इसे मजबूत करो और थामे रहो और अपने जीवन को इसके अंदर लपेट लो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको नरक की आग से ऊपर उठा लेगी। यह सही है। जब यह जंजीर आदम और हवा के साथ टूट गई है, जो पहला परिवार था, याद रखना उन्होंने एक वाक्य को नहीं तोड़ा, उन्होंने तीन शब्दों को नहीं तोड़ा, एक शब्द को तोड़ा। मनुष्य हर एक वचन के साथ नरक के ऊपर लटकेगा, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यही है जहाँ मनुष्य की अनंत मंजिल निर्धारित है। क्यों वो जंजीर के साथ लटकेगा, या वो एक संस्था के द्वारा, या यदि वो संस्था उस जंजीर के अंदर मिलजुल गई है, वही है जहाँ पर वो कमजोर कड़ी है और आप खत्म हो जाते हैं। यही है जहाँ वो कमजोर कड़ी आदम और हवा के साथ थी। वो कमजोर कड़ी निश्चय ही उसने कहा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने इसे कहा है, और यदि परमेश्वर ने इसे कहा है तो परमेश्वर का इसमें उद्देश्य होता है, और वो उसके वचन को भी यह कहने के द्वारा रखता है जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। उस दिन तुम अपने प्राण के अंदर परमेश्वर के बिना मिलावट के वचन के अलावा कुछ और इसके अंदर डालोगे, वही वो दिन है जब तुम परमेश्वर से अलग किए जाते हो। अब यह बहुत ही मजबूत है, लेकिन थोड़ा नजदीक से देखना। अब ध्यान दें, एक शब्द पहले की बाइबल का, एक शब्द परमेश्वर ने कहा, एक शब्द ने मनुष्य को उसके अनंत जीवन की जंजीर से अलग कर दिया। यह एक मनुष्य को उठाकर उसके पैरों से लटकाने के समान है। उसने उसके हाथों को आकाश में किए हुए है और तुम उसे दो टुकड़ों में काट देते हो, पंजों से तोड़ देते हो, जिस किसी पर भी आप लटक रहे होते हो। आप उसी निचले भाग पर लटक रहे हैं और उस जंजीर को कहीं से भी तोड़ते हैं, आप खत्म हो जाते हैं। अब इसे मन में रखना, ध्यान रखना। बाइबल ने कहा परंतु तीन साक्षियों से कहने से बात पक्की ठहरे। हम कुछ मिनटों में इस पर जाएंगे जो यीशु मसीह की तीन परीक्षाएं हैं। आज सेवकों की तीन परीक्षाएं हैं जहां वे गिरावट को लाते हैं, कलीसिया की तीन परीक्षाएं हैं और जहां पर वो अपनी गिरावट को लाती है, संस्थाओं की तीन परीक्षाएं जहां वे उनके गिरावट को लाती हैं, और व्यक्तिगत में तीन परीक्षाएं हैं और जहां वे अपने गिरावट को लाते हैं। अब यह सब तीन में कार्य करता है, धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हर एक बात तीन में सिद्ध है। अब ध्यान दें, आदि में परमेश्वर उसके बच्चों को ठीक जो पहली चीज वो जीने के लिए देता है वो वचन था। हम देखते हैं यह सच्चाई है। फिर बाइबल के मध्य में हम सुनते हैं यीशु आकर और कहता है कि मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। और फिर प्रकाशित वाक्य 22:18 में यीशु फिर से बोल रहा है, कहा मैं इन बातों को कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य इसमें से एक शब्द भी जोड़ेगा या इस किताब में से एक शब्द भी निकालेगा, उसका भाग जीवन की किताब में से निकाल दिया जाएगा। अब देखना, ये ना ही हमारा अच्छा जीना है, यह बस कुछ तो है जो इसके साथ जाता है। यह हमारी ना ही कलीसिया की निष्ठा है जो इसके साथ जाती है, लेकिन मुख्य बात यह है उस वचन के साथ बने रहना। उस वचन को छोड़ कुछ भी और मत खाना, इसके साथ बने रहो, वही वो वचन है। अब हम थोड़ा नजदीक से देखना चाहते हैं, जीने के लिए इस सृष्टि की रोटी में क्या फर्क है। अब गेहूं वो जीवन की रोटी है, यदि कोई एक मिला हुआ दाना नहीं है तो इसे गाड़ दें और ये वापस ऊपर आ जाएगा। इसे एक अच्छा पका हुआ दाना होना ही है। खराब दोषपूर्ण दाने ऊपर नहीं आते हैं, हम सब ये जानते हैं। भाई सॉटमैन यहाँ बैठे हुए हैं जो कनाडा से गेहूं को उगाने वाले हैं, वो जानते हैं कि आप खराब दानों को मिट्टी के अंदर नहीं डालते हैं कि उसमें से फसल की अपेक्षा करें, क्योंकि वो कीड़े या कीटाणु जो इस दाने में है इससे पहले जीवन को इसमें से खा लेते हैं। क्या आपने जान लिया, वही वे कीड़े हैं जो आपको नष्ट कर देंगे, जो आपके शरीर को खा लेंगे, ये ठीक अभी उनमें है। अय्यूब ने कहा, मेरी खाल के कीड़े मेरे शरीर को नष्ट भी कर दें। आपको एक शव संदूक में डाल दें और इसे हवा बंद मोर लगा दें, फिर भी कीड़े जो आप में हैं आपको खा लेंगे। आप खाद्य और आटा और खाद्य वस्तु को ले लें और इसे थोड़े समय के लिए मोर बंद करके छोड़ दें। इसमें कुछ कीड़े आ जाते हैं। यह क्या है? वे कीड़े पहले से ही उसी में होते हैं, यह आरंभ से ही उसी में होते हैं। अब इस दाने को एक अच्छा दाना होना ही है, इसे दोष मुक्त होना ही है, इसमें असफलता और इत्यादि से मुक्त होना ही है, इसे एक अच्छी नस्ल का दाना होना ही है। यह एक मिला हुआ दाना नहीं हो सकता है, क्योंकि जब यह ऊपर आता है आप इसे वापस बोते हैं और आपका गेहूं पक जाता है, कारण एक मिला हुआ दाना वापस नहीं उगेगा, ये वापस नहीं बढ़ सकता है। आप उसके जीवन को उसमें से निकाल देते हैं जब आप इसे उसमें कुछ मिला देते हैं, और यही है जो कलीसियाओं का हुआ है। वे संसार के साथ मिलजुल गए हैं और यही कारण है हर एक बेदारी जो होती जा रही है, और इसके बाद आपके पास दूसरी बेदारी नहीं हो सकती है। हर एक संप्रदाय जो कभी संस्थागत हुई है वे उसी वक्त मर जाती है और वापस कभी ऊपर नहीं आती है, क्योंकि यह उसके सिद्धांतों के अंदर संसार को संस्थागत करती है, इसलिए यह कभी ऊपर नहीं आई है। वहाँ पर कोई इतिहास नहीं है जो कभी दिखाता हो कोई भी कलीसिया कभी संस्थागत हुई वो ऊपर आई हो, वो वहाँ पर मर गई। क्यों? आपने इसके अंदर इसे मिला दिया है। इस पर किसी एक बिशप को ना रखे, इस पर पवित्र आत्मा को बने रहने, समझे? पवित्र आत्मा को शोक के वस्त्र और चीजों को बाहर रखने के लिए भेजा है, ना कि बिशप क्या सोचता है या अध्यक्ष क्या सोचता है या इत्यादि। यह पवित्र आत्मा को लेता है ताकि कलीसिया को उसकी अवस्था में रखे। वो वही सिद्ध है जब हम देखेंगे। आदम के पास उसका चुनाव था, वो वचन और जीना है या एक वचन का अविश्वास और मरना है। हमारे पास भी वही चुनाव है, कारण हमारे पास होना है। यदि परमेश्वर ने आदम को वचन पर रखा और केवल वचन पर, फिर हमें एक संस्था पर या किसी भी प्रकार की संस्था पर, तब परमेश्वर उसके न्याय में अन्यायी है। यह उसकी पवित्रता और न ही उसकी प्रधानता को बताता है, लेकिन यह उसकी प्रधानता बनती दिखाई देती है कि वो हर एक मनुष्य को उसी आधार पर रखता है, और वो परमेश्वर है और नहीं बदलता है। जो परमेश्वर पहले करता है वो हमेशा ही उसी बात को करता है, वो अपनी योजना को नहीं बदलता है, केवल एक बात को करता है, वो इसे बढ़ाता है, लेकिन वो इसे बदलता नहीं है, इसी बात को वो जारी रखता है। अब आदम के पास एक चुनाव था, यदि वो वचन को थामे रहता है तो वो जीता था, यदि उसने वचन को नहीं थामे रखा वो मर गया। और हमारे पास भी वही बात है, हम वचन के साथ बने रहते हैं हम जीते हैं। मनुष्य हर एक वचन से जीवित रहेगा, यदि हम नहीं करते हैं हम मर जाते हैं, हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं। और हम अब भी आवाज कर सकते हैं, निश्चय ही यहाँ वहाँ कूद सकते हैं और चिल्ला सकते हैं और करते रहते हैं, लेकिन यह कोई जीना नहीं है, यह जीना नहीं होता है। मैं एक मिशनरी हूँ, मैंने मूर्ति पूजकों को यहाँ वहाँ कूदते और हमसे ज्यादा चिल्लाते हुए सुना है, और वे देवताओं को जानने का दावा करते हैं और इसी तरह की चीजें, वे नहीं जी रहे होते हैं, वे मरे हुए हैं जब वे जी रहे हैं, बाइबल ऐसा कहता है। अब हम देखते हैं कि यह चुनाव हमें दिया गया है, लेकिन उसने शैतान के शब्द के साथ समझौता किया, तब वो मर गया। और यदि वो आदि में जो परमेश्वर अपनी अनुग्रह और दया में उन सारी पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए निकल सकता है जो हमने किया है, इन सारे बच्चों की मृत्यु को और हर एक चीज और उस युद्ध को और वे अंदरूनी बातें और क्रूस पर चढ़ाना और वे बातें जो हमने की थी, यदि वो इसे नजरअंदाज करते हुए निकल सकता है तो उसके वचन की सर्वोत्तमता ने इसे नजरअंदाज करने की अनुमति दी होगी, तो तब वो अन्यायी होता यदि वो नजरअंदाज नहीं करता है। क्या आपने इसे समझा? वो इसे नजरअंदाज करते हुए नहीं निकल सकता है, वो आरंभ से ही कभी इसे आदम के लिए नजरअंदाज नहीं करता। हमें उस बात पर आना ही होगा, केवल वचन पर आना होगा। मनुष्य की बात झूठी ठहरे और मेरा वचन सच्चा ठहरे, उसने कहा। अब हम केवल उसके वचन के लिए देख रहे हैं, हम कौन से दिन में रह रहे हैं, कटने के समय में। तब परमेश्वर आदम के गिरने के बाद जो वचन के द्वारा परखा गया और गिर गया, परमेश्वर ने उसकी सृष्टि में जारी रखा यह कोशिश करने के लिए, जिससे एक मनुष्य को ढूंढे जो हर एक वचन को जिएगा। अब देखें, उसने मनुष्य को ढूंढने की कोशिश की जो उसके युग के लिए वचन को जिए। अब आप देखना, परमेश्वर ने उसके वचन को बिखरा दिया है, क्योंकि वो यह कर सकता है। वह है, वह असीमित है और वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है, इसलिए वो सब बातों को जानता है। वो हर कहीं उपस्थित नहीं हो सकता है, सर्वज्ञानी होने के द्वारा वो सब बातों को जानते हुए तब वो हर कहीं उपस्थित हो सकता है, क्योंकि इसी तरीके से वो हमें पूर्व ज्ञान के द्वारा पहले से ठहराता है। ऐसा नहीं क्योंकि उसने चाहा कि ये व्यक्ति बचना चाहिए और ये नाश होना चाहिए, लेकिन वो जानता है कौन नाश होगा और कौन बचाया जाएगा, समझे? इसलिए उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा वो पहले से ठहरा सकता है और वो हर एक कार्य को उसकी महिमा के लिए करता है। यही है जो उसके गुण कर रहे हैं, वे उसकी महिमा को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बर्तन आदर के लिए और एक अनादर के लिए, लेकिन ये परमेश्वर है जो इसे बनाता है, ना उस चाहने वाले या उस दौड़ने वाले को, लेकिन जिस पर परमेश्वर दया को दिखाता है। देखा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता है, यीशु ने कहा, जब तक मेरा पिता उसे नहीं खींच लाए। और वे सब जो पिता के पास थे, भूतकाल मुझे दिए गए हैं, वे मेरे पास आएंगे वचन के लिए। वे कैसे आ सकते हैं जब तक वे सब आने के लिए पहले से ठहराए नहीं गए हों? जितनों ने उसे स्वीकार किया, वो उन्हें परमेश्वर के पुत्र बनने की सामर्थ देता है। देखना, क्योंकि उनके नाम किताब पर थे, वे जो किताब पर थे उन्हें छुड़ाने के लिए वो आया। प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं, जब मुहरें खुल गईं, वहाँ पर एक किताब थी और वो जो सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा था, और वहाँ पर कोई नहीं था जो किताब को आकर ले ले, और इसे देखने के लिए योग्य भी नहीं था। योना जोर से रोने लगा क्योंकि छुटकारे की संपूर्ण किताब वहाँ पर थी। यह एक रात की सभा थी, असेंबली ऑफ गॉड के भाई और बहन ने इस गीत को गाया। मैं सोचता हूँ, यदि योना ने मुझे देखा था, जब उसने सारे राष्ट्र को एक साथ देखा, क्या उसने मुझे देखा? निश्चय ही उसने देखा, यदि आपका नाम किताब पर था। और जब योना का नाम भी उस पर था, और वो रोया क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था जो उसे छू सके। और फिर प्राचीनों में से एक ने आकर कहा, योना मत रो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह जीवंत हुआ है। और योना ने एक सिंह को देखने के लिए यहाँ वहाँ देखा, और पर्दों के पीछे से एक मेमना आता है, एक मेमना जो जगत के नींव डालने से पहले घात हुआ था। तब उसने एक लहूलुहान मेमने को बाहर आते हुए देखा, और वो आकर और उसके दाहिने हाथ से किताब को ले लेता है, और उनमें के हर एक चीज को बुलाता है जो उस किताब पर था। यह संपूर्ण छुटकारे की किताब थी, और यह वो है, वो छुटकारे की किताब। उसने सबको छुड़ाया जो उस किताब पर थे, ना ही जो किताब के बाहर हैं। जिस किसी की भी शुरुआत थी, उसका अंत भी है। लेकिन यदि आपको अनंत जीवन मिला है, आपका कभी भी आरंभ नहीं हुआ है और आपका अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या है। उसके विचारों और उसके वचन के गुण हैं। आपके जीवन की समाप्ति नहीं है यदि आपका नाम उस किताब पर है। वो मेमना इसे छुड़ाने के लिए आया, ना ही वे सब जो मसीह होने का दावा करते हैं, ना ही वे सब जो अच्छा और पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जिनके नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं, उसने उन्हें छुड़ाया, और केवल उन्हें ही जिनके नाम किताब पर थे। अब हम पाते हैं कि आदम के गिरने के कारण शैतान था उस एक शब्द के द्वारा, और अब परमेश्वर ने उसकी सृष्टि में जारी रखा है ताकि मनुष्य को पाने की कोशिश करे जो एक हरेक वचन से जीवित रहे। उसका पहला मनुष्य चूक गया, और यह मनुष्य उसके समय के वचन को जिएगा, उसके युग के जिसमें वो रहता है। अब देखना, वहाँ पर अलग अलग युग हैं जिसकी परमेश्वर ने आरंभ में भविष्यवाणी की थी, जो सारी बातें पूरी तरह से जगह लेंगी। यही कारण है वो आरंभ से लेकर अंत तक बता सकता है, क्योंकि वो सारी बातों को जानता है। उसने सारी चीजों को यीशु मसीह के द्वारा बनाया, और उसी के लिए और उसकी खुद की इच्छा से। अब ध्यान पूर्वक देखें, इसे चूकना मत। क्या हो यदि मूसा नूह के संदेश को लेकर आ रहा होता? यह काम नहीं करता, नहीं कर सकता है, नहीं। क्या हो यदि यीशु मूसा के संदेश को लेकर आ रहा होता? यह काम नहीं करता। क्या हो यदि हम मेथोडिस्ट के संदेश को लाने की कोशिश करते हैं, बैप्टिस्ट के संदेश को या पेंटिकॉस्टल के संदेश को? यह काम नहीं करेगा। वे ठीक हैं, हम वचन के द्वारा इसे एक मिनट में साबित करेंगे। वे उनके युग पर बिल्कुल सही थे, वो युग बीत चुका है। हमें यह देखना है कि आज के लिए वचन क्या कहता है। इस दिन के लिए यही है वो जिसके द्वारा मनुष्य को उसके वचन के लिए जीना है। उसने एक मनुष्य को पाने की कोशिश की है जो संपूर्ण वचन को जिए। पहली बात जो उसने की, उसने नूह को परखा। नूह ने उसे विफल किया, उसने मदिरा पी थी, वो विफल हो गया। मूसा वो सामर्थी परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना था, परमेश्वर ने उसे परखा और मूसा विफल हो गया। मूसा ने खुद की महिमा की, और मूसा को प्रतिज्ञा देश के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। फिर दाऊद आया, जिसे वो प्रतिबिंब करने जा रहा था। उस दाऊद में वो महान छह शताब्दी थी, और वह दिखाने जा रहा था कि उसका राजा कौन था। और परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई, वो खड़ा करेगा, उसके पुत्र को सिंहासन पर बैठने के लिए खड़ा करेगा। और दाऊद एक ऐसा साहसी पुरुष था, इतना तक कि वह परमेश्वर के अपने हृदय के अनुसार एक मनुष्य था। और दाऊद अच्छा कर रहा था, उससे सारे फिलिस्तियों को कुचल डाला और वेदियों को फाड़ डाला और वचन के साथ बना रहा। और अतः एक सुंदर स्त्री ने उसे पलट दिया और दाऊद ने व्यवस्था को तोड़ डाला, वचन को खो दिया, व्यभिचार किया। देखा, एक मनुष्य जो उसके हृदय के अनुसार था, देखना दाऊद ने उसे फिर भी विफल कर दिया। मूसा ने उसे विफल कर दिया, उनमें के बाकी सारे लोगों ने उसे विफल कर दिया, लेकिन उन सबके जीवन ने केवल उसे प्रतिबिंब किया, वो जो एक आने वाला था। प्रकाशित वाक्य की किताब में से जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, एक व्यक्ति जो मेरा अनुवाद कर रहा है या व्याकरण जानने वाला, मेरा व्याकरण खराब है। इसका सही व्याकरण करने के लिए मुझे एक अच्छा विद्वान मिल गया है जो सही संज्ञाओं और सर्वनामों को इसमें डाले, लेकिन वो करता है और वो उन सबको डाल देता है। मैं जानता हूँ, केवल जो बात को मैं जानता हूँ परमेश्वर इसे मुझे देता है और मैं बस इसे लिख देता हूँ, देखना। और उन्हें ऐसे रखना है, यदि अध्ययन और बातों के अंदर जाता है, वे जानते हैं इसे और अच्छे से उनके अपने तरीके से समझ से कैसे पढ़ा जा सकता है। और तब लेखक ने मुझसे कहा, वो व्याकरण का लेखक, वो व्यक्ति जो उसका सही व्याकरण कर रहा था, मुझसे कहा, उसने कहा, लेकिन भाई ब्रैनम, हम देखते हैं पिरगमुन कलीसिया काल, यीशु ने यहाँ पर कहा, वो जो जय पाए मैं उसे भोर का तारा दूंगा, उसे भोर का तारा दूंगा। उसने कहा, अब उसे भोर का तारा कैसे मिल सकता है, जबकि यीशु ने खुद कहा कि मैं भोर का तारा हूँ। देखो, वे सारे अब्राहम के बीच तारों के द्वारा प्रतिबिंबित हुए, वे एक दूसरे से भिन्न थे और हम एक दूसरे से भिन्न हैं, और यीशु वो भोर का तारा है, उन सबसे चमकदार है। लेकिन हम उसे प्रकाशित वाक्य एक में उसके हाथ में सात तारों के साथ पाते हैं, वो इसका अनुवाद करता है और कहा, यह सात तारे सात कलीसिया काल के सात दूत हैं, या सात कलीसिया के युग जो आने वाले हैं। फिर उनसे कहा, यदि उनके पास भोर का तारा है तो फिर यह कैसे हो सकता है। मैंने कहा, वे तारे जो उसके हाथ में थे वह केवल उस भोर के तारे से प्रतिबिंब तारे थे, देखना, क्योंकि उस दिन के संदेशवाहक के पास वचन था और वो वचन है, उसके पास उस वचन के लिए कुछ ही भाग था। और वे लोग जो संसार के तरीकों से और संसार की बातों से और संसार के साथ चलने से दूर आने के लिए तैयार हैं, उस युग के संदेशवाहक के जरिए से भोर के तारे के प्रतिबिंब को देखते हैं, जैसे उसने नूह के जरिए से, मूसा और इत्यादि के जरिए से किया, जैसे उसने पुराने नियम को प्रतिबिंब किया। अतः वे सब एक के लिए पहुँच गए, और वैसे ही यह कलीसिया कालों के समाप्ति पर होगा, यह सब वापस यीशु के लिए पहुँचेगा कि वो वचन है। हम मसीह की नाई केवल उसे प्रतिबिंब कर रहे हैं, चंद्रमा केवल सूर्य को उसकी अनुपस्थिति में प्रतिबिंब करता है, और विश्वासी परमेश्वर के पुत्र की अनुपस्थिति में केवल परमेश्वर के पुत्र को प्रतिबिंब करता है। यह बाइबल का प्रकाश है, वे वचन हमारे जीवनों में प्रमाणित हुए हैं, वो वचन जो अंधकार में प्रकाश देता है। आप वो दीपक हो जिसे एक पहाड़ी पर रखा गया है, यह सूर्य नहीं है, यह एक दीपक है। वो दीपक केवल सूर्य के स्थान को ले लेता है, जो केवल थोड़ी सी प्रकाश की मात्रा को दिखाता है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम केवल कुछ भाग के साथ हैं, आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं। हम एक तारा है जो चमक रहा है, हम सब एक साथ उजाले के संसार को बनाते हैं, लेकिन वो संपूर्ण पुत्र है जो हरेक तारे के उजाले को प्रतिबिंब करता है। हालेलुया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर मेरे अविश्वास पर मदद करे। अंत में वो एक सिद्ध जन पहुँच जाता है, अब वो हर एक स्तर पर परखे जाने के लिए पहुँचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बाइबल कहता है वो परखा गया था। वो नूह की नहीं परखा गया था, वो मूसा की नहीं परखा गया था, वो उन सब बाकी के जैसे परखा गया था। यदि हमारे पास इसे बताने के लिए समय होता था तो आपको दिखाता, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, कारण मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन व्याख्या करने के लिए और आपको दिखाने के लिए वो उसी तरीके से परखा गया था। शैतान अपनी युक्ति को कभी नहीं बदलता है, ना ही परमेश्वर बदलता है, केवल युग बदलते हैं। लेकिन क्या शैतान ने पहले वहाँ धरती पर परमेश्वर के पहले परिवार के साथ क्या किया? यहाँ पर है ये, भाई बहनों, इसे समझने से चूकना मत। शैतान ने कैसे उस पहले परिवार को पकड़ लिया, वो किसी और तरीके से इसे नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए वचन को तोड़ा, क्योंकि ये वचन के पीछे गिलाबंद थे। यदि वो केवल एक दरार कर सकता है तो ऐसे ही उसने हर युग में कलीसिया को पकड़ा, हर एक विश्वासी को पकड़ा, केवल उस दरार को डाल दिया। वे कहते हैं तो ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ बाइबल सही है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता। ओह, उसे वहाँ पर जाना था, बुरा हुआ वो वहाँ पर चला गया। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, अभी नजदीक से अब बंद करते हुए, अब वो अंत में इस एक को पहुँचना था और परखा जाना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन बाकी को परखा गया था। अब ध्यान देना कैसे शैतान अपने हर एक प्रहार को करता है, बिल्कुल वैसे ही हर एक समय करता आया है। अब उसने वैसे ही स्वाभाविक रोटी देने की कोशिश की, वैसे ही जैसे उसने हवा से किया, यदि तुम इसे खाओगे तो इसे ले लो या कुछ और, वो इसे पकड़ लेता है। और यही है जिसे वो हर एक संस्थाओं के लिए करता है, यही है जिसे वो हर एक व्यक्तिगत के लिए करता है। वो आपको स्वाभाविक चीजों को देने की कोशिश करता है जिससे आप उसकी ओर देख सकते हैं, और वो आपको दूर लेकर चला जाता है। ठीक है, इस महान बड़ी कलीसिया की ओर देखो, क्यों उनके पास इसमें बहुत सारे लाखों लोग हैं। हमारी कलीसिया शहर में सबसे बड़ी कलीसिया है, तो हमारे पास कलीसिया में मेयर आता है। इन सबको देखो, हमारे पास्टर के पास एक डीडी एलडी पीएचडी की डिग्री है। उस उचित रूप से उसे उस बुद्धिमान व्यक्ति को होना अवश्य है। एक कैथोलिक याजक वहाँ पर आकर और किसी भी समय उसकी डिग्रियों के साथ उसे ऊपर चढ़ा सकता है। उसके पास कुछ 60 अनोखी किताबें हैं जिसे वो पूरी तरह से उसको जानना है, जितना कि आप बाइबल को जानते हैं, ताकि उसे एक याजक बनाने की डिग्री मिल सके। इसलिए पढ़ाई लिखाई से तुलना करने की इसके साथ कोशिश मत करो। ये बिल्कुल दुनिया के जैसा ही है, हमेशा ही तुलना करने की कोशिश करते हैं। दुनिया की बातों के साथ तुलना मत करना, कलीसिया के साथ तुलना मत करो, बाइबल के साथ तुलना करो। यही है जो आज हम कर रहे हैं, यही है जो हमारे पेंटिकॉस्टल के साथ समस्या है, यही है जो हमारे गुट और गीत गाने वाले और इत्यादि के साथ समस्या है जो हमारे पास है। हम हॉलीवुड के जैसे अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉलीवुड की जगमगाहट सुसमाचार चमकता है, वहाँ पर जगमगाहट और चमकने के बीच में बहुत सारी विभिन्नता है, समझे। हॉलीवुड के कपड़ों के साथ जगमगाहट होती है, रिकीज और रिकिटाइज और रिकुटेस, लेकिन परमेश्वर की नम्रता विश्वासियों की नम्रता में चमकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना अशिक्षित है, वो नम्रता में चमकता है, ना कि हॉलीवुड में दमकता है। ध्यान देना, उसने यीशु पर अपनी पुरानी तरकीब की कोशिश की, उसी चीज को उसने मूसा के साथ किया, उसी चीज को उसने बाकी लोगों के साथ किया था, उसने इसकी कोशिश की, वो उसकी आप पर भी कोशिश करेगा, ताकि आप कुछ तो बहुत ही बड़ी चीज को मान लें जो चमकदार दिखाई देती है। मुझे याद आता है जब मैं अक्सर रकुन का शिकार करता था, जो पेड़ पर चढ़ने वाला पूर्व अमेरिका का जानवर है, जो मांसाहारी जानवर है। मेरे पास कुछ तो था, पापा मेरे पिता तंबाकू का सेवन करते थे, मैं नहीं जानता कि आप सब लोग ये जानते भी है कि नहीं। उस पर एक पुराना लेबल हुआ करता था जो हमेशा ही एक तंबाकू के ऊपर लिपटा हुआ होता था। मैं उन्हें ले लेता, मैं एक लकड़ी को लेकर और उसमें छेद को किया, ठीक उस छोटी खाड़ी के आसपास जहां पर एक रकून दौड़ रहा होता है, और फिर उस छेद को करके और उस तंबाकू का लेबल वहां चिपका दिया, और फिर मैं कीलों को गाड़ दिया इस तरह के कांटे को लटकाकर, और वो रकून हमेशा ही चमकदार चीजों की ओर आकर्षित होता है। और तो जब चंद्रमा ऊपर आता है और वो वहां आगे बढ़ा, उसने वहां पीछे की ओर देखा, उसने अपने हाथ को इसे लेने के लिए उसमें बढ़ाया, और वह इसे छुड़ा नहीं पाएगा। वो कुछ कलीसिया के सदस्यों के जैसा है, वो जानता भी है वो इसे नहीं छुड़ा पाएगा। यदि मैं करता हूँ तो वे मुझे संप्रदाय से बाहर कर देंगे, यही पर उसकी मृत्यु है, बस इतना ही है। तो ठीक है, ध्यान देना, वहाँ वो इस पर पकड़े रहता है, वो इसे ढीला नहीं छोड़ेगा। अब शैतान ने अपनी उस तरकीब को यीशु पर करने की कोशिश की जिसे उसने उन बाकी के लोगों पर की थी। उसने उसे प्रतिज्ञा वचन को छोड़ कुछ तो और खिलाने की कोशिश की, क्योंकि यीशु ने कहा, यह लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, समझे। उसने उसे आज्ञाकारी बनाने की कोशिश की, हालांकि यह आकर्षित दिखाई दिया, जैसे कि वो खुद को खिला सकता है और वह उसे कर सकता था। आपके पास, आप भी चाहें तो किसी भी तरह की प्रक्रिया को कर सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई भी एक जिसे आप चाहें। अब यदि उस रकुन के पास इतनी समझ होती थी, ओह अपने हाथ को पीछे रखे, तो वो फिर से इसे वापस खींच सकता है, लेकिन वो नहीं करता है, वह खुद को वहाँ पर रोके रखता है। और इसी तरह से बहुत से नाम मात्र मसीह लोग भी करते हैं, वे इसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, वे आकर इससे सुनना नहीं चाहते हैं, वे इसके बारे में कुछ नहीं चाहते हैं, आगे जाकर और फिर इसमें रुके रहते हैं। देखना, आप जान जाएंगे कि ये क्या होता है। अब ध्यान देना, उन्होंने जीवन की रोटी को छोड़, जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है, उसे कुछ तो और ही खाने को देने की कोशिश की, लेकिन यीशु पिता के वचन के साथ बना रहा। ओह, उस समय उसने हवा को प्रहार नहीं किया, उसने कभी मूसा को प्रहार नहीं किया, उसने कभी उन बाकी के किसी को भी प्रहार नहीं किया, उसने उस एक को प्रहार किया जो वचन को प्रतिबिंब कर रहा था। देखना, उसे यही वो कारण है, वो वचन था। लेकिन यीशु वचन के साथ बना रहा, उसके आध्यात्मिक अध्ययन के विद्यालय के सिद्धांतों को इंकार किया था। हाँ श्रीमान, उसका नया उजाला, उसका ज्यादा अनुभव, वो इसे यीशु पर दबाव नहीं दे पाया जैसे उसने इसे हवा पर किया था ताकि उसे दिखाए। कहते हैं, ओह निश्चय ही परमेश्वर ने, ओह निश्चय ही परमेश्वर इसमें होगा यदि हम एक साथ हो सकते हैं तो, और एक सारे विश्व कलीसिया की संगठना बना सकते हैं। कहते हैं निश्चय ही परमेश्वर होगा, वो एकता को चाहता है और वो भाईचारे को चाहता है, उसके खुद के साथ, ना ही दुनिया के साथ, उसके खुद के साथ भाईचारा, उसके खुद के साथ आराधना, यही है जिसके लिए वो मरा कि आप उसकी आराधना करें। जैसे हमेशा ही यदि वो नहीं, अब हम देखते हैं शैतान हार गया, यीशु यहोवा योग्यता के साथ वापस ठीक उसके पीछे चला गया। अब जब वो उस एक विश्वासी को देखते हैं, अविश्वासी को देखना, अब आप में से हर एक जन कलीसिया उसी दर्जे में आता है जब वो आपको देखता है वचन के साथ बने रहेंगे कहते हुए, हाँ मैं बाइबल में विश्वास करता हूँ, मैं कोई संस्था और वहाँ उन चीजों में नहीं जुड़ता हूँ, मैं बाइबल के साथ बना रहूँगा। और जैसे हमेशा यदि वो आपको विश्वास नहीं दिला सकता है ताकि आप वास्तविक सच्चाई को जिए और वचन पर विश्वास करें, मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें दूसरी बार उसने यीशु के साथ क्या किया था। यदि वो आपको नहीं पकड़ पाता है कहते हुए, मैं संस्था से नहीं जुड़ने जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने आजाद जन्म लिया था, मैं इसी के साथ बना रहूंगा, मैं इसे करने जा रहा हूँ, वो या वो, देखो कलीसिया से जुड़ना और तुम आकर जुड़ो और कुछ तो और ही, वो आपको ये करने के लिए नहीं पकड़ सकता है, तब वो आपके लिए कुछ और ही करेगा। ओह भाई इसे देखना, यदि वो नहीं करता है फिर वो आपको दूर उसकी खुद की शिक्षा विद्यालय के लिए भेज देगा ताकि उसके खुद के धर्मशास्त्रियों के द्वारा सिखाए। देखे यहाँ पर शैतान अनुवादक होता है। ओह अद्भुत कार्यों के दिन बीत गए हैं, वो वहाँ पर जो लोग हैं मैं जानता हूँ वो एक अधर्मियों का झुंड है, वे नहीं है, देखना वो आपको वहाँ पर भेजेगा। ओह हो सकता है आप कहें एक मिनट रुकना भाई ब्रैनम, अब एक मिनट के लिए आओ, कुछ मिनट के लिए रुके, देखना अब आप कहेंगे कि आपको अब और नहीं करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान। लेकिन यीशु ने कहा जब वो सच्चाई का आत्मा आता है, देखना वो आपको याद दिलाएगा, इन बातों को लेकर आएगा जो मैंने सिखाई है, जो वचन है, और वो आने वाली बातों को उसे भी दिखाएगा। वहाँ पर वास्तविक आत्मा से भरी हुई कलीसिया है जो वचन के साथ बनी रहती है, वचन को प्रतिबिंब करती है कि परमेश्वर धरती पर है, समझे। उसे किसी भी धर्म शास्त्री की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके वचन का कोई निजी अनुवादक नहीं है, वह खुद अपने वचन का अनुवादक है। इसे प्रमाणित करने और साबित करने के द्वारा यही सच्चाई है। जब मैथोडिस्ट कलीसिया ने आपसे कहा तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते हो जैसे उन्होंने पेंटिकॉस के दिन किया था, आपने इस पर थोड़ा ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं, आप ठीक इसके साथ जाएं, आप फिर भी पवित्र आत्मा को पा लिया है, देखा। क्योंकि वो मैं एक रात वहाँ एक बैप्टिस्ट सेवक के साथ उस त्रिएकता को वर्णन कर रहा था और मैंने उसे बताया यह केवल एक शब्दावली है और हम इसलिए जानने के लिए आए हैं। उसने कहा एक और छोटा सा सेवक जो शिक्षा विद्यालय से था, उसने कहा लेकिन मिस्टर ब्रैनम आप लोगों को एक प्रेरितों के धर्म को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा निश्चय ही वो वहाँ पर केवल एक ही है। और उसने कहा श्रीमान आप कौन से विद्यालय पर गए हैं? मैंने कहा श्रीमान मेरे घुटनों पर मेरे भाई, ना ही देखो यही है जहाँ पर मैं गया हूँ, ना ही धर्म विद्यालय लेकिन न्यूरोलॉजी घुटनों के विद्यालय पर। मैंने कहा यही है जहाँ पर मैंने उसे पाया है। और उसने कहा मिस्टर ब्रैनम वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसे उन्हें पेंटिकॉस के दिन मिला आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वही आज है? और मैंने कहा बाइबल ने कहा श्रीमान कि वो यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। मैंने कहा वो यीशु मसीह था जो पेंटिकॉस के दिन आया था? ओह हाँ नहीं वो एक ही है। तो भी थोड़ी देर पर मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक और सहायक को भेजेगा जो पवित्र आत्मा है, और थोड़ी देर रह गई है, संसार मुझे नहीं देखेगा फिर भी तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में रहूंगा संसार के समाप्ति अंत तक। मैंने कहा हाँ यही है जो पेंटिकॉस्टल के दिन आया था। हाँ श्रीमान वो आया और उनमें रहा। ध्यान देना पवित्र आत्मा के व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के व्यक्ति में है जैसे हम परमेश्वर को समझते हैं। अब ध्यान देना शैतान को उसके धर्म शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, धर्म शास्त्र की। और इस मनुष्य ने मुझसे कहा, उसने कहा मिस्टर ब्रैनम, उसने कहा मैं आपको समझ दूंगा, मैं एक विशेष विद्यालय से हूँ और हम प्रशिक्षित लोग हैं। मैंने कहा मैं आपकी हर समय सभा को सुनता हूँ। देखा, उसने कहा हमने वहाँ पर प्रशिक्षण को पाया है। कहा उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल चिलो ही के लिए था। मैंने कहा बाइबल ने कहा वहाँ ऊपरी कोठरी में 120 लोग थे। और मैंने कहा अब कौन सही है, तुम यह वचन? और मैंने कहा और फिर यह भी, जब फिलिपुस सामरिया में जाकर प्रचार किया और उन्हें यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया, लेकिन पवित्र आत्मा फिर भी उन पर नहीं उतरा था क्योंकि पतरस के पास चाबी थी। इसलिए उसे यरूशलेम को भेजा और वो पतरस को मिला, जिसने नीचे आकर और अपने हाथों को उन पर रखा और पवित्र आत्मा उन पर आ गया। बाइबल ने कहा वो पवित्र आत्मा। मैंने कहा वहाँ पतरस एक दर्शन के साथ था, उन चाबियों के साथ था। वहाँ ऊपर कुरनेलियुस के घर पे वो चला गया, जो प्रेरितों के काम 10:39 में है। और जब वो उन वचनों को बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतर कर आ गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें अन्य जबान में बोलते हुए सुना और भविष्यवाणी की, परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे थे। तब पतरस ने कहा क्या हम पानी को रोक सकते हैं कि इसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए? यह देखते हुए कि उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है जैसे हमने आरंभ में पाया था, और उसने उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी। हम देखते हैं 30 वर्षों के बाद पौलुस इफिसुस के ऊपर किनारे पर होकर गुजरता है। वहाँ कुछ बैप्टिस्ट लोगों को देखता है जिनके पास एक महान बेदारी होती है, महान बातें हो रही हैं। वे चिल्ला रहे थे, परमेश्वर को स्तुति दे रहे थे। और पौलुस ने कलीसिया से भेंट की जहाँ पर लगभग 20 लोग उपस्थित थे, जहाँ अक्सिला और प्रिस्किला उपस्थित थे, जहाँ पर अपुलुस एक परिवर्तित व्यवस्थापक था जो बाइबल के द्वारा साबित कर रहा था कि यीशु ही मसीह था, और उनके पास बड़ा ही आनंद था और एक बड़ी सभा थी। पौलुस वहाँ से गुजर रहा था, वो वहाँ पर आया, परमेश्वर ने उसे कैद से बाहर निकाला। पौलुस ने एक आत्मा को बाहर निकाला था, एक शैतान जो एक भविष्य बताने वालों में से था, और फिर वो उनमें से होकर ऊपर वहाँ प्रभु के काम को आया था, और वो सभा को सुनने के लिए गया। और उसने कहा यह मनुष्य एक महान व्यक्ति है, ठीक बात है, लेकिन कहा क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है जब से तुमने विश्वास किया? उसने विश्वास किया, आपने इसे पाया है जब आपने विश्वास किया। लेकिन उसने कहा क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है जब से तुमने विश्वास किया? उसने कहा हम जानते भी नहीं कि कोई पवित्र आत्मा है भी कि नहीं। कहा तब तुमने किसका बपतिस्मा लिया था? यह वो सवाल था। उसने कहा हमने उसी मनुष्य से बपतिस्मा लिया है जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, यूहन्ना। हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, समझे? उसने कहा यूहन्ना ने तो केवल मन फिराव का बपतिस्मा दिया, ना ही पापों की क्षमा के लिए, यूहन्ना, क्योंकि मेमना अब तक घात नहीं किया गया था। उसने कहा यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया, देखते हुए आप उस पर विश्वास करना चाहिए जिसको आना है, यीशु मसीह पर। और जब उन्होंने इसे सुना तब उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था, और पौलुस ने उन पर हाथ रखा और पवित्र आत्मा उन पर उतर कर आ गया, और उन्होंने भविष्यवाणी की और अन्य जबानों में बोलने लगे 30 वर्षों के बाद। और मैंने कहा साथ ही साथ क्या तुम बाइबल को विश्वास करते हो? उसने कहा निश्चय ही करते हैं। मैंने कहा पतरस पेंटिकॉस्ट के दिन पर जब यह सारे दल में फैल गया था और वे सब चिल्लाने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उन्होंने कहा भाइयों हम बचने के लिए क्या करें? पतरस ने कहा हर एक जन पश्चाताप करो और पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे बच्चों के लिए है और उनके लिए जो बहुत दूर हैं, यहाँ तक जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन वचन कभी भी नहीं टलेगा। तुम जो पेंटिकॉस्टल हो, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या प्रेस्बिटेरियन, इस पर ध्यान नहीं दिया, तुम जानते थे यह हर एक पीढ़ी के लिए था और आपने इसके अंदर जोर दिया है, निश्चय ही। अब ठीक वहाँ पर जोर देना बंद मत करना, केवल जोर देते रहें। देखो यही है जहाँ पर मेथोडिस्टों ने अपनी गलती को किया है, उन्होंने पवित्रीकरण को जोर दिया है लेकिन वे रुक गए। लूथरन ने धर्मीकरण के अंदर जोर दिया और वे रुक गए। देखना तब उसने इसे संस्थागत कर दिया, यह वहाँ पर मर जाते हैं, यही इसका अंत हो जाता है। ऐसे ही इन सबका होता है। अब ध्यान देना, अब हम जल्दी से इसमें जाएंगे। जब सच्चाई का आत्मा आता है वह तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा, जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है। ओह प्रभु आप सब याद रखना जो मैंने आपसे कहा है, आपके लिए सब यादों को ला रहा हूँ। और वो आपको आने वाली बातों को दिखाएगा, वो हर एक वचन को प्रमाणित करेगा निम्न चिन्हों के साथ, वचन को साबित करते हुए। हर एक चीज जो उसने प्रतिज्ञा की है, जिसे परमेश्वर ने बाइबल में प्रतिज्ञा की है, यदि तुम हर एक संप्रदाय, और जो कुछ भी है उसमें से मुड़ जाओगे और वचन को थामे रहोगे। परमेश्वर उसके वचन का ध्यान रखते हुए प्रतिज्ञा बंद है और इसलिए उन्होंने जब इसे किया वो वचन आप में से प्रमाणित होता है। उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं कि कहे तो अद्भुत कार्यों के दिन बीत गए हैं। वो कौन मनुष्य है जो मुझसे कहे कि अद्भुत कार्यों के दिन बीत गए हैं, जब एक समय वो अंधा मनुष्य था। हालेलुया, मैं एक बार पड़ा हुआ था जहाँ डॉक्टरों ने मुझे जीने के लिए 3 मिनट दिए थे और मैं आज जी रहा हूँ। कैसे वे मुझे कोई फर्क बता सकते हैं? एक बार एक गुनगुने कलीसिया का सदस्य था, पवित्र आत्मा से भर गया। परमेश्वर को किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा खुद ही जो वचन है इसे सच्चाई होने का अनुवाद करेगा। यदि एक मनुष्य खड़े रहने और इसे लेने की हिम्मत करेगा, वो उसका खुद ही अनुवादक है। एक बार इसे परखो और देखो कि क्या यही सही नहीं है। कोई क्या कहता है उसकी ओर ध्यान नहीं दे, उसे ध्यान दे कि परमेश्वर ने क्या कहा है। तो ठीक है, आप कहेंगे मैं इसे करता हूँ, ठीक है, दूसरों के बारे में क्या है। हर एक वचन, एक शब्द जंजीर को तोड़ देता है। यही है जहाँ पर हमेशा ही कलीसियाएं चूक जाती हैं, ठीक उसी जंजीर पर वे इसे संस्थागत कर देती हैं और चीजों को एकत्र करके और बड़े संप्रदायों को बनाते हैं। ये एक मनुष्य के साथ आते हैं, होली फादर फलाना फलाना और डॉक्टर बिशप फलाना फलाना, और आपके पास पहली बात क्या होती है, आप वहाँ पर हैं, आप ठीक वहीं पर मर जाते हैं। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम इसे प्रकृति की ओर से वचन के द्वारा कुछ ही मिनटों में साबित करेंगे। तो ठीक है, वापस याद दिलाते हुए वो हर एक वचन को प्रमाणित करता है और हम इसके द्वारा जीते हैं। हालेलुया, इसके द्वारा जीते हैं। मनुष्य हर एक वचन से जीवित रहेगा, हर एक वचन प्रमाणित हुआ वचन है। यीशु ने कहा ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं, उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। इसे पकड़े रहो, परमेश्वर इसे प्रमाणित करता है कि यही सच्चाई है। जहाँ वे शिक्षा विद्यालय और धर्मशास्त्री हैं जो शैतान के द्वारा प्रेरित हुए हैं, कहते हैं आप इसे भरोसा नहीं कर सकते हैं, यह प्रेरितों के लिए है, वे दिन बीत गए हैं। इस तरह की कोई चीज नहीं है, इसका अर्थ केवल प्रेरितों के लिए था ताकि उस समय के सुसमाचार को साबित करे। हम आज शिक्षित लोग हैं जो अभी हमारे पास शिक्षा है, उस समय उनके पास उससे और भी बेहतर शिक्षा थी। मुझे कोई कलीसिया बताओ जो उसके साथ ऊपर आ सकती हो। वो महासभा जब उनके पूर्व 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 पर दादा उनके पहले याजक हुआ करते थे, एक लपेटे हुए सूची पत्र में वो वचन था, या इसी कारण से उनके पास इसके लिए उनके पास पत्थर हुआ करते थे। उन्हें बिल्कुल ठीक इसके साथ बने रहना था, लेकिन वे वचन के वास्तविक बीज को देखने से चूक गए हैं। जब वो आया था वो जीवन, इसलिए वे दोषी ठहराए गए और शैतान के कामगार कहलाए गए। देखो, ये परमेश्वर के वचन को प्रतिबिंब नहीं करता है। जब एक धर्म शिक्षा का विद्यार्थी आपसे कहता है वो पवित्र आत्मा आज के लिए नहीं है और ये बातें वो सब दैविक चंगाई की बातें किसी और दिन के लिए है, देखना यह परमेश्वर से एक प्रतिबिंब नहीं है, यह एक संप्रदाय से प्रतिबिंब है, यह एक सिद्धांत से प्रतिबिंब है जो बाइबल के बाहर है। इब्रानियों 13:8 ने कहा वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। संत यूहन्ना 14:12 ने कहा वो जो मुझ पर विश्वास करता है वो काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। अब आप वहाँ से कैसे इसे निकालने जा रहे हो, कैसे आप इसके स्थान में कैसे कुछ तो जोड़ने जा रहे हो? आप जीवन की जंजीर को तोड़ देते हैं। मनुष्य केवल रोटी के द्वारा जीवित रहता है, वो रोटी अनंत रूप से वो रोटी के द्वारा जीता है, शारीरिक रूप से वो इस रोटी के द्वारा जीता है। वहाँ 2 रोटियाँ हैं, वो पवित्र आत्मा जो आप में है, जो परमेश्वर के हरेक वचन को कहता है आमीन। यदि वो पवित्र आत्मा है तो अब मैं आपसे कुछ तो पूछना चाहता हूँ। अब यह एक चिमटी लेने वाला भाग है। मुझे माँ अक्सर अरंडी का तेल देती थी जब मैं एक बालक था, और मैं तब उस वस्तु की गंध से खड़ा भी नहीं हो सकता था, समझे। हम गरीबी में पले हुए हैं और माँ मटन की चमड़ी को उबालकर और उसे पकाती थी। हम उसे वहाँ एक गुडविन नाम की बूढ़ी बहन से लाते थे जिनकी वहाँ नीचे एक बेकरी हुआ करती थी, और बहन हैम और चीजों को बैक करती थी और उसे पकाती। हमें भोजन मिलता था और उस चर्बी और मसालों को लेकर और अपने लिए मक्के की रोटी बनाते थे, और हमारे पास गरीबों का खाना था। कोई ताजुब नहीं कि हमारे पास अपर्याप्त भोजन और इत्यादि था, महामारी। लेकिन उस समय माँ हर एक शनिवार को हमें सही तरह का भोजन नहीं मिलता, इसलिए वो हम सबको एक बड़ी मात्रा में अरंडी का तेल देती थी, और मैं बस अपने नाक को पकड़कर और चिल्लाता। मैंने कहा माँ यह मुझे बहुत ही बीमार कर देता है। माँ ने कहा यदि यह तुम्हें बीमार नहीं करता है तो इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं है, तो इसलिए हो सकता है यह इस तरह से काम करेगा। अब कैसे, मैं अब आपसे कुछ तो पूछने जा रहा हूँ, कैसे एक पुरुष या एक स्त्री जो पवित्र आत्मा के साथ भरने का दावा कर सकता है, जो वचन है, सही है। और आप कैसे इस पवित्र आत्मा का शरीर हो सकते हैं? आपको उसका भाग बनाया गया है अपने युग के सुसमाचार को प्रतिबिंब करने के लिए, और जो वचन उसने लिखे हैं उसका इनकार करते हैं। मैं परवाह नहीं करता आप कितने अच्छे हैं, क्यों मैं आपको अफ्रीका के होटेटोनस की ओर ले जा सकता हूं और आपको एक जीवन को दिखाऊंगा कि मसीह स्पर्श नहीं कर सकते हैं। यहां तक यदि वे व्यभिचार में पकड़े भी जाएं, यदि एक जवान महिला को विवाह करना है तो पहले उसे कुंवारेपन के लिए परखा जाना है। यदि वो दोषी पाई जाती है उसे बताना है कौन से पुरुष ने इसे किया है, और उन दोनों को एक साथ मार दिया जाता है। क्या हो यदि यह संयुक्त राष्ट्र में होता है? इन सारी लाशों को कौन दफनाता? देखा, तो इसलिए वहाँ पर आप हैं, देखना। और वे मूर्ति पूजक है, उनकी मन स्थिति को देखें, देखना। तो आप इन्हें इसके द्वारा नहीं परख सकते हैं। यहाँ पर हमारे भारतीय भाई जब आपको बता सकते हैं वे मोहम्मदीन शायद बहुत ही बेहतर जीवन को जीते हैं जितना हम कभी उस बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या है ये वो वचन है जो परीक्षा को देता है। जितना नम्र यीशु था वे फरीसी उससे दुगने नम्र थे। वो उनकी कलीसियाओं को उखाड़ने के लिए यहाँ वहाँ गया और उन्हें बाहर निकाल फेंका और उन्हें बाहर पीटा और इसी प्रकार की हर एक बातों को करते हुए। और ये धार्मिक पूर्व याजक आप जानते हैं क्यों कौन था? यदि मेरे पास आज सुबह उनके विरोध में एक सभा होती है, मैं कहता था आपके पास प्रार्थना करने के लिए कौन आया था जब आप बीमार थे? वो धार्मिक प्राचीन याजक। किसने पापा को पैसे उधार दिए थे जब उनकी फसलें नष्ट हो गई थी? वो धार्मिक प्राचीन याजक। ये कौन था जिसने जीवन भर परमेश्वर की सेवा करने के लिए तुम्हें समर्पित किया? धार्मिक प्राचीन याजक। ये कौन था जब तुम जेल में थे वहाँ आकर तुमसे भेंट की थी? वो धार्मिक प्राचीन याजक। और यह युवा व्यक्ति स्वयं के धर्म का त्यागी जो यीशु कहलाता है, इसने क्या किया है जो तुम्हारे पास्टर को एक सर्प कहता है? समझे, देखना, यह फलों के द्वारा नहीं है, यह वचन के द्वारा है। मनुष्य केवल फल के द्वारा जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, और वो वही वचन है। वे बस इसे देखने से चूक गए, यही है जो उसे करना चाहिए था। वे इसे नहीं देख पाए क्योंकि वे इसे देखने के लिए ठहराए नहीं गए थे। कहा, तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। उन अभागे यहूदियों की ओर देखो, उनकी आंखें अंधी हो गई थी। निश्चय उसी ने इसे किया, उसने उसे अंधा किया। स्वयं ने सोचे अंधापन होना कैसा होता है। बेहतर होगा आप परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि जो दृष्टि आपको वचन को देखने के लिए मिली है। अब ध्यान देना, अब वो यह वचन था। अब इसके बाद वो परखा गया था, यीशु की परीक्षा हुई। अब हमें इसमें से होकर जाना है। देखो, यह वचन को प्रतिबिंब नहीं करता है। जब कोई भी कहता है ठीक है ये किसी और युग के लिए था, क्योंकि बाइबल ने कहा वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। कैसे वो पवित्र आत्मा तुम में कह सकता है कि आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? अब क्या मैं आपको थोड़ा सा दुख पहुंचा सकता हूं? क्या ये ठीक है? अपने हाथों को उठाएं। आप मुझ पर नाराज नहीं होंगे। यदि आप नाराज होते हैं तो आप हो सकते हैं। कैसे तुम जो कटे हुए बालों वाली स्त्रियां हो मुझसे कह सकती हो कि तुम पवित्र आत्मा से भरी हुई हो? एक शब्द, ओह, मैंने अन्य जबान में बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उन ओझा लोगों को अन्य जबान में बोलते हुए देखा है, अनुवाद करते हुए देखा है, आत्मा में चिल्लाते, आत्मा में नाचते हुए देखा है। तुम पुरुष कैसे अपने आप को घर का प्रमुख कहला सकते हो और अपनी पत्नी को छोटे कपड़े पहनने देते हो, और वो जिस तरह से वो है करने देते हो, अपने आप को मसीह कहलाते हो? तुम पास्टर लोग खड़े होकर और इसका विरोध किए बगैर कैसे इस तरह की बातों के साथ परमेश्वर का सामना कर सकते हो? आप इसे करने से उन्हें नहीं रोक सकते हैं, लेकिन तुम इस तरह से प्रचार कर रहे होते हो, आपका एक धर्म विद्यालय में या किसी झुंड के साथ लंबे समय से ताल्लुक नहीं होगा। आपको कहीं और से सहायता मिल जाएगी। हम थोड़े ही समय में इसके अंदर जाएंगे, प्रभु ने चाहा तो, समझे। लेकिन आप वहाँ पर हैं। नहीं, मेरा आपको दुख देने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यही कारण है यदि आप नदी में तैर रहे होते हैं और मैं आपको देख रहा होता हूँ कि आप डूब रहे हो, तो मैं एक बुरा व्यक्ति होता हूँ। कहता हूँ ठीक है, एक अच्छे व्यक्ति बनो प्रिय। अच्छा होगा तुम उन्हें चेतावनी दो, यह सही है, उन्हें बताओ। जैसे मैंने एक रात कहा था, यदि मैं एक मसीह हूँ मुझे बाइबल के हर एक व्यक्तित्व के साथ पहचान देना होगा। मुझे उन दिनों में नूह के साथ खड़े रहना था और उसके साथ प्रचार करना था और लोगों को चेतावनी देना था, यह सही है। मुझे कार्मेल पर्वत पर अकेले अहिल्या के साथ खड़ा रहना था, मुझे कलवरी पर खड़ा रहना था और मुझे खुद को और मेरे विचारों को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाना था। लेकिन तब मैं फिर से ईस्टर पर उसके साथ जी उठा, सारी चीजों पर विजयी हुआ, दुनिया के सारे शरीर के कार्य उसमें उसके ऊपर उड़ गए थे। ध्यान दें, ये तब वचन को प्रतिबिंब नहीं करता है, नहीं यह इसे प्रमाणित नहीं करता है। अब लेकिन आप वचन का विश्वास करते हैं, परमेश्वर इसे खुद में प्रमाणित करेगा जैसे उसने यहाँ यीशु में किया। उस वचन रोटी को हमेशा ही इसी ढंग से खिलाया जाना है और मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा जैसे कि ये रोटी है, लेकिन हर एक वचन से। इसलिए यही वचन की रोटी है, इसे मन में रखें। यही वो ये रोटी है जिसे कलीसिया ने हर एक युग में होते हुए खाई है, जो केवल जय पाने वालों के लिए ही छिपा हुआ मना रहा है। प्रकाशित वाक्य ऐसा कहता है। अब मेरे पास समय नहीं है कि इस सारी बातों को खुलकर बताऊं, क्योंकि मेरे पास शायद 30 मिनट और हैं। लेकिन देखना, जब वो पवित्र मन्ना स्वर्ग से गिरा, जो एक पवित्र आत्मा का नमूना है, आप इस पर सहमत हो जाओगे। परमेश्वर ने मूसा को बताया, वहाँ जाकर इस ओमेर को भर दो और इसे परम पवित्र स्थान में रख दो, कारण यदि उन्होंने इसे परम पवित्र स्थान में नहीं रखा तो यह सड़ जाएगा। क्या यह सही है? इसमें कीड़े आ जाएंगे। अब उसने कहा, लेकिन इसे परम पवित्र स्थान में रख दो, इस ओमेर में, जिससे याजक पद के बाद हर एक आने वाली पीढ़ी, जब एक व्यक्ति एक याजक बनने जा रहा हो ताकि वचन का सेवक बने, उसके नियुक्त होने के बाद पहली बात जो उसे करना होता है कि वहाँ अंदर जाकर उस एक मुट्ठी भर वास्तविक मन्ना को लेकर और इसे खाना है। यह जो उसके हाथ में था उजाले को दर्शाता था, नई कलीसिया के युग में उसके उजाले को दर्शा रहा था, उस मन्ना को। और केवल वो मनुष्य जो सिद्ध रूप से जय पाता है, वो मनुष्य जो सचमुच वहाँ स्थिर रहता है और वचन को छोड़ हर एक चीज को एक तरफ फेंक देता है, और वचन ही वो मन्ना है। ओह प्रभु, यह यीशु है। मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा, यही वो जीवंत लोगों के लिए छिपा हुआ मन्ना है। ओह, यही वहाँ पर पड़ा हुआ था। हर एक याजक पद को इसे अनुकरण करना है। बहुत पहले धर्म शिक्षा के विद्यालय ने एक मसूर की दाल के लिए इस आशीषित वस्तु को अदला बदली कर दिया। यह बिल्कुल सही है। हाँ श्रीमान, जैसे ऐसा ने किया, अब ऐसा नैतिक रूप से याकूब से बेहतर मनुष्य था, लेकिन उसने उसके जन्म अधिकार का आदर नहीं किया जो वचन था। कितने लोग यह जानते हैं, वो जन्म अधिकार वचन है, वो प्रतिज्ञा है, ज्येष्ठ पुत्र, लेकिन वो एक अच्छा मनुष्य था, नैतिक मनुष्य, जैसे कि आज के नाम के लिए मसीह होते हैं, एक अच्छे मनुष्य होते हैं। उसने झूठ नहीं बोला, उसने चोरी नहीं की, वो अपने पिता के लिए अच्छा था, उसने इन सबको किया था। लेकिन आप देखना, उसका जन्म अधिकार, उसने कहा, उसने उसके बारे में परवाह नहीं की, इससे क्या फर्क पड़ता है, जो कुछ भी हो, मैं एक इजरायली हूँ, देखो जो कुछ भी हो, मैं इससे ताल्लुक रखता हूँ। लेकिन यह उसके लिए गिने गए जन्म अधिकार थे। देखना, उसका स्वाभाविक रूप से ठीक था, लेकिन उसका आत्मिक रूप से गलत था। ऐसा ही आज है, वो मसूर की दाल, मिलीजुली कलीसिया और संसार एक साथ, उन सब में से हर एक जन, बिंगो पार्टियां, नाचना, कलीसिया में सब तरह की बातों को करते हुए, छोटे कटे स्त्रियों के बाल, छोटे कपड़े पहनना, तो आप कहेंगे, भाई ब्रैनम, यह तो छोटी सी बात है, यही वचनों में से एक है, क्योंकि बाइबल ने कहा यह एक स्त्री के लिए गलत है कि अपने बालों को काटे। यह सही है, यदि वो करती है, भला हो, अंदर कैसे जा सकती है, समझे? केवल किसी भी प्रचारक से पूछें, वो आपको बताएगा वचन ऐसा कहता है। देखें, वो अपने सिर का अपमान करती है, वो अपने पति का अपमान करती है, उसे तलाक देना होगा। यह बिल्कुल सही है उसके लिए, जो अपने बालों को काटेगी तो वो अपने बालों को मुंडवा भी ले। देखें, यह इसके जरिए से दिखाता है, ना ही केवल अपने बालों को छोटा करें, परमेश्वर इसे इस तरह से नहीं चाहता है। यही है जो श्रीमान और श्रीमती के बीच में है। ऐसा करके मूर्ख मत बनाओ, या तो पूरा कटवा लो या इसे बढ़ने दो। यही है जो परमेश्वर ने कहा है। कोई भी सुसमाचार का सेवक जानता है यही सच्चाई है, चाहे तो आप कहें या न कहें, लेकिन यही सच्चाई है। देखा, तो क्या अच्छा है यदि आप उनमें का बाकी सब करने जा रहे हैं और इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं? क्या वहाँ पर दुनियादारी की कुछ तो छोटे से अंदाज आपके अंदर है, जो थोड़ा कुछ दूसरी कलीसिया के जैसे आचरण करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल यही है जहाँ पर इसराइल मुसीबत में आ गया, यही है जहाँ पर वे मर गए, यही है जहाँ आदम मुसीबत में आ गया, यही है जहाँ वे बाकी के लोग मुसीबत में आ गए। केवल एक वचन इन सबको ले लेता है, केवल एक बिंदु मसूर की दाल संसार के साथ मिलजुल गई है। संसार का कुछ, हॉलीवुड का कुछ, कलीसिया का कुछ, धर्मशास्त्रियों का कुछ, और क्या तुम्हें मिला है? ध्यान देना, यदि शैतान यहाँ पर चूक जाता है, तब वो उसकी दूसरी योजना की कोशिश करेगा, जिससे तुम उस वचन पर अविश्वास करने लगो। वो करेगा और धर्म विद्यालय को जाए, फिर वो एक अगली योजना की कोशिश करेगा। अब यही है जहाँ पर आपको सचमुच सावधान रहना होगा, और इस भाग पर केवल कुछ और 5 मिनटों के लिए बैठे रहें यदि आप चाहें तो। तब वो आपको एक अलौकिक प्रस्ताव को देता है, मैं बंद करने से पहले इन सब पर वापस आ रहा हूँ। वो करता है, यदि वो आपको वचन से पूरी तरह से नहीं परख सकता है तो नहीं, मैं वचन के साथ बने रहूंगा। तब वो आपको एक अलौकिक प्रस्ताव को देता है। उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या, तुम यहाँ पर आना और मंदिर के ऊपर से कूदना और वापस ऊपर आना, देखना, लोगों को दिखाना कि तुम कुछ तो अलौकिक कर सकते हो। लड़के वहाँ उसके पास वे हैं, अब इसे देखना, ये हैं वे, ध्यान देना। जब आप अंत में पहुँचते हैं जहाँ पर ये परीक्षा आती है, हो सकता है वो शायद आप में से कुछ लोगों को अन्य भाषा बोलने दे जिससे आप सोचें आपको ये मिल गया है, समझे, या शायद आपको भविष्यवाणी भी करने दे, हालांकि ये वचन के साथ नहीं मिलता है। मैंने लोगों को खड़े होकर और भविष्यवाणी करते देखा है जो वचन के विपरीत था, जैसे पूर्व से पश्चिम है, समझे, ये तो वो वचन है जिसके द्वारा आप जीते हैं। वे अलौकिक वरदान जो शैतान के हाथों में है वो उन्हें देगा, निश्चय ही इसका कोई मतलब नहीं है। क्या यीशु ने नहीं कहा, उस दिन मेरे पास बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की है, आपके नाम से मैंने शैतानों को निकाला है, मैंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, मैं संप्रदाय में एक बड़ा व्यक्ति रहा हूँ, मैं इन सारी चीजों को किया है, इन चीजों को, वो कहेगा, मुझसे दूर हो जाओ तुम अधर्म के काम करने वालों। अधर्म क्या है? यह कुछ तो है जिसे आप जानते हैं यही सही है और आप इसे अपने हृदय में मान लेते हैं, आप इसे नहीं करते हैं। जब आप जानते हैं कि यह बाइबल एक नियत बात को सिखाती है और आप इसे नहीं करते हैं, यही अधर्म है। और दाऊद ने कहा, यदि मैं मेरे हृदय में अधर्म को छिपाता हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा भी नहीं। क्या यह सही है? अब निश्चय ही आप इससे नाराज नहीं हो सकते हैं। देखना, यीशु ने यह कहा, बहुत से मेरे पास उस दिन आएंगे और कहेंगे, मैंने इन सब चीजों को किया है, इसे किया है, और वो कहेगा, दूर हो जाओ तुम अधर्म के काम करने वालों। वैसे ही आदम ने किया, आदम ने कहा, प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन एक शब्द, देखना, एक शब्द ने इसे किया, यही इस सब को ले लेता है, केवल एक शब्द का उल्लंघन करना। हाँ, हो सकता है भविष्यवाणी वचन के विपरीत हो, लेकिन अभी यह समय उसे यह अलौकिक दान मिलता है, वो आवाज करने के द्वारा, उसके प्रभाव के द्वारा आप से बाहर हो जाता है। परमेश्वर की महिमा हो, मैंने फलाना फलाना के लिए प्रार्थना की है, वे उठकर चलने लगे, हालेलुया, मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूँ और कोई तो इसका अनुवाद करता है, यह असली है, सच्चा है। पौलुस ने कहा, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोल सकता हूँ और फिर भी मैं कुछ भी नहीं, मुझे पहाड़ों को हटाने का विश्वास हो और तब भी मैं कुछ नहीं हूँ, क्या यह सही है? लेकिन देखो, वो आपके लिए ये प्रस्ताव पर रखेगा, ओ पेंटिकॉस्टल के लोगों, मैं आपसे प्रेम करता हूँ या मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, यही है जहाँ पर आप चूक जाते हैं। देखना, वचन की ओर देखो, दान की ओर मत देखो, देने वाले की ओर देखो, देखें कहाँ से, देखें ये कहाँ से आता है, देखना, वो आप से बाहर होकर आत्मा में नाचता है। लड़के, केवल चीज है, उसके आसपास बहुत से लोग होते हैं और हर एक जन उसे ही बुलाता है, यहाँ से और वहाँ से, और वचन को भूल जाता है। ओह, तुम बहुत ही प्रचलित हो जाते हो जब तुम वचन से बाहर बने रहते हो, लेकिन एक बार तुम उस वचन में जाते हो, देखना, उस समय तुम्हें कौन सहयोग करेगा, समझे, देखना तब क्या बाहर आने लगता है। हम कुछ ही समय में इस पर अलग स्तर से भाव में जाएंगे, देखना उस समय कौन आपको चाहता है, कोई नहीं चाहता, ओह इससे दूर रहो। जैसे कि कोई तो मंडली के कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए थे और मुझे अपने साथ संगठित कर दिया। कोई भी पूर्ण समाचार का सेवक जब शहर में आता है, वो मुझे शहर से बुलाते हैं ताकि वहाँ उनके लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करूँ, जिससे मंडली से पूरी तरह से बाहर निकाला जाना होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो ठीक है, कहते हैं इसकी मत सुनना, और यहाँ पर प्रमाणित वचन है, इसी बात को उन्होंने हमारे प्रभु के साथ की थी, इसी बात को उन्होंने हर एक युग में किया है, हर एक मनुष्य के साथ किया है, यही है जो उन्होंने लूथर, वेस्ली और सबके साथ किया है, यही है जो उन्होंने आरंभ में आपके साथ किया है। अब आप ठीक उसी कीचड़ में वापस मुड़ जाते हो जहाँ से आप आए थे, उस तरीके को ध्यान दे, ये हमेशा ही उसी तरीके से होता रहा है, यह कभी नहीं चूकता है, शैतान उसी बात को करता है। अब उस चमक दमक की आवाज और इत्यादि के द्वारा वो उसे आप इसे बाहर ले जाता है, यहाँ तक कि ओह वो वचन की ओर ध्यान भी नहीं देता है। ओह भाई, भाई फलाना फलाना ने कहा ऐसा ऐसा कहा और मुझे यहाँ पर आना होगा, मैं, देखना, वो बस इतना आप इसे बाहर हो जाता है, वो यहाँ तक इसे ध्यान भी नहीं देता है, यह वचन हो या वचन ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें के बाकी लोगों ने कहा कोई बात नहीं थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। संस्थाएं कहती हैं, देखो तुम्हें मिल गया है, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया तुम्हें क्या मिल गया है? देखा, ध्यान देना, शैतान हमेशा था, यहाँ तक तब भी यहाँ पर एक स्थान में देखना, उसने वचन की परत को चढ़ाया, यहाँ तक कि इस अलौकिक पर भी, जिसे उसने कोशिश की कि यीशु से करवाए, वो अलौकिक, देखना, अलौकिक होते हुए क्या होता यदि यीशु ने उसकी सुना होता, देखा, उसने कहा, अब रुकना, तुम वचन के साथ बने रहना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो, तुम वचन के साथ बने रहना चाहते हो? कहा, ऐसा लिखा है, उसने इस विषय पर उसके दूतों को आज्ञा दी है, किसी भी समय तुम्हारे पांव एक पत्थर से ठोकर लगे तो वह तुम्हें संभाल लेगा। लेकिन उसने अपने पांव को कोई पत्थर से ठोकर लगने नहीं दिया था, समझे? देखना क्या होता यदि वो उसके साथ बना रहता है। वो क्या आपने ध्यान दिया? मैंने कभी नहीं कहा उसने वचन का हवाला दिया है। उसने इस पर परत को चढ़ाया, उसकी परत को डाला, जैसे एक केक के ऊपर सफेद परत को लगाते हैं, इसे पूरी तरह से ढाक देना, इस पर सफेद लिपा पोती करना। देखना, ये अपने सही स्थान में नहीं था। यही है जिसकी आज वे कोशिश करते हैं, इसे सफेद लिपा पोती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे बाकी के वचनों के साथ इसे जारी नहीं रख सकते हैं। इसके प्रत्येक को लेना होगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना वचन को परत लगाने की कोशिश करते हैं, यह नहीं, इसे वैसे ही हवाला देना होगा जैसे उसने कहा है। फिर यदि इसे सही हवाला गया है, वो इसे वैसे ही आपके जीवन में प्रमाणित करेगा। ऐसे ही सारे मनुष्य जान जाएंगे तुम परमेश्वर की पढ़ी जाने वाली लिखित पत्री हो। यह लिखित पत्री बाइबल है। क्या यह सही है? एक पत्री बाइबल है और आप एक लिखित पत्री हैं, उसके वचन को प्रतिबिंब करते हुए वो फिर से सिद्ध मनुष्य परमेश्वर में। लेकिन यीशु ने कहा, ऐसा भी लिखा है, समझे? लेकिन ध्यान दें, हवा इसी स्थिति में अपने अलौकिक समझ के द्वारा आप इससे बाहर हो गई थी। उसके पास धर्म शास्त्र का एक अनुभव था। उसकी शिक्षा उस समय के देश के किसी भी धर्म शास्त्र से सर्वोत्तम थी। देखना, वो इतनी आप इससे बाहर हो गई थी, वो इसे नहीं जान पाई। वो जान गई, उसके पास कुछ तो है जो आदम के पास कभी नहीं था। मुमकिन है वो ठीक अभी उसके ऊपर अधिकार कर सकती है, क्योंकि वो उसके आदम से इसके बारे में ज्यादा जान गई है। देखें उनके अदन आज क्या कर रहे हैं। वो दुष्टता से अच्छा जान गई जो उत्तम सच्चाई की शिक्षा है। यह सही है, और उसके पास उत्तम सच्चाई की शिक्षा थी जिसे उसने पहले नहीं जाना था, और यह परमेश्वर की सच्चाई थी। लेकिन वो वचन को तोड़ने के द्वारा मर गई थी। हाँ, उसके पास उसकी शिक्षा थी तो ठीक है। इसलिए धर्म विद्यालय तुम्हें धर्म ज्ञान का अनुभव देते हैं, जिससे तुम पुराने और नए नियम के हर एक किरदार का हवाला दे सकते हो। लेकिन सावधान रहना, जो भी तुम कर रहे हो, यदि यह ठीक वहाँ वचन को नहीं तोड़ता है तो, यदि आप ऐसे ही कहते हैं, अरे यह उनके लिए है, नहीं, यह आपके लिए है, जो कोई चाहे, समझे? देखा, सावधान रहें। ओह, यह बहुत पहले कलीसिया के लिए था। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसके पास एक उत्तम शिक्षा थी, लेकिन वो पाप और अपराधों में मरी भी हुई थी। अब शैतान की तीसरी योजना, हम इसे जल्दी से लेंगे, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। शायद हो सकता है और 15 मिनट, 20 मिनट, यदि आप उससे बढ़कर नहीं चाहते हैं तो। ध्यान दें, बाद में उसकी तीसरी योजना, उसकी तीसरी परीक्षा में यदि वे दूसरे असफल हो गए थे, लेकिन यह नहीं होता है। देखना, वो तुम्हें अब कलीसिया में दर्जा देने का प्रस्ताव देगा, जैसे उसने यीशु को किया। मैं तुम्हें संसार दूंगा, तुम राजा बन जाओगे, मैं तुम्हें बनाऊंगा, वे सब मेरे हैं, तब मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। कौन एक मनुष्य को एक सेवक बना सकता है? कौन एक मनुष्य को उस पर हाथ रखने के द्वारा एक दान को दे सकता है? परमेश्वर ने कलीसिया में स्थिर किया है, समझे? देखना कैसे वे वचन को घुमाते हैं, जैसे कि अब हवा उसके नए ज्ञान को जानने के साथ उसके पास उसके अधिकार में आदम है। वो जो भी चाहे वो कर सकती है। देखे, जैसे उसके पास इसे ग्रहण करने के लिए आदम होता है, और लेकिन जब वो यीशु के पास आया, उसने इसे ग्रहण नहीं किया। उसने कहा, शैतान तू मेरे पीछे हट जा। दूसरे शब्दों में, मैं इसका गलत हवाला नहीं दूंगा, लेकिन इसके साथ यह जुड़ता है। ऐसा लिखा है, हर एक मनुष्य परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा, न ही तुम्हारे प्रस्ताव के द्वारा। मैं तुम्हें मुख्य अध्यक्ष बनाऊंगा, एक पूर्व ज्ञानी या एक डीकन, या तुम्हें पियानो को बजाने दूंगा। बहन, देखें इन सारे प्रस्तावों को देखें। तुम एक प्रचलित व्यक्ति हो, और हमारी कलीसिया में तुम्हारी योग्यता की जरूरत है। देखो, वचन के पास आओ, वो उस पर अधिकार कर सकती है या उसे सिखा सकती है। वैसे ही आज की फसल है, इसी तरह से वे आज की फसल है, इसी तरह से आज वे इसे करते हैं, एक डीडी बनने के लिए, एक राज्य का पुरोहित बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, जिले का संचालक, और इसी तरह से कुछ और बनने के लिए। यह यीशु से कितना विभिन्न है, वो वचन के साथ बना रहा। अब आगे कुछ मिनटों में मैं इन सब बातों को सच साबित करना चाहता हूँ, प्रकृति और वचन दोनों के द्वारा इसे एक साथ लेते हुए। यह साबित करता है कि वो रोटी के लिए देहधारी हुआ वचन था, वो वचन था जो देहधारी हुआ था, क्योंकि उसने प्रतिबिंब किया था। किसे? केवल वचन को। यदि आप एक लिखित पत्री हैं, आप केवल वचन को ही प्रतिबिंब करेंगे, ना ही धर्म विद्यालय क्या कहते हैं, कोई और क्या कहता है, कुमारी जॉन्स इसके बारे में क्या कहती है, डॉक्टर फलाना फलाना इसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन परमेश्वर ने इसके बारे में क्या कहा है। हर एक मनुष्य की बात झूठी ठहरे, लेकिन मेरा वचन सच्चा ठहरे। जो कोई भी इन आज्ञा को थोड़ा भी तोड़ता है और ऐसा मनुष्य को सिखाता है, जो कोई भी एक शब्द इस किताब से निकालता है या इसके साथ जोड़ता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। उस वचन के द्वारा अनंतकालिक जीना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको जिंदा रहने के लिए मरी हुई वस्तु की आवश्यकता होती है, उसी तरह यहाँ आपको यहाँ मसीह की आवश्यकता होती है। या तो आप मर जाएंगे, और मसीह क्या है? आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में रहा। और आप वही लिखित पत्री हैं, एक युग के लिए एक, दूसरे के लिए एक, उस घड़ी के उजाले के लिए, लेकिन वे इसे देखने के लिए चुक गए। आप केवल इसे प्रतिबिंब करते हैं, दूसरे स्थिर थे, ऐसा होने पर केवल एक स्थान में वे चुक गए, लेकिन वो नहीं चुका। और जैसा मैंने कहा, प्रकाशित वाक्य 22:18 में उसने कहा, जो कोई भी इसमें जोड़ेगा। अभी बहुत ही नजदीक से देखना, मत्ती 24:24 प्रभावित हो रहा है, कैसे वे लगभग इस अंतिम दिनों में, यीशु ने कहा, चुने हुए भी इसके द्वारा भरमाए जाएंगे। आत्माओं की ओर देखना, अंतिम दिनों में अब उस वचन को पूरा होना है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? अब ऐसा था, अंतिम दिनों में चुने हुए, पहले से ठहराए हुए, इसके लिए चुने हुए भरमाए जाएंगे। यह इतना सही रूप से है, यह इतना वचन के अनुसार है, और इतना साफ और स्पष्ट है कि आप इसमें खोट भी नहीं देख सकते हैं। कुछ भी हो, केवल चुने हुए इससे निकल जाएंगे। अब यही है जो यीशु ने कहा, क्या आप इसे विश्वास करते हैं? चुने हुए भी भरमाए जाएंगे यदि यह संभव होता है। क्यों? यह सिद्ध रूप से वचन है, आप अपने सभाई आंखों से देख सकते हैं। लेकिन आप देखना, यह इतना ही नहीं है। यीशु उन फरीसियों के पास वो वचन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे यह सिद्ध रूप से हो सकता है, लेकिन उनके खुद के अनुवाद के द्वारा उन्होंने कैसे जाना कि वो गलत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक वचन को प्रमाणित किया जिसके आने की उस युग में उसके लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वो कारण था उन्होंने जान लिया वो मसीहा है। समझे? अब ध्यान दें, यदि यह संभव होता था तो इन अंतिम दिनों में केवल एक शब्द की आवश्यकता है। बिल्कुल यही है जो शैतान ने आदम को लेने के लिए किया था, केवल एक शब्द पर उसे ले लिया। बिल्कुल यही है उसे यह होने के लिए आज करना है, केवल एक बात को यहाँ वहाँ घुमाना है। बिल्कुल यही है, यही सब बात की उसे आवश्यकता है। अब आप जानते हैं कि यह सच्चाई है। एक बात को जोड़ना या एक बात को निकालना या कुल मिलाकर असफलता है। हर एक बिंदु परमेश्वर का हर एक वचन। अब धर्म विद्यालयों के अनुवादों को सोचें, हर एक दूसरे से भिन्न है। वहाँ कहीं पर तो एक सच्चाई को होना है, और वो है बाइबल। अब यीशु ने कहा, आप कहते हैं ठीक है भाई ब्रैनम, उनके पास बहुत ही सुंदर आराधना है। यीशु ने कहा, वे व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं, सिद्धांतों के लिए, मनुष्य के ज्ञान को सिखाते हैं, वचन को नहीं सिखाते, मनुष्य के खुद की अनुवाद की गई वचन की विचारधारा है। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर को कोई अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, वह खुद ही हर एक वचन का अनुवाद करता है। देखो, आपको किसी की भी आपके लिए अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके लिए इसका अनुवाद करता है जब आप इसे ग्रहण करना चाहते हैं। देखना, यही जीवन है, यही अपने आप में जीवन है। यीशु ने कहा, वे व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं, वे असल में परमेश्वर की आराधना करते हैं। केन ने आरंभ में असल में परमेश्वर की आराधना की थी, लेकिन व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं। व्यर्थ क्या है? इससे कुछ अच्छा नहीं होना है। हो सकता है वे कहें, तो ठीक है, मैं ये करता हूँ, मैं आत्मा में नाचता हूँ, मैं अन्य जवानों में बोलता हूँ, मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, लेकिन अपने बालों को बढ़ाने से चूक जाते हैं, एक बात पर चूक जाते हैं, और देखते हैं क्या होता है। वो आत्मा आपको ठीक वहीं पर छोड़ देता है। यही है जो आपकी कलीसिया में हुआ है, वे चूक गए हैं, व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं। ओह, ये एक सुंदर आराधना है, लेकिन व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं, मनुष्य के नियम सिद्धांत के लिए शिक्षा छोड़ देते हैं। वे फरीसी धर्मशास्त्र की शिक्षा जो पाए हुए हैं, तुम यह कहने की हिम्मत मत करना कि आज हमारे पास उनके साथ तुलना करने के लिए कुछ तो है, निश्चय रूप से आपके पास नहीं है। वे एक एक शब्द को जानते थे, हर एक वचन को, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखा हुआ था, लेकिन व्यर्थ में वे मेरी आराधना करते हैं। इस पर सोचें, व्यर्थ में बहुत ही अच्छे बड़े स्कूल हैं, और धर्म विद्यालय हैं, और शिक्षक हैं, और युवा पुरुष हैं, और इसी तरह से सब कुछ है, लेकिन खो चुके हैं। اسی طرح جیسے اس نے جنگل میں کہا، انہوں نے جنگل میں اس آدمی چٹان سے منا کھایا، ان سب نے اس چٹان سے پیا، میرا مطلب، اور ان سب نے اس میں سے منا کھایا، اور یشو نے کہا اور وہ ہر ایک مر گئے۔ مرتیو مطلب انت کالک الگاؤ، کیوں؟ کیونکہ وہ پرمیشر کی پرتیجا پر وشواس کرنے سے چوک گئے تھے۔ اوہ، مجھے آپ کو اس طرح سے رکھنا پسند نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا بولنا ہی ہوگا، دیکھنا میں اس پر ایک منٹ بھی نہیں لوں گا۔ ان میں سے ہر ایک لوگ نکل کر آگ کے کھمبے کے نیچے آئے تھے، وہ نکل کر جنگل میں آئے تھے، پرمیشر پر وشواس کر رہے تھے، کچھ کیا، لیکن جب انہیں رکاوٹ دکھائی دی، جب ان 10 لوگوں نے آ کر کہا ہم اس دیش کو نہیں لے سکتے ہیں، اوہ وہ وہاں پر بڑے دانو ہیں، وہ ایسے ہیں، ویسے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہیں، وہ بس ہم اسے نہیں کر سکتے ہیں، یہ اسمبھو ہے۔ لیکن کالب اور یہوشو نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو شانت کیا، ہم اسے لینے کے لیے جیون سے بھی بڑھ کر ہیں، کیوں؟ وہ لوگ دیکھ رہے تھے جو وہ دیکھ سکتے تھے، دیکھو اس کی اور دیکھ رہے تھے جو وہ دیکھ سکتے تھے، لیکن کالب اور یہوشو پرمیشر کی پرتیجا کی اور دیکھ رہے تھے۔ پرمیشر نے کہا میں نے تمہیں اس دیش کو دے دیا ہے، جا کر اسے لے لو۔ اب عبرانیوں کا 6 ادھیائے، یعنی میں اس کا حوالہ دے سکتا ہوں تو، کیونکہ جنہوں نے ایک بار جوتی پائی ہے جو سرگی وردان کا سواد چکھ چکے ہیں اور پوتر آتما کے بھاگی ہو گئے ہیں اور پرمیشر کے اتم وچن کا اور آنے والے یوگ کی سامرتھوں کا سواد چکھ چکے ہیں، یعنی وہ بھٹک جائیں تو انہیں من پھراؤ کے لیے پھر نیا بنانا انہونا ہے۔ ان لوگوں نے وہاں آ کر اور اس اور کھڑے ہو کر دوسرے دیش سے انگوروں کو کھایا، اور جب راستے پر اس وچن کے انکرن کی بات آئی تو انہوں نے کہا ہم اسے نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ جنگل میں ہی مر گئے۔ یہی ہے جہاں پر ہم آئے ہیں، ہم نے ایک اچھے وچن کے سواد کو چکھا ہے، لیکن پوری پرتیجا نہیں، نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، دیکھیں ڈاکٹر فلانا فلانا یا کوئی تو اور کہتا ہے ہم اسے نہیں کر سکتے ہیں، یہ پریڑتوں کے لیے ہے، وہ کوئی اور دن کے لیے تھا، آپ مر جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ سب وچن ایک ساتھ جڑتے ہیں، اس میں کا ہر ایک وچن ایک ساتھ جڑتا ہے، اور یہ کسی منشیہ کے گیان سدھانت یا کسی کے دوارا نہیں بنا ہے، یہ کیول پوتر آتما کے دوارا پرکٹ ہوا ہے۔ یشو نے کہا پتا میں تجھے دھنیواد دیتا ہوں، تو نے ان باتوں کو بدھیمان اور گیانی سے چھپا کر رکھا اور ایسے بالکوں پر پرکٹ کیا ہے جس سے وہ سیکھ جائیں۔ اب جلدی سے اس اگلے وچار پر یہاں جائیں گے، یدی ہم جا سکتے ہیں تو وہ ویرت میں میری آرادھنا کرتے ہیں۔ وہ فریسی پڑھے لکھے اوہ نیتک روپ سے اچھے تھے، لیکن یشو کے دوارا شیطان بلائے گئے۔ وہ پڑھے لکھے دھرم شاستریوں کو، یشو نے کہا تم شیطان ہو اور اپنے پتا کے کاموں کو تم کرو گے، کہا تم نبیوں کی قبروں کو سجاتے ہو، لیکن تمہارے پتا پہلے اسی سمے پر وہ نبی ان دھارمک سدھانتوں کے لیے آنسو بہاتے ہوئے آگے آئے تھے، یہی ہے جو انہوں نے کیا تھا۔ نبیوں وچن کس کے لیے آتا ہے، ایک دھرم شاستری کے لیے یا ایک نبی کے لیے؟ نہ ہی دھرم شاستری اور ودیالے کے لیے، یہ ہمیشہ ہی ایک نبی کے لیے آتا ہے۔ پرمیشر اپنی ویوستا کو کبھی نہیں بدلتا ہے، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے، ہمیشہ ہی، نہ ہی ایک جھنڈ کے لیے، ویکتیگت کے لیے، کبھی بھی ایک جھنڈ کو نہیں، ویکتیگت کو، ہاں شریمان ایک نبی کو۔ اور انہوں نے کہا، یشو نے کہا تم نبیوں کی قبروں کو سجاتے ہو اور تمہارے پتاؤں نے انہیں اس میں ڈالا ہے، اور وہ بالکل اسی بات کو شیطان کی دھرم شکشا کے اندھے پن کے نیچے کر رہے ہیں، دیکھا۔ اور اب پینٹیکوس اپنے ناک کو اس وشو کلیسیا سنگھن سے باہر رکھو، اب آپ یہاں جو سیوک گڑھ ہیں، آپ ان لوگوں کو مکھیالوں میں لکھو گے، اب آپ کو اسمبلی میں اور ان میں سے بہتوں کو نہیں لکھنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان نیت باتوں کو باہر کر دیا ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ بھی بیپٹسٹ بھائیوں اپنے سر کو وہاں سے باہر رکھیں، کیا واسطو میں پشو کی شاپ کو اوپر آتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہو کون ان سب باتوں کو نگلنے جا رہا ہے، یدی آپ وچن کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو، یدی وہ وچن آپ میں سوئم پرتیبمب ہوتے ہیں، ان باتوں سے دور رہو، آپ کی سنستھائیں اس کے اندر بڑھتی جائیں گی، اور آپ کے پاس یہ ہونے کے لیے اسے کرنا ہے، یا تو آپ کے سنستھا سے باہر نکلنا ہوگا، آپ ایک سنستھا نہیں ہو سکتے ہیں اور آپ وہاں پر بنے نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس میں آنا ہوگا یا تو باہر رہنا ہوگا، تب آپ اب اور سنستھاگت نہیں بنے رہ سکتے ہیں، تب آپ نے خود کو پرکٹ کیا ہے، بالکل، پرمیشر آپ کو آشیش دے یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو۔ یہ کہنا مشکل ہے کتنے لوگ اسے کریں گے، لیکن کچھ لوگ کریں گے، کوئی سندے نہیں ہے۔ ہاں شریمان، بھرمائے ہوئے اور یشو نے انہیں شیطان بلایا۔ اب لیکن جب یشو وہاں پر کھڑا تھا، کیا ہر ایک پریشا کو اس نے اسے وچن کے ساتھ پھٹکار دی اور وہاں وچن کے دوارا کھڑا رہا، پرمیشر نے اسے پرمانت کیا، جیسے وہاں پر ایک رات کو میں نے مائیکل اینجلو پر پرچار کیا تھا، کتنے لوگ کبھی فارسٹ لان گئے ہیں اور وہاں مائیکل اینجلو کے دوارا بنے موسا کی پرتیما کو دیکھا ہے، وہ اسادھارن تھی، میں نے جب وہاں پر جا کر اسے پہلی بار دیکھا، مائیکل اینجلو نے اسے بنانے میں لگ بھگ اس کے जीवन काल को बिता दिया, उसके मन में यह था मूसा किस तरह से दिखता होगा, वो इसे स्थापित करना चाहता था उसके मरने से पहले, और उसे तराशने में वर्षों और वर्षों बिता दिए, यहाँ से काटने में, यहाँ से तोड़ने में और यहाँ से चमकाना, जब तक अतः एक दिन उसने उसे पूरा कर ही दिया। काफी वर्षों के बाद वो वहाँ पर उसके हाथ में इस तरह से एक टुकड़ा लेकर खड़ा हुआ था, वो पीछे खड़ा हुआ था और इस पर देखा वो दर्शन जो उसके मन में था, क्योंकि जब उसने पहली बार मूसा के लिए सुना था उसे उस तरह से दिखना चाहिए था, वहाँ पर ये था उसके सामने दिखता हुआ। वो अपने खुद के काम से इतना प्रेरित हुआ, उसने एक हथौड़े को लिया और इसे पैर पर दे मारा और चिल्ला उठा, मूसा बोल। उसने सोचा यह मूसा था, उसे बोलना चाहिए, वो इतना उस चीज के समान था जो उसके मन में था, और वो चोट अभी भी उसके पैर पर है। यह उस पैर के टूटे हुए टुकड़े को छोड़ एक पूरी सही मूर्ति है, उसके पांव से टुकड़ा निकल गया है, उसके दाहिने पांव से। इसे फॉरेस्ट लॉन में देखें, जब आप वहां दरवाजे में जाते हैं, इसका एक प्रतिरूप है, माइकलएंजेलो का मूसा, उसकी सर्वोत्तम रचना जो उसने उसके जीवन को मोहर बंद कर दिया। परमेश्वर एक महान मूर्तिकार है, ठीक उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि उसे प्रतिबिंब करे, और वो वचन है, और उसने क्या किया, उसने आदम को परखा, वो चुक गया और वे बाकी के सब चुक गए, लेकिन यहाँ पर एक सिद्ध है। हालेलुया, ये क्या था, मानवीय देह में खुद परमेश्वर से कम नहीं, वो वचन उसमें प्रतिबिंब हुआ था जो परमेश्वर की देह की संपूर्णता को लेकर आया। न ही एक नबी, फिर भी वो एक नबी था, न ही एक मनुष्य, फिर भी वो एक मनुष्य था। वे यहूदी, वे उसे अपना दावा करने की कोशिश मत करना, वो ना ही यहूदी था ना ही अन्य जाति था, वो परमेश्वर था। समझे, आप क्या है जो आपका लहू है, देखो और निश्चय ही आप एक शरीर है, और मरियम, निश्चय ही मरियम का गर्भधारण पवित्र आत्मा के साथ उसे कोई अनुभूति देने से नहीं हुआ था, परमेश्वर उस पिता ने एक जीवाणु की सृष्टि की, या मरियम में एक अंडाणु की और एक लहू की कोशिका की भी सृष्टि की थी, और यह परमेश्वर का लहू था। वो लहू पुरुष के वर्ग से आता है, तो इसलिए यह ना ही लहू के कणों का लाल परमाणु और लहू को पिता से आना है, क्योंकि वो बालक उसके माँ की बीमारी को ले भी नहीं सकता है, जैसे कि टीबी यह माँ के सांस से इसे पा सकता है लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सकता है, मेरा मतलब लेकिन सांस ले सकता है, वो पकड़ सकता है, लेकिन वो इसे माँ से नहीं ले सकती है, क्योंकि वो लड़का या लड़की उस बात से छूटे हुए हैं, क्योंकि वो उसकी माँ का लहू नहीं है। अब लेकिन यीशु ना ही एक यहूदी का लहू था, ना ही एक अन्य जाति का, वो खुद यहोवा के द्वारा एक रचना था, वो परमेश्वर का लहू था। बाइबल ने कहा हम परमेश्वर के लहू के द्वारा बचाए गए हैं, ना ही एक यहूदी या एक अन्य जाति का लहू, यह सब यौन से होंगे, लेकिन यह परमेश्वर का लहू है। ध्यान देना, जब उसने एक सिद्ध को देखा, उसने उसे मारा, आघात किया। यशाया ने कहा वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे पापों हेतु कुचला गया। वो क्या था, ये वो सिद्ध वचन था, रोटी के लिए प्रतिबिंब हुआ, जिसके द्वारा हर एक मनुष्य जिएगा। वो परमेश्वर के वचन का वो गेहूं का दाना था, जिससे वो जमीन में जा सके और 4 सुसमाचार में डाला जा सके, 66 किताबें, और मनुष्य इसके द्वारा जिएगा, और केवल उसी के द्वारा और इसके हर एक वचन के द्वारा, आमीन। वो माइकल एंजेलो की सर्वोत्तम रचना था, और जब परमेश्वर खुद को एक मनुष्य में देख सका, उसके पास खुद के स्वरूप में वो सिद्ध मनुष्य की रचना थी। ओह प्रभु, क्या ही एक मनुष्य है, उसे हम सबके लिए मरना था। हम इस पर बहुत देर तक बने रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, उसे हम सबके लिए मरना था, और वो मरा, वो जो एक सिद्ध है कि हम जो असिद्ध है उसकी बाइबल के हर एक वचन के द्वारा भागीदार होने से सिद्ध बन सके। अब तब उसने उसे फिर से जिलाया हमारे धर्मीकरण के लिए, जिससे हमारे पास एक अधिकार हो, एक जी उठे यीशु की नाई कि वो यहाँ पर है, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के हर एक वचन की सेवकाई को करे, जिसके द्वारा हमें जीना है। अब जल्दी से करेंगे तो हम अभी बंद कर रहे हैं। अब वो दूसरी हवा दुल्हन, अब वो पहला दूल्हा आदम, उसे एक नबियों की लंबी लड़ियों और इत्यादि के जरिए से लाया गया था, और तब वो सिद्ध आता है, और तब उसे रोटी बनने के लिए मरना था उन बाकी लोगों के लिए। अब हवा के बारे में क्या है, उसे उसी बात को करना है, लेकिन जब यीशु आया, याद रखना हवा स्त्री थी। बाइबल में कलीसिया ने हमेशा ही स्त्री को प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि वो दुल्हन है। अब देखना उसने क्या किया, उसने उसके सिद्धांत के लिए उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। जब तक वो प्रचार करती है वैसे ही जैसे वे सोचते हैं, वो एक महान व्यक्ति है, लेकिन एक दिन वो बोलना आरंभ करता है और कहा मैं और मेरा पिता एक हैं। ओह तुम परमेश्वर के साथ अपनी खुद की बराबरी करते हो, देखो ओह हम इस व्यक्ति के साथ अब और लेना देना नहीं रखना चाहते हैं, और उन सब दूसरी बातों को उसने बोलना आरंभ किया था। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाते हो, तुम क्या सोचते हो वहाँ पर एक बैठे हुए डॉक्टर के पास क्या विचार होगा? तुम क्या सोचते हो किसी भी मनुष्य को ऐसे ही सार्वजनिक विचार क्या होगा? तुम्हें मेरे मांस को खाना होगा और मेरे लहू को पीना होगा। उन्होंने कहा यह मनुष्य एक पिशाच है, एक सेवक नहीं है। उस मनुष्य से दूर रहो, वो पागल है, उससे दूर रहो। लेकिन यह सच्चाई थी। देखो यह सच्चाई थी। तुम इसे खाने के सिवा तुम नाश हो जाओगे, तुम मर जाओगे यदि तुम इसे नहीं खाते हो तो। यही बात आज भी है। वो रोटी और दाखरस केवल एक चिन्ह है, वे स्वाभाविक वस्तु तुम्हें नीचे गिराने नहीं पाए। तुम्हें मसीह को खाना होगा जो कि वचन है जिसके द्वारा तुम जीते हो। हर एक वचन जो निकलता है वो संपूर्ण बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। अब वो दूसरी हवा उसे देखना, उसकी नए सिरे से रचना की गई थी जैसे ही उसकी हो गई थी। पेंटिकॉस्ट के दिन पर पवित्र आत्मा से भर गए थे और वचन के द्वारा खिलाए गए। आमीन। अब मैं धार्मिक हो रहा हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वो पहली कलीसिया, वो पहली हवा जिसे मसीह की दुल्हन होना था, कितने लोग इसके लिए आमीन कह सकते हैं? उसे मसीह की दुल्हन होना था। उसने पेंटिकॉस्ट पर जन्म लिया था, ना ही नाइकिया रोम में, ना ही लंदन इंग्लैंड में, ना ही संयुक्त राष्ट्र में, ना ही लूथर के साथ जर्मनी में, ना ही वेस्ले के साथ इंग्लैंड में, ना ही नाम के पेंटिकॉस्टल के साथ जो संयुक्त राष्ट्र में है। वो पेंटिकॉस्ट के दिन पर आत्मा से जन्मी थी, वो आत्मा से भरी हुई थी, वो आत्मा से भरी हुई थी और वचन को खाया था, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यहाँ तक यहूदा और ओह उन्हें बस हर एक वचन को लेना था, ठीक वचन पर वचन, परमेश्वर की धरती पर खिलता हुआ वास्तविक पौधा जो उसे दर्शा रहा है, एक और दुल्हन का वृक्ष। उसके प्रतिज्ञा का वचन दुल्हन में उसे प्रतिबिंब किया। उन्हें पत्रस और उन्हें गौर करना था। वे एक धर्म विद्यालय के लिए नहीं गए थे और वे यह जानते थे। वे किसी भी बाइबल स्कूल में नहीं गए, किसी धर्म शास्त्री के धर्म विद्यालय में नहीं गए। उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी क्योंकि वे यहाँ तक अपने नाम को भी नहीं लिख सकते थे। बाइबल ने कहा वे अनपढ़ और गवार थे। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने ध्यान दिया, वे यीशु के साथ रहे थे क्योंकि वो उनमें था, उसकी प्रतिज्ञा को प्रतिबिंब कर रहा था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यही है जिसकी आज इस युग में आवश्यकता है। उसके वचन ने दुल्हन में उसे प्रतिबिंब किया। जो कलीसिया है जो जीवित थी उसके हर एक वचन के द्वारा जो उसके मुख से निकलता है। लेकिन तब जैसे हवा वो वहाँ नाइकिया रोम पर वचन पर गिरी हुई मिली, जहाँ पर पहली संस्था जो कभी संस्थागत हुई थी, विश्व मसीही कलीसिया। क्या यहाँ पर एक बाइबल का विद्यार्थी है? क्या यहाँ पर एक धर्मशास्त्री है जो जानता है कि यह सच्चाई है? वो पहली संस्था नाइकिया रोम पर थी। परमेश्वर के पास कभी भी एक संस्था नहीं हुई है, ना ही कभी भी एक संस्था होगी। यह मनुष्य के द्वारा नियंत्रण में हुई थी। यही है जहाँ वे सब मैं एक मसीह हूँ। तुम कौन सी कलीसिया से ताल्लुक रखते हो? वहाँ पर केवल एक ही है। मैं 55 वर्षों से एक ब्रैनम रहा हूँ और मैं परिवार से कभी भी जुड़ा नहीं। मैंने वहाँ पर एक जन्म लिया था। ऐसे ही आपने परमेश्वर के राज्य में जन्म लिया है और आप उसके वचन का एक प्रतिबिंब है। ध्यान दें, हवा उनसे HER हर मिल गई और वैसे ही हवा उनसे HER हर नाइकिया रोम पर मिल गई। वचन की बजाय इसे एक संस्था के लिए, संप्रदाय सिद्धांत के लिए दे दिया। रोम के देवता और इत्यादि के जैसे मूर्ति पूजक के मूर्तियों के नीचे लेकर आए और पौलुस और बरबनियास को आगे रखा और सूर्य देवता को और चंद्र देवता को अशुतेरिक को ले लिया। चंद्र देवता इस पर प्रमाणिक चक्र के साथ और उसे सूर्य देवता की माँ बना दिया है जो रोम का देवता है। और यीशु के जन्मदिन को अप्रैल से बदल दिया, जहाँ सारी प्रकृति, जहाँ उसने भेड़ों के नीचे जन्म लिया था क्योंकि वो एक भेड़ था, और उसे वहाँ सूर्य देवता के जन्मदिन पर बदल दिया सौर में, जहाँ इसे एक ही दिन बनाता है। वहाँ बस केवल लगभग दिनों में एक ही दिन का फर्क है जब यह दिसंबर के 25 तारीख के पास से होकर जाता है जो सूर्य देवता का जन्मदिन है, ना ही परमेश्वर के पुत्र का। और हम में से हर एक सेंटा क्लॉस का अभिनय करता है और पेड़ों को सजाता है, एक मूर्ति पूजा और इसी तरह की बातों को, और फिर खुद को मसीह कहलाते हैं। मसीह कलीसिया के साथ क्या समस्या है? क्या वहाँ हमारे बीच में कोई खड़ा होगा जो वचन को प्रचार करे और सच्चाई को बताए और परमेश्वर इसे लोगों के लिए प्रमाणित करेगा और साबित करेगा कि वो कल आज और युगान युग एक सा है। हमें एक धर्म विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, हमें एक धर्म शास्त्रियों की आवश्यकता नहीं है, हमें एक नबी की आवश्यकता है। यह सही है, परमेश्वर ने इसकी भी प्रतिज्ञा की है। तब हवा उसकी गिरावट से मिल गई, वैसे ही कलीसिया ने किया है, संप्रदाय के लिए खुद को सौंप दिया है, मनुष्य के नियम जिसे मनुष्य के द्वारा शासन किया जाना है, अब और आत्मा के द्वारा नियंत्रण में नहीं रही, वो वचन से दूर चले गई है और सिद्धांतों को ग्रहण कर लिया है। कौन आमीन कह सकता है? सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं हम प्रोटेस्ट वैसे ही बहुत से सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं जैसे उनके पास थे, जब हम इस वचन के साथ कुछ तो जोड़ते हैं या इसमें से कुछ तो निकालते हैं। शैतान ने उसे पकड़ लिया उसकी उसी पुरानी तकनीक के द्वारा जो उसने हवा के साथ किया था, समझौता करते हुए। यही है जहां उसने पकड़ लिया था, उसे वचन से कुछ तो अलग ही बताया, एक धर्म मत या एक संस्था। वो जो मूल है भूमि के अंदर चला गया यातना में, वो रोम की कटीली भूमि जो पेंटिकॉस्ट से गेहूं था मिट्टी के अंदर चला गया और उन्हें जलाने के लिए दाव पर लगा दिया और उन्हें सीओ को खिलाया। वे इसमें चले गए जैसे दूसरे गेहूं ने किया, यह सही है, लेकिन वो सुधार करके वापस उसे खड़ा करना आरंभ करता है उसी पहली पर दूसरी बार, जैसे उसने दूसरे आदम के साथ किया था। आदम के गिरने के बाद वो एक दूसरे आदम को खड़ा करना आरंभ करता है और दूसरा आदम नीचे चला गया और इसे ऊपर उठाया गया था। पहला आदम उसके पाप में गिर गया और वहाँ पर बना रहा, दूसरा आदम नीचे चला गया ताकि मनुष्य को पाप से छुड़ाए और ऊपर उठाया गया। अब वो पहली कलीसिया नाइकिया रोम में गिर गई, वो पहली उस बाइबल के बाहर सच्चाई के वचन के द्वारा जहाँ पर रोमन कलीसिया ने उसके सिद्धांत और धर्म मत को जोड़ा था। वहाँ पर मार्टिन लूथर नाम का एक छोटा याजक आता है जिसने कहा यह प्रभु भोज नहीं है, यह प्रभु की देह नहीं है, यह एक विधि सम्मत है और मनुष्य धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और उसने चीजों को जमीन पर फेंक दिया और इसका विरोध किया। वहाँ पर थुआतीरा युग के बाद आपका पहला चमकता तारा आता है। हाँ श्रीमान, विश्वास के द्वारा धर्मी हुआ, वो महान मूर्तिकार एक सर्वोत्तम रचना दुल्हन को बनाने के लिए व्यवस्थित करता है जो उसके वचन को प्रतिबिंब करेगी। लेकिन लूथर के मरने के बाद लूथरनों ने क्या किया? वे शैतान से मिल गए और इसमें से एक संस्था को बनाया और मर गए। उसने उसके बाद कभी और कुछ भी नहीं किया था, उसने ये कर दिया था, ठीक लोगों का एक बड़ा धार्मिक समूह बन गया था। तो ठीक है, तब परमेश्वर ने जॉन वेस्ली के दिनों में उसे फिर से उठाया एक और सच्चाई के साथ प्रतिबिंब करने के लिए। उसने क्या किया? उसने कहा पवित्रीकरण अनुग्रह का दूसरा कार्य है, और परमेश्वर ने क्या किया? उसने उसे आशीषित किया और उसने एलिंकन कलीसिया और जिंगली कलीसिया और बाकी के उन सब का विरोध किया और उन सबका विधि सम्मत और सब कैल्विन या उस कैल्विनिस्ट का विरोध किया और कहा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। लूथर ने कहा और अनुग्रह का दूसरा कार्य पवित्रीकरण है और यही सच्चाई है, यह सही है। देखा, तब उसने क्या किया? उसी बात को वेस्ली के मरने के बाद अजबूरी और वे लोग वही बात जो लूथर ने किया संस्थागत हो गए, मर गए। अब इसकी ओर देखना, यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, एक महिला के लिए प्रार्थना करने अस्पताल में मैं वहाँ पर गया जिसका एक ऑपरेशन होने जा रहा था। मैं वहाँ गया, महिला ने कहा भाई ब्रैनम मैंने आपको बुलाया है, आप मुझे नहीं जानते हैं। उसने कहा लेकिन क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे, मेरे सुबह एक ऑपरेशन होने जा रहा है। मैंने कहा जरूर बहन। वहाँ पर एक और पुरुष, एक महिला और एक लगभग 18 वर्ष का लड़का बैठा हुआ था और वे मुझे बहुत ही गौर से देख रहे थे और मैं पीछे मुड़ा और मैंने कहा मुझे माफ करना मैं। महिला ने कहा पर्दे को बंद करना। मैंने कहा क्या आप एक मसीह नहीं है? महिला ने कहा हम मेथोडिस्ट हैं। मैंने कहा मैंने आपसे यह नहीं पूछा था, मैंने आपसे पूछा यदि आप केवल मेथोडिस्ट हैं तो मैं पर्दे को बंद करूंगा, यदि आप मसीह हैं तो आप पर्दे को नहीं खींचना चाहोगे? तो हाँ ये ठीक है। वहाँ पर एक मेथोडिस्ट में या एक बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन होने में बहुत ही एक फर्क है और फिर एक मसीह होने में, ना ही एक संस्था का सदस्य होना लेकिन एक मसीह का होना। देखना, उसने क्या किया? उसी बात को किया। तब क्या हुआ? परमेश्वर ने यहाँ नीचे दक्षिण में एक छोटे से झुंड को लिया, एक छोटा अश्वेत मनुष्य जिसकी आंखें तिरछी थी, और वो उनसे क्या किया? उसने दान वरदानों को लौटाए जाने को उंडेल दिया और यह पेंटिकॉस्टल बन गया। और आप में से बहुत से पुराने लोग हैं जैसे वहाँ पीछे भाई वेल्डेज बैठे हुए हैं, एक बुद्धिमान बुजुर्ग जो प्रचार कर रहे थे जब मैं 5 वर्ष का था, उन्हें पूर्व पेंटिकॉस्ट याद है। लड़के तुम उस दल से संस्था की बात मत करो, वे उस घिनौनी चीज से बाहर निकल आए हैं और उनके पास परमेश्वर का संदेश था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसी बात को जो दूसरों ने किया था इसे संस्थागत कर दिया। अब उनके पास लगभग 30 या 40 विभिन्न संस्थाएं हैं, वननेस, टूनेस, तीन, जब तक दया करुणा हो, मैंने अपने जीवन में इतना कभी नहीं सुना। आपने क्या किया? आप ठीक उसी जगह पर मर गए, बस इतना ही। आप आगे नहीं जा सकते हैं, आपकी संस्थाएं इसे स्वीकार नहीं करेंगी। आपने अपने मनुष्य का चयन किया है। यदि ये हमारे साथ विश्वास नहीं करता है तो उसे वहाँ पर मत रहने देना, इसे हमारी संगति में नहीं होना है। ओह देखो, जल्दी करूँगा, वहाँ एक सच्चे बीच को आना ही है, वहाँ ठीक इसे होना है, क्योंकि वो बिना दाग और झुर्री की दुल्हन आ रही है, वो इसके लिए आ रहा है, एक वचन की प्रमाणित दुल्हन। ओह वो बहुत ही छोटा सा झुंड होगा, यीशु ने कहा, जैसे ये नूह के दिनों में हुआ था जिसमें 5 प्राण बच गए थे। क्या यह सही है? वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आगमन में होगा। कितने लोग होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन देखना, वो दुल्हन उन सारे शुरू से अंत तक के वचन की निमृति होगी जो उसके युग में थे। यह पूर्णत अंतिम झुंड नहीं है, परमेश्वर यहाँ से सारी चीजों को निकालने जा रहा है। ओह नहीं, ये बहुत ही छोटा झुंड होगा, ये आश्चर्यजनक होगा, वे ऊपर आकर लुप्त हो जाएंगे, तुम जान भी नहीं पाओगे कि वे चले गए हैं। क्या हो यदि इस अंतिम दिनों में उसने 500 लोगों को लिया, तो थोड़े ही दिनों के समय में 500 लोगों को ले लिया, 2 या 3 दिनों में, वहाँ पर सारे संसार में वे बहुत से लोग ऊपर आते हुए खोते जा रहे हैं, यहाँ तक जानते भी नहीं वे कहाँ पर है, कभी उनके बारे में कुछ भी नहीं सुनते हैं। प्रभु यीशु का रहस्य आ रहा है, वो उठा ली जाएगी, वे उनमें के बाकी प्रचार करने के लिए ठीक आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये नूह के दिनों में था। प्रभु की महिमा हो, हमने इसे पा लिया है, हालेलुया, और उसके मृत्यु के लिए मोहर बंद है, यही है जो बाइबल कहती है, और यह चूक नहीं सकता है। जैसे नूह, मूसा, दाऊद ने आने वाले सिद्ध दूल्हे को प्रतिबिंब किया, वैसे ही लूथर, वेस्ली और पेंटिकॉस्ट ने आने वाली एक सिद्ध दुल्हन को प्रतिबिंब किया। ध्यान देना, हर समय उसने जाहिर किया है उसने क्या किया है, जैसे हवा ने किया, हर समय ये कलीसिया ने किया है, उसने अपने आदम को उसके नए उजाले पर विश्वास करने के लिए उसकी युक्ति के लिए दबाव डाला, और वहाँ इसी के साथ वे मर गए। हम तो ठीक है, अपने झुंड को इकट्ठा करेंगे, देखना हमारी नई आशीषों को जो हमने पाया है, और इत्यादि। इस सब ने हवा के लिए क्या किया? हमारे पास अब बस थोड़ा सा ही समय है। इस सब ने हवा के लिए क्या किया? उस पहली माता कलीसिया के द्वारा, पहले आदम की पहली पत्नी, उसने उसके लिए क्या किया था? अब नजदीक से देखना, आप इससे लज्जित हो जाएंगे, लेकिन इसने सर्प के बीज को उत्पन्न किया, यह बिल्कुल सही बात है। हवा का पहला पुत्र आदम का पुत्र नहीं था, यदि यह था उसके पास जन्म अधिकार था। बाइबल में यहूदा की किताब में कहा कि आदम कि हनोक आदम से 7वां था, क्या यह सही है? और वो आरंभ करता है, आदम से उसका पुत्र शेत उत्पन्न हुआ। केन के बारे में क्या है? जिसके पास जन्म अधिकार था वो आदम का पुत्र नहीं था। शेत और शेत उत्पन्न हुआ येरेद, और आगे आदम के पुत्र थे जो आगे तक, जो आदम से 7वां था। फिर यदि केन उसका पुत्र था तो बाइबल में एक भी स्थान पर नहीं है, यहाँ तक लूका में भी नहीं, जहाँ वो फिर से इसका उल्लेख करता है, उसने कभी भी उल्लेख नहीं किया कि केन आदम का पुत्र है। और यदि वो नहीं था तो वो किसका पुत्र था? और यदि वो आदम का पुत्र था तो वो पहला पुत्र था, उसके पास सारा जन्म अधिकार होता था। ओह वहाँ पर तो वो शारीरिक कलीसिया है, क्या आप इसे देख नहीं सकते हैं, जिसने कुछ तो स्वीकार किया है जो वचन की बजाय वह विचार है। पेंटिकॉस्टल लोगों, तुम्हें आशीष मिले। तो ठीक है, उसने हवा के लिए क्या उत्पन्न किया? उस सर्प के बीज को। इसने इस अंतिम दिनों में संस्थाओं के द्वारा क्या किया है? वचन को इनकार करते हुए उस सर्प के बीज को फिर से उत्पन्न किया है। उसने कौन सी भेंट को चढ़ाया? फलों और वस्तुओं को, लहू को नहीं। वचन के प्रकाशन के द्वारा, परमेश्वर का वचन, इससे पहले इसे कभी लिखा जाता, विश्वास के द्वारा हाबिल ने परमेश्वर को केन से भी उत्तम बलिदान को चढ़ाया, जिसने गवाही दी कि वो धर्मी था। उसके बलिदान के द्वारा वचन अपने आप में उसमें होकर प्रतिबिंब कर रहा था। ओह केन ने जाकर बगीचों में से फलों को लेकर आया, उसने सोचा कि हवा ने एक सेब को खाया था। बहुत से धर्म विद्यालयों ने अब इसे बदलकर एक खुबानी नामक फल कर दिया है। यह एक व्यभिचार था, और हर किसी को यह मालूम है जो बाइबल को जानता है, निश्चय ही ये ऐसा था। ध्यान देना, सर्प का बीज पहली हवा के द्वारा वचन से दूर रहने से हुआ था। दूसरी हवा ने उसी काम को नाइकिया रोम में किया, और उसके पास क्या था? एक संस्थागत बच्चों का झुंड था। यह सही है, ओह नैतिक रूप से यह अच्छा है, निश्चय ही यह ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या है? उनके सिद्धांतों के जरिए वे मरे हुए हैं। अब वैसे ही केन के वचन के प्रकाशन ने उसी बात को किया है जो इसने किया। क्या उसे प्रतिज्ञा दी? अंतिम समय पर इस हवा की भी अब क्या प्रतिज्ञा है? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं बंद कर रहा हूँ। इस हवा के लिए अंतिम समय पर क्या प्रतिज्ञा है? धनवान लौट किया, बड़ा नाम, बड़े लोग, धनी, लेकिन मरे हुए हैं और नंगे और यह नहीं जानते। यही है जो कलीसिया के युगों की समाप्ति है, लेकिन वचन का इनकार करती है। मत्ती 24:24 उसके लिए वास्तविक है। वो बहुत से शोर के साथ इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत ही इससे और बहुत ही एक सामूहिक सभा के आधारों से और इस तरह की चीजों से कहने की कोशिश करते हैं, आहा, हमारे पास सामर्थ है, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, हमारे पास सामर्थ है। भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन उसकी शक्ति का इनकार करते हैं। इतना नजदीक कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। कैसे एक मनुष्य आत्मा में नाच सकता है और अन्य भाषा में बोल सकता है और परमेश्वर के वचन को सच्चाई होने से और पवित्र आत्मा होने से इनकार करता है? इसे नहीं किया जा सकता है। हर एक वचन परमेश्वर एक बात को कहता है, ये बिल्कुल ठीक उसी ढंग से है। कोई और तरीके से इसका अनुवाद मत करो। बाइबल कहता है कि यह व्यक्तिगत अनुवाद के लिए नहीं है। उसी तरह से कहो जैसे उसने इसे कहा है। ध्यान दें, एक झूठी सामर्थ बिल्कुल यही है जो शैतान यीशु को देना चाहता था, वहाँ ऊपर ले जाकर और उसे खुद को प्रदर्शित करवाए। लोग यही करते हैं, विश्व संगठन भी, वे सारे। कौन उसके साथ युद्ध करने के लिए योग्य है? उसने बाइबल में कहा, पशु की शाप जो ऊपर उठने जा रही है, यदि हमारे पास समय रहा तो हम इसमें जाएंगे इसके लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ध्यान दे, यीशु, वो दूसरा वचन आदम, उसके दिन में, अब इस कलीसिया के अंतिम दिनों में देखना जो बहुत ही नजदीक होने जा रहा है। अंतिम कलीसिया का युग लौट किया है। कितने लोग इसके लिए आमीन कह सकते हैं? वो क्या करती है? वो उस महिमा में स्थिति में कैसे जा सकती है? गुनगुनी, बिना परमेश्वर की। और उसने क्या किया? अब आदम ने देखा, हवा ने जानबूझकर या यह नहीं जानते हुए, लेकिन अनजाने में भरमाई गई थी और आदम उसके साथ चला गया इसलिए कि वो उसे छुड़ा सकता है। क्या यह सही है? बाइबल ने कहा आदम भरमाया नहीं गया था। यही कारण है यह स्त्रियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए मना करता है। देखा, आदम अपराध में नहीं था लेकिन हवा थी। तो इसी कारण से स्त्री को सिखाना नहीं चाहिए, देखना और किसी भी मनुष्य पर अधिकार नहीं रखना है और इत्यादि। यही है जो वचन कहता है। आप कहते हैं तो इसने मैं परवाह नहीं करता, यह क्या करता है और वो क्या करता है, ये वचन क्या कहता है? भाइयों बहनों, मैं आपको ये पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये वचन क्या कहता है। हम वचन के द्वारा जीते हैं, ना ही कुछ प्रमाण के द्वारा या कुछ शारीरिक कोई चीज के द्वारा या कोई अनुभव। इसके साथ इस सब का कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी तरह का एक अनुभव काम नहीं करेगा यदि ये वचन का इनकार करता है। तो बहुत से मेरे पास आकर और कहेंगे, मैंने भविष्यवाणी की है, मैंने शैतानों को निकाला है, मैंने अन्य जबानों में बोला है, मैंने इन सारी चीजों को किया है, सुसमाचार को प्रचार किया है, एक परमेश्वर का विद्वान हूँ। कहा, तुम अधर्म के कार्य करने वालों दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। जानते हुए कि वचन ऐसा कहता है और समझौता करते हैं कुछ संस्था या किसी बात को कुछ सिद्धांत की वजह से। ओह मेरे दोस्तों, मुझे एक प्रिय भाई के नाई आपको चेतावनी देने दो, जो आपसे प्रेम करता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब वो पहला आदम हवा के साथ चला गया क्योंकि वो भरमाई गई थी, लेकिन यहाँ इस लौदिकिया में कोई तो था वो फर्क को जानती थी। हाँ श्रीमान, क्योंकि वो उसे अपने खाट से बाहर रखती है, अपने कमरे से वो बाहर था, खटखटा रहा था, वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मगर उसने सभ्यता को प्राप्त कर लिया है। वो ऊंचे पर बैठी हुई है, वो बैठी थी, ओह प्रभु, उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नहीं जानती वो नंगी है, अभागी है। यही है वो कलीसिया जो चुने हो को भी भरमा देती है, यदि यह संभव होता था तो। ध्यान देना, उसके पास सामर्थ थी, झूठी सामर्थ। उसने वचन के भाग को लिया और बाकी का नहीं लिया। सबसे बड़ा झूठ क्या है जिसे कभी बोला गया था? इसका 99% सच होता है। यदि किसी ने कहा विलियम ब्रैनम फलाना तारीख को वहाँ उदार हॉस्टल टेक्सास में थे, नशे में थे, जितना वो हो सकते हैं, यह एक झूठ है, समझे? ओह, कहा नहीं, वो फिनिक्स एरिजोना में थे, वो क्रिश्चियन बिजनेसमैन को प्रचार कर रहे थे, उन्होंने एक फलाना विषय पर प्रचार किया, वहाँ पर बहुत से लोग थे, उन्होंने लगभग 10:30 बजे तक के सुना, और 10:30 बजे आप जानते हैं उसने क्या किया? वहाँ नीचे पहुंचकर और पीने के लिए शराब को लिया और इसे पी गए। अब यहाँ पर एक झूठ है, बाकी की सारी बात सच थी। देखना, यह भरमाने के लिए बिल्कुल सच्चा जैसा दिखेगा। आज लोग इसी प्रकार से करते हैं, उनके पास बहुत सी सच्चाई होती है, वे चुने हुए को भरमाते हैं, लेकिन एक वचन जो इस सब को ले लेता है, और मैंने इसे बाइबल से साबित किया है। ध्यान दें, वो कभी उसके साथ बाहर नहीं निकला, उस स्त्री ने उसे बाहर रखा, वचन को बाहर रखा, उसे ठुकरा दिया। अब यह एक दयनीय दिखाई देता है जब हम समाप्ति की ओर पहुँचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बाबुल में था। मनुष्य कहीं पर भी नहीं रुक रहा है, वो खुद के लिए प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, वो अब नहीं रुकने वाला। जैसे नूह के दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ता नूह ने कितना प्रचार किया और चेतावनी दी, थोड़ा भी लाभ नहीं हुआ। आपके दिनों में जब उसे खुद अपनी रोटी को बनाना ही था जिससे वो अपने स्वयं को अधोलोक भेजे, ठीक ऐसा ही है। उसे उसकी रोटी को बनाना था जिससे कि वो कड़ी टूट जाएगी, जिससे वो अपने स्वयं को अधोलोक भेजे, ठीक अहाब और इजाबेल के जैसे वे। लेकिन ये बात ऐसी है कि उन्होंने नहीं सोचा कि वे पाप कर रहे हैं, उन्होंने सोचा वे सही कर रहे हैं। आप जानते हैं यीशु ने कहा एक दिन ऐसा होगा कि वे तुम्हें मार भी डालेंगे, वे सोचते हुए कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मेरी इस नई किताब आने तक रुकना। उन्होंने कुछ लोगों पर एक रात गोली चलाई यह कहते हुए कि यह गलत था कि रोमन कैथोलिक कलीसिया और प्रोटेस्टेंट कलीसिया दोनों एक साथ हो जाएं। मेरे मित्र की इमारत में 3 बार गोली चली और वे गोली से बच गए थे। इस किताब के प्रसार होने तक रुकना। वे नहीं सोचते हैं कि वे पाप कर रहे हैं, वे सोचते हैं वे सही काम को कर रहे हैं, वे सोचते हैं वे इसे एक कारण से कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इसे नहीं जानते हुए। उन यहूदियों ने यीशु को मार डाला यह सोचकर कि वे सही चीज को कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कलीसिया के सिद्धांत ने कहा कि वो गलत था। ओह, उनके लिए वो उन्होंने उसी रोटी को क्रूस पर चढ़ाया जिसके द्वारा उन्हें जीना चाहिए था। अब फिर जितनों ने उसे ग्रहण किया उनके लिए जीवन बना, अनंत जीवन, वे उसके द्वारा जिए और उसने उन्हें सामर्थ्य दी ताकि उसका भाग बने, परमेश्वर के पुत्र बने। क्या यह सही है? वे जंगली लौकी के जैसे हैं, जैसे उस शोरबा में मर गए उनके धर्म विद्यालय के स्कूल से। वे यीशु को नहीं चाहते हैं जो जीवन की रोटी है, वे उसे नहीं चाहते हैं। उन्होंने उसे अपनी कलीसिया से बाहर रखा है, उन्हें इसे करना ही है। मैं परवाह नहीं करता वे क्या करते हैं। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, आप सोचते हैं आप इसे बदल देंगे? नहीं श्रीमान, लेकिन मैं चुने हुए से बात कर रहा हूँ। उन्होंने उसे बाहर रखा है, क्यों? उन्होंने उनके शोरबा को लिया, संसार के साथ मिला दिया, किसी सिद्धांत के साथ, और इसे एक साथ मिला दिया है और एक धर्म शास्त्र का धर्म विद्यालय शोरबा बना दिया है। और वे एलिय्याह नबी को उस भोजन को बीमारी से मुक्त करने से इनकार करते हैं। क्या उन्होंने उस दिन में किया? एलिय्याह के पास कुछ भोजन था, वो भोजन मसीह था, वो भेंट की रोटी, सबको एक समान जमीन के अंदर जाना है, हर एक कटीले को भी वैसे ही जमीन के अंदर जाना है ताकि इसे पीसा जाए, और उसने इसे वहाँ उसमें फेंक दिया और उनकी बीमारी से रोग मुक्त कर दिया, या नहीं तो उनकी मृत्यु उस बर्तन में थी। लेकिन आज उनके पास बर्तन में मृत्यु है, वे एलिय्याह के भोजन को नहीं चाहते हैं, मसीह को नहीं चाहते हैं जो रोटी है, वचन है। नहीं श्रीमान, यह अब धर्म है, उनके पास यह नहीं होगा। आगे बढ़कर और आप इसे खाते हो, निश्चय ही आप संसार की नाई मर जाओगे, वहाँ उस बर्तन में विष है। वे अपने धर्म विद्यालयों के बर्तनों में इस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं श्रीमान, वे इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। अब वे तुम्हें इससे बाहर रखेंगे, वे इसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। अब वो दूसरी हवा, रोटी का दाना, पेंटिकॉस्ट था, पहले के जैसे ही किया। आदम जो रोटी था, रोम के कटीले बीज कोष के नीचे मर गया, सताए जाने के नीचे शहीद हो गया। लेकिन उस स्त्री की बहन जो वैश्य बन गई, क्या यह बाइबल बताती है? यह सही है। उसने क्या किया? वो वहाँ संसार के अंदर चली गई और बच्चों को उत्पन्न किया। कौन इसके लिए आमीन कह सकता है? प्रकाशित वाक्य 17, वो वैश्य और उसकी पुत्रियाँ, पुरुष नहीं, स्त्रियाँ, कलीसियाएं, वो संस्थागत, किस बात ने उसे एक वैश्य बनाया? उसने वचन को ठुकरा दिया और संस्थाओं को ले लिया, वो एक वैश्य बन गई। उसके बच्चों ने क्या किया? वे यौन कर्मी थे, जो कि एक ही बात है, उसी बात को किया, वचन को ठुकरा दिया और संस्थाओं को ले लिया। उसके बच्चे, पुत्रियाँ, कलीसियाएं, उनकी ओर देखें। अब मुझे इसे भविष्यवाणी में कहने दें, क्या आप समझेंगे? उस बड़े परिवार की परेशानी लगभग खत्म होने पर है, वे सब के सब एक साथ आ रहे हैं। बूढ़ी माँ अपने बच्चों को फिर से वापस लेने जा रही है। जो कुछ भी हो, वे सब एक से हैं, वे एक होना चाहते हैं। ये कलीसिया और परमेश्वर का समय है, कलीसिया और वचन ठीक यहाँ पर एक होंगे, क्योंकि यही है जिसके पीछे वो आ रहा है, ना ही एक इस प्रकार का एक झुंड। नहीं श्रीमान, एक गेहूं के दाने को होना है। अब प्रकृति को देखें और हम इस विचार पर बंद करने जा रहे हैं। अब प्रकृति को देखें, एक मनुष्य गेहूं को बोता है। उन्होंने एक किताब को लिखा, मैं सोचता हूं आप सब ने इसे पढ़ा है। हो सकता है आप में से कुछ धर्मशास्त्री, जिसे वो खामोश परमेश्वर कहकर बुलाते हैं, मैं सोचता हूं तुम्हें यह मिल सकती है। हो सकता है आपकी किताबों में, यहां आप किताबों को बेचते हैं, किताबों की दुकान में, वो खामोश परमेश्वर। कहा कैसे? एक नास्तिक ने कहा, कैसे तुम हमेशा वहाँ एक परमेश्वर की अपेक्षा कर सकते हो जो वहाँ पर अंधकार के युगों के दौरान बैठा हुआ हो और वहाँ आग पर बच्चों को मृत्यु में डालता हुआ देख रहा हो? स्त्रियाँ, उनके लंबे बाल नीचे डाबर में चिपक जाते थे और जल जाते हैं बैल को एक कंधे पर रखते और दूसरे कंधे पर एक व्यक्ति को और उन्हें दूर तक खींचते हैं क्योंकि उन्होंने क्रूस को चुंबन नहीं दिया और उसी तरह की ये सारी चीजें। कहा, कैसे एक परमेश्वर हो सकता है? यदि वो एक था तो वहाँ बैठकर उन बच्चों को जलता हुआ देखता। देखा, यही स्वाभाविक मन है, शारीरिक समझ है, समझे? देखना, क्या आप जानते हैं, एक गेहूं जब यह जमीन में चला जाता है इसे वहाँ पड़े रहना है और सड़ना है। यही है पेंटिकॉस्टल को करना था, उसे वहाँ पड़े रहना था और जमीन के अंदर जाना था और मरना था, इसे वापस जीवन को आगे लाने के लिए सड़ना था। क्या यह सही है? अब ध्यान दें, और अब यह मेरे बंद करते हुए विचार है। अब इस सब को समाप्त करने के लिए आइए प्रकृति में से लेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सारी चीजों में समांतर कार्य को करता है? वो देखें, उसने संसार से कर दिया है, वो संसार को उसी प्रकार छुड़ाता है, वो एक मनुष्य को छुड़ाता है। अब एक मनुष्य क्या विश्वास करता है? वो विश्वास करता है, फिर बपतिस्मा लेता है, तब वो लहू के द्वारा साफ किया जाता है, पवित्रीकरण जो वेस्ली का संदेश है, तब वो पवित्र आत्मा की आग से भर जाता है, संसार को उसमें से बाहर निकालता है और आत्मा से भरा हुआ होता है जो वचन है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? अब देखना, क्या परमेश्वर उसके संसार को उसी प्रकार से छुड़ाने जा रहा है? कितने लोगों को वो दुल्हन और दूल्हे का भविष्य का घर संदेश का टेप मिला है? देखना, मैंने इसे वहाँ पर प्रचार किया है, परमेश्वर ने मुझे इसे दिया, मैं आपको देता हूँ जैसे परमेश्वर इसे मुझे देता है। देखो, पहली बात, आदम के वचन से गिरने से संसार दोषी हुआ था। नूह के प्रचार ने धर्मीकरण को लाया और परमेश्वर ने धरती का पानी के साथ बपतिस्मा किया। फिर साथ ही पुत्र आता है और लहू को उस पर गिराया ताकि इसका पवित्रीकरण करे उसके अपनों के लिए। फिर अंतिम पहुंच, वो नवीनीकरण, वो अग्नि होगी जो हर एक जीवाणु को जला देगी, हर एक चीज को, ये हवा में लाखों मील ऊपर उठेगी। और फिर क्या, मैंने एक नए आकाश और एक नई धरती को देखा। पहला आकाश और धरती जाते रहे और मैंने उस पवित्र नगर को, वो नया यरूशलम, स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। वह दुल्हन के समान थी, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो, देखा, नीचे धरती पर उतरकर आ रहा है। फिर परमेश्वर और मनुष्य, वही बात यीशु के साथ थी। देखो, जब उसने पानी में बपतिस्मा लिया और अपनी तैयारी को किया, वो पिता के द्वारा आरंभ से पवित्र हुआ था, तब उसने अपने हाथों को उठाया और यहाँ मेमने के ऊपर पिंडुक आता है। परमेश्वर क्या कर रहा था जब उसने पिंडुक को वहाँ पर रखा? उसने उस जीवन के भाग का दावा किया जो धरती का भाग था। यीशु को भोजन खाना है जैसे हम खाते हैं, उस स्वाभाविक रोटी को खाना था। लेकिन अब परमेश्वर इसे दावा करता है, वहाँ इसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, मृत्यु उसे नहीं पकड़ सकती है। कहा, इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे फिर से खड़ा करूँगा। और जब स्त्री और पुरुष परमेश्वर के अंदर जाते हैं, अब पूरा होता है, ना ही किसी सम्मोहन के करने के द्वारा, ना ही किसी भावना के नीचे, लेकिन वास्तव में जब वचन और वो एक हो जाते हैं। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बचा लिया है, संसार के चीजों से उसे पवित्र किया है, संसार को उसमें से बाहर निकालकर सब कुछ नया कर देता है, पवित्र आत्मा के आग के साथ और खुद को प्रतिबिंब करते हुए उस व्यक्ति में जीता है। वो पुरुष या स्त्री हर एक वचन के द्वारा जीते हैं। देखो, यही वो धरती है जो साफ की गई है, वो धरती को उसी प्रकार इस्तेमाल करेगा, वो इसे छुड़ाता है। अब देखना, एक गेहूं का दाना जमीन के अंदर जाता है। अब यीशु वो गेहूं का दाना था जो जमीन के अंदर चला गया, जो उसके बाद में सिद्ध बना था, इसके अंदर जीवन था। मूसा ऊपर नहीं आया, आदम ऊपर नहीं आया, उन बाकी में से कोई भी ऊपर नहीं आया, लेकिन यह जो एक सिद्ध था जिसने हर एक जरिए से वचन को प्रतिबिंब किया, वो हर एक वचन के द्वारा जिया। कितने लोग इस पर आमीन कह सकते हैं? वो हर एक वचन के द्वारा जिया। क्या हुआ, उन्होंने उसे कब्र में रखा, लेकिन तीसरे दिन उसने उसे खोल दिया और वापस बाहर आ गया। देखा, अब यहाँ पर फिर से कलीसिया आती है, देखें, उसे एक सिद्धता के लिए आ रही है, वापस रैप्चर के लिए। अब उस कलीसिया का नाइकिया रोम की भूमि पर गिरने के बाद क्या हुआ, उस पहली संस्था का क्या हुआ? क्या कोई आमीन कह सकता है कि यह सही है? उसने क्या किया, वो फिर से एक अस्थायी पुनरुत्थान में बाहर आते हैं। उसने लूथर के जरिए कोशिश की, वैसे ही जैसे नूह के जरिए से किया, लेकिन उसने क्या किया, वो वचन से चूक गया, वो संस्थागत हो गया। इसने क्या किया, ये जैसे ऊपर आता हुआ गेहूं का दाना था, जब वो दाना ऊपर आता है, पहली चीज क्या ऊपर आती है, दो छोटे अंकुर। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, अब प्राकृतिक रूप से क्या ऊपर आता है, हम आत्मिक के साथ प्राकृतिक को ध्यान देंगे। प्राकृतिक रोटी के साथ आत्मिक रोटी क्या होता है, यह मनुष्य कैसे रोटी हो सकता है? ध्यान दे, जब कलीसिया ऊपर आई, वो एक छोटा सा पत्ता था, अब यह उस दाने के जैसा थोड़ा भी नहीं दिखा जो जमीन में गया था, लेकिन यह एक जीवन का संदेश वाहक था, समझे? अब क्या होता है, अब मनुष्य कहता है, ओह, मुझे गेहूं की अच्छी फसल मिली है, पूर्ण रूप से अभी भी उसके पास नहीं है। क्या हुआ, वो अगला आता है, वो जुंगली जो सुधारक था, वो लूथर के बाद एक और कदम ऊपर आना था, या फिर भी वो नहीं था, यह तो एक पत्ती थी। फिर उस डंठल ने बहुत सारे पत्तों को आगे लाया, जैसे कि कैल्विन और इत्यादि ऊपर आए, अतः वो एंग्लिंग कलीसिया ऊपर उठी। वे सारी डंठलें देखना, उनमें से सारी बिल्कुल ठीक एक जैसे दिखी, वही चीज दिखी। तब क्या हुआ, गेहूँ बदलता है और वो दाना बदलता है और हर एक चीज बदलती है जो ऊपर आती है, वो एक टहनी थी, आप हो सकता है इसे टहनी कहें। तो इसने क्या किया, देखना इस पर क्या लटकता है, छोटे से फूलों का पराग, अब यह कुछ और थोड़े और ज्यादा दाने के जैसा दिखाई देते हैं जो जमीन के अंदर गया था। तब उस पत्ते ने किया, क्या यह सही है? तो वेस्ली का संदेश लूथर के संदेश से बाइबल के ज्यादा नजदीक था, यह आप जानते हैं, क्या यह सही है? उन छोटे से फूलों के परागों का अब क्या है? यहाँ पर वे वेस्लियन, मेथोडिस्ट थे, नाजरियन, पिलग्रिम, होलीनेस, यूनाइटेड ब्रदरिन, वे सब उस पवित्रीकरण के नीचे थे। और बाद में उससे क्या आता है, इसने अतः इसने क्या किया, संस्थागत हो गए, मर गए, उसमें से जो बाहर आए वे पेंटिकोस्टल थे। आप कहते हैं, ओह भाई, अब आदर पूर्वक और मैं इसे ईश्वरीय प्रेम के साथ कहता हूँ, और होने पाए वो महान पिता जिसने आपको अभी आरंभ में बताया, जो यहाँ उपस्थित था, वो सर्वव्यापी। यदि मैं इसे हानि पहुँचाने के माध्यम से कहता हूँ तो वो मेरा न्याय करेगा, यदि मैं इसे सच्चाई के माध्यम से कहता हूँ वो मुझे आशीष देगा, वो आपको उसे दिखाएगा, यदि आप जीवन के लिए ठहराए गए हैं तो। जब वो पहला गेहूं का दाना एक गेहूं के डंठल पर बाहर आने लगता है, यह पूर्ण रूप से उस दाने के जैसा दिखाई देता है, क्या यह सही है? लेकिन ये क्या है, ये दाना नहीं है, यही मत्ती 24:24 है, इतना नजदीक होंगे कि यदि यह संभव होता तो वे चुने हुओं को भी भरमा देंगे। ध्यान देना, यह बिल्कुल दाने के जैसा दिखाई देता है, लेकिन यदि आप इसे बाहर निकालते हो और बैठकर माइक्रोस्कोप कांच के यंत्र को लेकर और इसे निकालना आरंभ करते हो, ये तो केवल दाने पर का छिलका होता है, या उस गेहूं पर छिलका होता है, उसने केवल इसे बचाए रखने के लिए किया है, लेकिन यह पूर्ण रूप से उस दाने के जैसा दिखाई देता है। अब कितने लोग जानते हैं कि यह सच्चाई होनी है, अपने हाथों को उठाए, निश्चय ही, लेकिन यह भूसी है। अब पेंटिकॉस्टल भाइयों, मुझे गलत मत समझना, लेकिन यह सच्चाई है, आप प्रकृति का विरोध नहीं कर सकते हैं, और प्रकृति घोषणा करती है परमेश्वर हर एक चीज में है, यह सृष्टि करता है। अब उस भूसी की ओर देखें, ऐसा दिखता है उन्हें क्या करना था, उन्होंने अन्य जवान में बोला, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जैसे उन्होंने पेंटिकॉस्ट में किया था। लेकिन यदि आप इसे काटोगे, इस छोटी सी चीज को लेकर इसे बाहर निकालते हो, इसमें बहुत से छोटे छिलके होते हैं, आप जब इसे बाहर निकालते हैं, आप इसके एक के पीछे एक छिलके को देखते हैं। यदि आपके पास एक अच्छा कांच का यंत्र है तो आप वहाँ पीछे देखना, वहाँ एक छोटा नन्ना सा दाने का अंकुर आ रहा होता है, यह तो वास्तविक चीज है, यह एक संदेश वाहक है। क्यों इसे वहाँ पर होना है, ताकि उस दाने को बचाए रखे, यह समानता में होता है, लेकिन ये उस दाने को बचाने के लिए है। अब जहाँ से वो दाना आता है, लूथरन में से होते हुए ऊपर, उन कलीसियाओं में से होते हुए, वेस्ली में से होते हुए, और वहाँ से होते हुए टेनियों में से होते हुए बाहर आता है, और अब वहाँ भूसे के अंदर होता है। अब यह बिल्कुल सिद्ध रूप से दिखाई देता है, कोई आश्चर्य नहीं, यीशु ने कहा यदि यह संभव होता तो वे चुने हुओं को भरमा देंगे। बिल्कुल दाने के जैसा ही दिखाई देता है, ठीक उस स्थान में उस दाने को होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, इसने उसी बात को किया जिसे दूसरों ने इसे पहले किया था, वे संस्थागत हो गए, इससे क्या बन गया, एक आगे ले जाने वाला, वो संदेशवाहक। अब इन दिनों में जिसमें हम रह रहे हैं, या कोई भी इतिहासकार यह जानता होगा कि कोई भी बेदारी लगभग केवल 3 वर्षों तक ही चली है, और फिर उस बेदारी से एक संस्था बाहर आ गई। भाइयों बहनों, इस महान 15 वर्षों की बेदारी में जिसमें हम रह रहे हैं, आपके साथ इसमें रहने का सौभाग्य रहा है, इसमें से एक भी संस्था बाहर नहीं आई है, वहाँ अब और कोई संस्थाएं नहीं है, वहाँ नहीं होंगी, वहाँ वो अंतिम है। अब पेंटिकॉस्टल को वहाँ पर होना था ताकि इसे संरक्षित करे, हम कहाँ जाते यदि हमें इस तरह का संदेश नहीं मिलता, यदि वहाँ इसे विश्वास दिलाने वाले पेंटिकॉस्टल नहीं होते थे। अब 1933 में वापस ओयो नदियों के लिए जाना है, देखा, इसके लिए क्षमा करें, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सच्चाई को जानें। मेरे पास और ज्यादा समय नहीं बचा है, आप ये जानते हैं मैं 55 वर्ष का हूँ, लेकिन यह टेप रहेंगी जब मैं चला जाऊंगा, और आप देखेंगे कि यह सच्चाई है या गलत है, यदि मैं सच्चा सेवक हूँ या एक झूठा सेवक हूँ। मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन जो हुआ है ऐसा ही यह होगा, यह एक संदेशवाहक है, इसे होना था, लेकिन जब वो दाना बढ़ना आरंभ होता है, जैसे वो पहले कलीसिया यीशु का एक संदेशवाहक थी, लेकिन जब उसने उन्हें परमेश्वर की सच्चाई को बताना आरंभ किया, वे उससे अलग हो गए। अब क्या हो रहा है कोई समझ नहीं। क्यों? इसे इसी तरह से होना है, इसलिए कि वो गेहूँ स्वयं ही सूर्य के सामने पड़ा रह सकता है। सूर्य SUN और वैसे ही आत्मिक गेहूँ पुत्र SON के सामने पड़ा रह सकता है, ताकि एक सुनहरे वचन के दाने में बदल जाए। देखना, वचन बन गया, वचन देहधारी हुआ, प्रमाणित हुआ। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो कलीसिया जो सही रूप से वचन के द्वारा जीती है, न ही संस्था के जरिए से, लेकिन वचन की उपस्थिति में उस पुत्र की यह बनती है। क्या बिल्कुल ठीक वही वचन जो पेंटिकॉस्ट के दिन नीचे चला गया था? अब क्या मलाकी 4 हमें नहीं सिखाता है कि उस प्रभु के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले यह बातें जगह लेंगी? कितने लोग ये जानते हैं? और वो बच्चों के मन को पिताओं की ओर लौटाएगा। क्या यह सही है? उस मूल पेंटिकॉस्टल पिताओं के विश्वास की ओर लौटाएगा। और उस दिन पर लूका 17:20, मैं सोचता हूँ यही है। यीशु ने कहा, जब वो मनुष्य का पुत्र प्रकट होता है, बहुत सारे मनुष्य नहीं, वो मनुष्य का पुत्र, ना ही एक संस्था, वो मनुष्य का पुत्र, वो वचन स्वयं लोगों के बीच में जीते हुए, समझे? वो वचन स्वयं आप में देहधारी हुआ। आप इस घड़ी के एक प्रतिबिंब हैं। वो संदेश इसका प्रतिबिंब है। देखना, आप फिर से जीते हैं, उस जीवन को जीते हैं जो यीशु मसीह में था। आप पुत्र की उपस्थिति में हैं। तब वो इससे क्या होता है, उस कलीसिया के लिए क्या होता है? अतः सुनना, वो भूसी उस गेहूं से अलग हो जाती है जब ये प्रकटीकरण होना आरंभ होता है। क्या हुआ? जो जीवन भूसी में था निकलकर गेहूं में चला गया है। वो जीवन नहीं बदलता है, वे संदेशवाक बदलते हैं, वे संस्थागत हो जाते हैं। देखा, वो डंठल, टहनी, भूसी, लेकिन गेहूं बदल नहीं सकता है। इसके पास एक सेवकाई को होना है, बिल्कुल ठीक उस वचन पर जैसे वो वचन पर था, और जैसे पहले कलीसिया वचन पर थी, आत्मा से भरी हुई, वचन की शिक्षा पाई हुई, ना ही संस्थागत की शिक्षा, वचन की शिक्षा। अब वहाँ प्रकृति है और परमेश्वर का वचन है, वही वो रोटी है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। प्रार्थना से पहले बंद करते हुए अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर वो बात आती है, मैं कहना चाहता हूँ, अब उस भूसी को उस गेहूं से अलग होना है। यह परमेश्वर की विधि है। कितने लोग आमीन कहना चाहते हैं? उस भूसी को उस गेहूं से अलग होना है, क्योंकि यह एक पक्वता है, यह ऊपर है। अब वो भूसी वहाँ पर नहीं थी, यह तो एक सहायक थी, यह उस जीवन का एक संदेशवाहक थी। फिर वो जीवन वहाँ से निकलकर ठीक गेहूं के अंदर चला गया। अब यही वो कारण है। देखना मित्रों, हम कौन से दिन में रह रहे हैं? हमारे पास 15 वर्षों की बेदारी थी। कितने लोग इसके लिए आमीन कह सकते हैं? कौन सी संस्था ऊपर आई? कोई नहीं। उन्होंने मुझे लेकर एक संस्था बनाने की कोशिश की और कहा, क्या आप अपनी सेवकाई को लेकर एक संस्था को बनाएंगे? भाई ब्रैनम, यह होगा। अब मैं नहीं, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस घड़ी के संदेश के बारे में, इस दिन के बारे में बोल रहा हूँ। और वे वहाँ ऊपर कनाडा में गए और कुछ एक अंतिम बारिश की संस्था के भाइयों को लेकर आए। वे ठीक वहीं पर मर गए। याद है भाइयों, वो अंतिम बारिश की संस्था, वे कहाँ पर चले गए? और कोई भी होने दो, कहाँ पर चले गए? लेकिन इसमें से निकली संस्था ने क्या किया? लाखों परिवर्तन हुए और उन्हें अपने सिद्धांतों का गुलाम बना दिया। वे धनवान बन गए, लाखों रुपए कमाए, करोड़ों डॉलर इमारत और इसी तरह की चीजों में लगा दिए और कह रहे हैं कि प्रभु आ रहा है। प्रचारकों को धर्म और बातों में भेजते हैं और उन्हें मनुष्य के बनाए हुए धर्म शास्त्र पर सिखाते हैं, जैसे लूथर, वेस्ली और बाकी के। आप ये एक भूसी बन जाती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो दाना आगे बढ़ रहा है। तब यदि यह वचन के द्वारा सच्चाई है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, यह प्रकृति के द्वारा सच्चाई है, यह प्रमाणित हुआ है, वो गेहूं का दाना हर एक तरीके से हमारे पास, और कितना समय है? आप जानते हैं कितना समय और है? मैं विश्व झुंड के एक साथ इकट्ठा होने को सुन रहा हूँ। वे इसे अलग करेंगी। वो क्या करती है? वो उसके डंठल को काट कर साफ कर देगी, लेकिन उसके पास एक ऊपर उठने वाला है जो उसके लिए रुका हुआ है। वो एक सुबह को घर चली जाएगी। ओह हाँ, आप समझ रहे हैं? आमीन कहें। मैं जानता हूँ संसार इसे विश्वास नहीं करता है, वे इसे विश्वास नहीं कर सकते हैं। बस उनके लिए मैं दया को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं आ सकता है जब तक उसे पिता नहीं खींच ले आए, और जिन सबको पिता ने मुझे दिया है वे ही आएंगे। यदि उसका नाम जीवन की किताब में है तो वो निश्चय ही वचन को पहचान लेंगे। उसे लेना ही है। यह बहुत पहले ही हो चुका है, यह पूरी तरह से इतना प्रमाणित हो चुका है। जब तक ये सच्चाई को वास्तविक नहीं कर देता है। अब हमारे पास और ज्यादा संस्थाएं नहीं होंगी, लेकिन सारी संस्थाएं एक के अंदर चली जाएंगी। वो किस बात के लिए अच्छी है जा रही है, उस भूसे के साथ वे क्या करते हैं, इसे जला देते हैं। यीशु ने कहा वे दूत आकर उस गेहूं को खते में इकट्ठा करेंगे, और फिर क्या बात जगह लेगी, वे डंठल और भूसी और झाड़ियां न बुझने वाली आग में जला दी जाएगी। आपने देखा और पहले क्या होना है, वे दूत आगे जाकर और पहले जंगली झाड़ियों को एकत्र करते हैं। क्या यह सही है? देखो वो एक बड़ी संस्था में खुद को एकत्र करके बांध रहे हैं। अब और संस्थाएं नहीं है, वो गेहूं यहाँ पर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो संपूर्ण गेहूं यहाँ पर है। मसीह यहाँ पर है, वो अपने वचन को साबित करता है, यही सच्चाई है। वो गेहूं यहाँ पर है, ये अब पक्वता में आ रहा है, यह पुत्र की उपस्थिति में पड़ा हुआ है। कोई भी मनुष्य इसे छूने न पाए, इस सबसे पीछे हट रहे हैं, हम इसके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, आपको इसे करना होगा। ओह भाई, गेहूं में आ जाओ, आपका जीवन जो आप में है उस गेहूं के अंदर आने दो। क्या आप करेंगे? परमेश्वर पर विश्वास करो, केवल परमेश्वर के साथ बने रहो। क्या आप इसे निश्चय कर लेंगे? क्या हो यदि कोई कहे मैं परवाह नहीं करता? जैसे एक बार मैंने कहानी को पढ़ा था, एक डॉक्टर था जो एक भला व्यक्ति था और वो गरीब लोगों से प्रेम करता था। हर समय वे गरीब लोग अपने कर्जों को नहीं दे पाते थे, तो आप जानते हैं उसने क्या किया था? वो केवल लाल कलम से इसे हस्ताक्षर करता और कहता आप क्षमा किए गए हैं। अतः वो डॉक्टर मर गया, और जब डॉक्टर मर गया उसकी पत्नी घमंडी थी, वो अलग ही थी, और जैसे आज की कलीसिया है, उसने जाकर और उन सबको एक साथ सजा दे दी। उसने मुकदमा किया और उसने सबको कचहरी में घसीटा, तुम्हें कैसे भी इन बिल को भरना होगा। लेकिन न्यायाधीश ने कुछ सूचियों को उठाया और कहा मैडम यहाँ पर आए। उसने कहा क्या यह लाल शाही से हस्ताक्षर आपके पति की है? स्त्री ने कहा हाँ श्रीमान यह है। कहा वहाँ धरती में एक भी कचहरी उन पर मुकदमा नहीं चला सकती है, वे आजाद हैं। उन्हें जो भी चाहे कहने दो। उसने उसके अपने खुद के लहू से वचन को हस्ताक्षर किया है, कोई भी इसे हमसे नहीं ले सकता है। भाई हम आजाद हैं, आइए प्रार्थना करें।
I do not send my prophets in time of peace, but I send them in time of trouble, the end that they may turn to my people back unto me. Oh, my people, how long will you say amen? How long will you be hearers and not doers of my word, saith the Lord? How long, my people, how long till you will hear my word and let it become a part of you, till you will receive it, yea, in your heart, yea, till it shall become a very part of you, my
Lord. अब अपने सरों को झुकाने के साथ यदि मैं समझता हूँ, राजा के दिनों में एक खड़ा हुआ था और एक भविष्यवाणी को दिया, उन्हें शत्रु से कहाँ मिलना चाहिए और नष्ट करना है। अब यदि मैं समझता हूँ कि यह सही है, आप वहाँ पर आपको अपने शत्रु से मिलने का एक स्थान है, वो वचन पर है, यही जहाँ पर वो आपसे मिलने की कोशिश करता है। तुम उसके साथ यहोवा यो कहता है के साथ मुलाकात करते हो। कितने लोग यहाँ पर अपने झुके हुए सिरों के साथ हैं? दोपहर होने को है, मेरे पास वेदी की पुकार के लिए समय नहीं है, लेकिन केवल यही है, अपने हाथों को उठाएंगे, झुके हुए सिरों के साथ अपनी आंखों को बंद करें। मैं उसका भाग बनना चाहता हूँ, मैं उससे और उसके वचन के साथ जुड़ना चाहता हूँ। कोई परवाह नहीं क्या आता है और जाता है, संसार क्या कहता है, मैं उसका भाग होना चाहता हूँ। अपने हाथों को उठाएं और कहें मैं करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, 100% मैं विश्वास करता हूँ। अपने सिरों को झुकाने के साथ जबकि हम सोच रहे हैं, अब धीरे से इस गीत को गुनगुनाएंगे, हर एक प्रार्थना करते हुए। धन्य है वो जो जोड़ को जो बांधता है, यह वचन है। हमारे हृदय को मसीह प्रेम में वो भाई बंधु की संगति ऊपर के समान हो, जैसे जैसे मैं और मेरा पिता एक हैं, तुम भी उसके साथ एक हो। जब हम भिन्न भिन्न जुदा होते हैं, यह हमें भीतर से दर्द देता है, लेकिन हम फिर भी दिलों से जुड़े रहेंगे और वापस मिलने की आशा करते हैं अगले शनिवार सुबह फ्लैग स्टॉप एरिजोना पर। प्रभु ने चाहा तो मैं आशा करता हूँ आपसे फिर से मुलाकात होगी। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? अब इसे इस तरह से विदा करूँगा। देखें, बाइबल ने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया और जितनों ने वचन को स्वीकार किया। समझे, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन है और कौन नहीं है, ये तो आप पर है। लेकिन यदि आप कोई छोटे से सिद्धांत को पकड़े हुए हैं, कुछ आप में से मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल या कोई जो भी होने दो, जो कुछ भी उस वचन के विरोध में पकड़े हुए हैं, कृपा करके मेरे प्रिय लोगों, आज उससे वापस मुड़ जाएं। क्या आप मुड़ेंगे? इससे वापस मुड़ जाएं और उसकी ओर मुड़ें। एक भी शब्द आपको मसीह की संगति से कभी भी अलग न करने दो, होने पाए उसकी आत्मा से प्रदान करें। पिता परमेश्वर, लोग यहाँ पर एक लंबे समय से बैठे हुए हैं, ये मुझे उस पौलुस के समय की याद दिलाता है। उसी शैली में प्रचार करता हुआ ये सुसमाचार था। वे सारी रात बैठे हुए उसे सुन रहे थे और एक जवान व्यक्ति खिड़की से गिरकर और मर गया था। पौलुस ने जाकर और अपने शरीर को उस जवान व्यक्ति के ऊपर फैला दिया और कहा उसका जीवन वापस आ चुका है। अब पिता, यहाँ पर बीमार और पीड़ित लोग हैं, यहाँ पर वे हैं जिन्हें उनके शरीर के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रिय परमेश्वर, सभा होने तक इंतजार न करें, वे किसी भी सभा के होने का इंतजार न करें, वो वचन हमेशा ही यहाँ पर होता है जो मसीह है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनमें से हर एक को चंगा करेंगे, उनमें से हर एक जन पूरी तरह से चंगा हो जाए। परमेश्वर इसे प्रदान करें, उन्हें आशीष दे उनके प्रयासों को। वे यहाँ पर नहीं बैठे होते थे प्रभु, उन्होंने इसे नहीं सुना होता था यदि वे इस पर विश्वास नहीं करते थे तो। अब प्रभु, उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया है, वे इसे विश्वास करते हैं। अब वे इसे अपने हृदय के अंदर ग्रहण करें। हर एक सेवक, हर एक जन साधारण, वे पापी, वे मसीह को ग्रहण करें, जो पीछे हटे हुए हैं वापस आ जाएं। इसे प्रदान करें पिता। इन आशीषों को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। उसने मेरे नाम को वहाँ पर रखा बहुत वर्ष पहले, पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को मोल लिया। उस कलवरी के पेड़ पर आप उससे प्रेम करते हैं। जबकि हम इसे फिर से गाते हैं, मेज के आसपास जाकर और किसी के हाथों को मिलाकर और कहें, प्रिय यात्री, मैं यहाँ पर आज सुबह बैठे रहने से खुश हूँ, मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ। क्या आप नहीं करते? इसी तरह से कुछ कहें जब हम वापस गीत को गाते हैं। मेरे उद्धार को मोल लिया उस कलवरी के पेड़ पर। अब अभी से आगे क्या हम पूरी तरह से संसार के साथ हैं? क्या हम पूरी तरह से संसार के फैशन के साथ हैं और वो सारी मूर्खता, यहाँ की ये सारी चमक दमक, और हम सुसमाचार को लेकर और इसमें से व्यवसाय को बनाना, और क्या हम पूरी तरह से इसके साथ हैं? क्या हम उसके साथ नहीं हैं? मुझे केवल यीशु दे दो, यही सब मैं चाहता हूँ। उसे जानना ही जीवन है, उसे जानना। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? ओह, हम आपसे कैसे प्रेम करें? अब मैं सभा को भाई कार्ल को सौंप रहा हूँ। मैं नहीं जानता वे और क्या करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं आपसे अगले रविवार को फिर से मिलने की आशा करता हूँ। और यदि मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ, या फिर अगले शनिवार को मिलूंगा, यदि मैं आपसे तब नहीं मिलता हूँ तो आपको टूसान में मिलूंगा, यदि तब भी नहीं तो मैं आपको वापस यहाँ 17 तारीख को मिलूंगा, यदि तब भी नहीं तो मैं आपसे महिमा में मिलूंगा, आमीन। भाई कार्ल, अब मैं नहीं जानता कि वे ठीक इस समय पर क्या करना चाहते हैं। भाई विलियम्स।